بھائی نیول، آپ کا بہت شکریہ۔ صبح بخیر دوستوں، آج صبح میں ذرا بستر میں لیٹا ہی تھا کہ دوبارہ اٹھنے کا وقت ہو گیا، اس لیے میں تھوڑا سا تھکا ہوا ہوں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ غیر متوقع چیز واقع ہو جاتی ہے۔ بھائی شکیرین، جو فل گوسپل بزنس مین تحریک کے صدر ہیں، جیسا کہ ان کی بیوی بیمار پڑ گئی تھی اور پس اسے ہسپتال لے جایا گیا، بس کسی دوسرے آدمی کی جگہ لینا یقیناً ایک بڑی ذمہ داری ہے، اور کل ایک کنونشن بھی ہے اور بھائی آرگن برائٹ بھی ساتھ آئے ہیں، اور ہم اوپر چلے گئے تھے، اور خیر میں گزشتہ صبح 4 بجے جاگ گیا تھا، اور پھر ہم نے سنسناٹی شہر کی طرف سے سفر کرنا شروع کر دیا تھا، اور ہم سارا دن سفر کرتے رہے تھے، اور ہم بس ابھی ہی پہنچے ہیں، اور ذرا پہلے ہم لوگ آج صبح فجر کے وقت یہاں پہنچے تھے، اور اگرچہ بستر سے باہر نکلنا دشوار تھا، لیکن خدا کے فضل سے اب ہم یہاں موجود ہیں۔ مجھے سن کر حیرت ہوگی کہ کیا بھائی آرگن برائٹ بھی یہاں موجود ہیں؟ بھائی آرگن برائٹ، کیا آپ یہاں موجود ہیں؟ وہ لازمی ابھی تک نیند کے دیوتا کی آغوش میں آرام کر رہے ہوں گے۔ آپ نہیں جانتے نیند کا دیوتا کون تھا؟ بت پرست رومن کا دیوتا نیند کا دیوتا تھا۔ بس آج صبح آپ سب ذرا میرے ساتھ میرے خراب گلے کی برداشت کریں، اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کو بہت دیر تک بٹھائے نہ رکھوں۔ میرا آج صبح کی عبادت رکھنے کا ایک مقصد تھا، نہ کہ لوگوں کو جمع کرنا، کیونکہ اگلے اتوار میں اپنا کرسمس کا پیغام دینے والا تھا، لیکن اگر میں ایسا کرتا تو یہ لوگوں کو ان کے شہر سے باہر نکال لاتا، اور آپ جانتے ہیں پھر جنہیں واپس جانا پڑتا شاید ان کے کرسمس میں خلل پڑ جاتا، اور لہٰذا میں نے سوچا تھا کہ شاید یہ بہترین ہو کہ ہم سب اکٹھے ہوں اور آج صبح خداوند کی پرستش کریں، اور اسی طرح سے میرے لیے یہ کرسمس کی عبادت کا حصہ ہو جائے گا، اور پھر اگلے اتوار آپ اپنے علاقے میں ہوں، تاکہ اگر آپ دور سے بھی آئے ہیں تو آپ اپنی کلیسیا میں جہاں کہیں آپ رہتے ہیں عبادت کر سکیں، یا جو کچھ آپ کرنا چاہیں کر سکیں۔ اور میں اس بھائی کا اس خوبصورت گیت کے لیے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میں ابھی اندر داخل ہوا ہی تھا جب وہ گیت گایا جا رہا تھا، یقیناً بڑا زبردست گیت تھا، اور میں نے ہمیشہ اپنی بیوی اور ان دوسروں کو اس بھائی کے گیت کی تعریف کرتے سنا ہے، اور یہ میرا پہلا موقع تھا کہ ٹیبرنیکل میں آتے ہوئے خود اسے گاتے ہوئے سنوں۔ اب یہ کیا خاص بات نہیں ہے کہ اس وقت ہمارا بھائی یہاں ٹیبرنیکل میں ہے، ورنہ اس کے پہلے گیت کو سننے کے لیے شیف پورٹ لوزیانا جانا پڑتا۔ چیزیں کتنی عجیب ہیں، کیا نہیں ہے؟ اور ہم سوچتے ہیں کہ شاید ایسے کرنے سے ہمیں موقع ملے کہ ہم اکٹھے ہو سکیں، لیکن راہیں پھر انتہائی خراب ہو جاتی ہیں۔ میں متعجب ہوں کہ بھائی اور بہن ڈاچ اوہایو سے یہاں آئے ہیں، کیا وہ پہنچ گئے ہیں؟ بھائی ڈاچ، آپ کدھر ہیں؟ جی ہاں ہاں پہنچ گئے ہیں۔ میں حیران و پریشان ہو رہا تھا، کیا آپ کے وہاں زیادہ برف پڑی ہے؟ بہت زیادہ برف پڑی ہے۔ اچھا، بس سنسناٹی میں تو کسی طرف بھی برف نہیں پڑی، وہاں پر اتنی بھی نہیں پڑی جتنی کہ یہاں پڑی ہے، یہ تو شاید کوئی برف باری نہیں ہے۔ اور پہلی دفعہ کل میں نے سنسناٹی میں منادی کی تھی، اور ہمارا دن بڑا بابرکت تھا۔ یہ ایک نیا باب کھلا ہے جس کو ابھی سال بھی نہیں ہوا، اور یہ کچھ اچھے لوگوں کی ایک بہترین رفاقت ہے۔ ہمیں رفاقت میں بڑا لطف آیا۔ پھر انہوں نے مجھے دعوت دی ہے کہ کل کولمبس میں آؤں اور ایک اور نئے باب کی مخصوصیت کروں، یا پھر عبادت کروں، جسے کہ بھائی شکیرین نے لینا تھا، لیکن مجھے اس زمن میں پہلے دعا کرنی ہے، کیونکہ یہ ایک، اس کے بعد مجھے فینکس جانا ہے۔ آپ جانتے ہیں ہمیں جانا ہے، ہمیں فینکس میں عبادت 12 تاریخ سے بزنس مین بریک فاسٹ سے شروع کرنی ہے، اور مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ کہاں پر منعقد ہوئی ہے۔ میرا خیال ہے رمادہ میں منعقد کی گئی ہے۔ بزنس مین جماعت وہاں پر باقاعدہ ناشتے کا انتظام کرتی ہے، اور اب اتوار سے مجھے آغاز کرنا ہے، اور اتوار سے تقریباً 12 دنوں کے لیے چاروں طرف میریکو، پاویلی، فینکس اور ٹیوسان میں عبادات ہیں، اور پیر کی شب میری ایک دعوت ہے، یعنی اگلے پیر کی رات کو ٹیوسان میں ایک دعوت ہے جو خادمین اور فل گوسپل بزنس مین والوں کے ساتھ ٹیوسان میں ہے، اور پھر واپس فینکس آؤں گا، اور میرا خیال ہے پھر گلین ڈیل اور مختلف جگہ پر ہوں گا، اور تب شاید 20 تاریخ سے کنونشن کا آغاز ہونا ہے۔ بھائی فریڈ، کیا یہ ایسی ہی بات ہے؟ کیا آپ کو یاد ہے 24 تاریخ سے لے کر 28 یا 29 تک ایسا ہی کچھ ہے، اور پھر خدا کے فضل سے واپس گھر جاؤں گا۔ ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر ہم کتنا آگے بڑھتے ہیں، اور 7 مہروں کے متعلق غور کریں گے، اور پھر اس وقت دیکھیں گے کہ وہاں سے ہم کس طرف جاتے ہیں۔ اب مجھے یقین ہے کہ کسی نے مجھے بتایا تھا کہ ہمارے پاس یہاں کچھ بچے ہیں جنہیں آج صبح مخصوص کرنا ہے، کیا یہ بات سچ ہے؟ کیا کسی ماں کے پاس مخصوص کروانے کے لیے بچہ ہے؟ ڈوک نے مجھے کچھ بتایا تھا، خیر شاید ہو سکتا ہے مجھے سننے میں غلطی ہوئی ہو، لیکن جناب यहाँ मौजूद हैं। हो हाँ जी हाँ ठीक है। क्या आप बहनें या भाई अपने नन्हे बच्चों को ऊपर लाएंगे? शुक्रिया बहन जी, मेरा ख्याल है ये बड़ा ही मुनासिब वक्त है कि बच्चों को लाया जाए, क्योंकि ये क्रिसमस का वक्त है। भाई नेवल, क्या आप ये काम करेंगे? अब जबकि ये अजीज अपने छोटे बच्चों को आज सुबह यहाँ ला रहे हैं, ये खास मौका है। अब बहुत से लोग बहुत से चर्चेज में जाते हैं, और अगर आप में से कोई कल की कन्वेंशन में मौजूद था तो कैसे भाई ब्राउन ने, जो कि इप्सकोपेलियन कलीसिया से था, वो रूल कुछ से भर गया था और उसने पेंतीकोस्टल ईमानदारों से बच्चों को बपतिस्मा देने पर माजरत की थी, मगर इससे कबल उसने कहा था कि उसे क्या करना था, बस इप्सकोपेलियन कलीसिया छिड़काव के साथ बपतिस्मा देती है और उसी को वो बपतिस्मा कहते हैं। लेकिन मेरे नजदीक बपतिस्मे का मतलब है डुबकी लगाना, नीचे डूब जाना, भीग जाना या दफन हो जाना, बल्कि लोगों में से बहुत से ऐसा करते हैं, जो कि एक पुराना तरीका है और ये तरीका दरअसल कैथोलिक कलीसिया से आया था और इसे मेथोडिस्ट और एप्सकोपेलियन कलीसिया ने अपना लिया था। इसलिए लूथरन लोग और इनमें बतेरे ऐसा करते हैं, मेथोडिस्ट भी ऐसा ही करते हैं। मेथोडिस्ट कलीसिया के दरमियान बच्चों के बपतिस्मे देने के मामले पर ही अलहदगी हुई थी, सिवाय बच्चों के बपतिस्मे के नाजरीन कलीसिया में बाकी सारी तालीम मेथोडिस्ट वाली है और इसी सबब से वो इनमें से निकल आए हैं। चर्च ऑफ क्राइस्ट एक मसीही कलीसिया है और इस चर्च में म्यूजिक के अलावा सब कुछ ठीक है और वो ऐसी बातों को लेकर अलहदा हो गए हैं और भाईचारे और दूसरी बातों को तोड़ डाला है। हम सब यीशु मसीह के वसीले एक हैं। आप कलीसिया में शामिल नहीं हो सकते, आप क्लब में तो शामिल हो सकते हैं, लेकिन आप कलीसिया में शामिल नहीं हो सकते। गौर करें, क्योंकि आपको कलीसिया में जन्म लेना पड़ता है और ये एक रूहानी पैदाइश है, क्योंकि मुख्तलिफ लोगों के अपने ख्याल होते हैं और फिर हमें उनके साथ चलना पड़ता है, ये दुरुस्त बात है। लेकिन हम यहाँ टैबरनेकल में हम सिर्फ उसी तरीके पर कायम रहना चाहते हैं जिस तरीके को बाइबल हमें कहती है, और हाँ बाइबल में ऐसा कोई हवाला नहीं मिलता कि किसी बच्चे को बपतिस्मा दिया गया हो, और ना ही बाइबल में कोई छिड़काव के मुतालिक हवाला मौजूद है। बस जो वाहिद हवाला बाइबल में मिलता है, जिसमें यीशु ने कहा था, जो कि हमारे नमूने के लिए है लिखा है, और जब वो बच्चों को यीशु के पास लाए तो उसने अपने हाथ बच्चों पर रखे और उन्हें बरकत दी और कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो और इन्हें मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसो ही की है। अब यही एक तरीका है और हम इसे जारी रखने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम जानते हैं, जबकि पास्टर और मैं अपने हाथ इन बच्चों पर रखते हैं, तो हमारे हाथ हमारे खुदावंद के हाथों की बजाय कमजोर हैं, क्योंकि उसके हाथ मुकद्दस थे। लेकिन अगर उसे आज सुबह सारी जमीन से तलाश करना पड़े कि मुकद्दस हाथों को ढूंढे, तो आप उन्हें कहाँ पाएंगे? गौर करें, ऐसी कोई चीज जमीन पर मौजूद ही नहीं, लेकिन उसके फजल से हम उसकी नुमाइंदगी करते हैं। और जिन बच्चों को हम यहाँ मखसूस करेंगे, हम उन पर अपने हाथ रखेंगे और दुआ करेंगे और शुक्रगुजारी करेंगे जो खुदा ने इन लोगों को दिए हैं। और जैसे आप आगे बढ़ते हैं, तो काश ये नन्ही गलियाँ आपके घर में आपकी राह को रोशन करने में आपकी मददगार हों। काश ये खुदा के खौफ में परवरिश पाए। और हमारी दिली दुआ है कि अगर कोई कल बाकी है, तो ये नन्हे बच्चे बड़े होकर खुदा की बादशाही में अजीम काम करें। ठीक है, खुदावंद बरकत दे। आए शुरू करते हैं। मेरा ख्याल है हम यहाँ से शुरू करेंगे, इस काले बालों वाले नन्हे साथी से जो मेरी तरफ घूर रहा है इस तरह से, ओ मेरे खुदाया, अगर मेरी बीवी यहाँ होती तो इस बच्चे को जरूर उठा लेती। मैं हमेशा खौफजदा रहता हूँ कि कहीं इन्हें नुकसान न पहुँचा दूँ। आप समझ गए? मेरे खुदाया, कितना खूबसूरत छोटा सा बच्चा है। आप कैसे हो? कितना ही मुनासिब वक्त था जब चरनी में उन्होंने एक बच्चे को पाया था। क्रिसमस का वक्त बच्चों को खुदा के हवाले करने और मखसूस करने के लिए है। इस बच्चे का क्या नाम है? सैमुअल थॉमस। अब ये बड़ा ही प्यारा नाम है। आए अपने सरों को झुकाते हैं। हमारे आसमानी बाप, जैसे कि ये खुश नसीब जोड़ा आज सुबह इस नन्हे बच्चे के साथ यहाँ मौजूद है, यानी उस खुशी के साथ जो तूने इनकी जिंदगी में शामिल की है, यहाँ आया है। खुदा बाप, हम दुआ करते हैं तू इस छोटे बच्चे सैमुअल को बरकत दे, और जब हम आज सुबह इसे तेरी हजूरी में लाते हैं, तो खुदावंद तेरे अनदेखे मुकद्दस हाथ इस बच्चे को बरकत दे। खुदावंद ऐसा ही हो और ये बच्चा अच्छी जिंदगी बसर करे, और अगर कोई कल बाकी है तो ये खुदा की बादशाही में अजीम काम सर अंजाम दे। इसके वालदेन को बरकत दे। और अब ए बाप, हम नन्हे सैमुअल थॉमस को यीशु मसीह के नाम में तुझे सौंपते हैं कि खुदा की बादशाही के लिए मकसूद शुदा जिंदगी गुजारे। आमीन। खुदा आपको और बच्चे को बरकत दे और आप खुशियों से भरे रहें, और ये छोटा बच्चा आपकी जिंदगी में उजाले की तरह सारे सफर में आपके साथ हो। खुदावंद आपको बरकत दे। क्या अब इस छोटे बच्चे की बारी है? अब मैं इस जुबान को नहीं समझ सकता। मैं जानता हूँ ये क्या है, मैं जानता हूँ ये क्या कर रहा है, मगर मैं इसे समझ नहीं सकता। कुछ अर्सा पहले जब मैं जर्मनी में था, मैं उनका एक लफ्ज भी बोल नहीं सकता। मैंने कहा, लेकिन आप जर्मन लोगों के मुतल्लिक एक बात है, मैंने कहा, जो मैं समझता हूँ। मैंने कहा कि जब मैं सड़क पर जा रहा था तो एक माँ अपने बच्चे को लपेट रही थी और वो बच्चा इंग्लिश में रो रहा था। खैर, मेरा ख्याल है अब उसे भी कुछ करना है। जब हम वापस मैडा के पास गए तो मैंने कहा, मैं तुम्हें मुश्किल में डाल दूंगा। वो जरा इस बात में उलझ गई, आप जानते हैं, वो फंस गई। अलिसिया के कार्लल, अलिसिया के कार्लल, ये बहुत ही खूबसूरत नाम है, मुझे ये पसंद है। क्या आप नन्नी बहन को यहाँ लाएंगी? वो ओ बहन जी, मैंने भी आपका हाथ थाम लिया है। खैर, आप जानते हैं, जब इसराइली अपनी कुर्बानी मजबा पर लाते थे, जिसके मुतालिक मैंने कल मुनादी की थी, गौर करें, तो वो उस पर हाथ रखते थे क्योंकि उनकी शनाख्त उनकी कुर्बानी से होती थी। आपके अपने हाथ अपने बच्चे पर हैं, जो कि आपको इस बच्चे से शनाख्त कराते हैं, क्या ये दुरुस्त है? और हम अपने हाथ इस पर रखकर दुआ में इस नन्ही बच्ची अलिसिया के लिए अपनी शनाख्त खुदा से करते हैं, क्या ये दुरुस्त है? यानी कालल के लिए। हमारे आसमानी बाप, हम इस नन्ही बच्ची को तेरी तरफ बढ़ाते हैं। ए खुदा, ये खुशी की निशानी जो तूने इस घराने को बख्शी है। खुदावंद, इस नन्ही बच्ची को बरकत दे। जबकि माँ इस बच्ची को लाई है और मैंने आज सुबह इस नन्ही खूबसूरत बच्ची को यहाँ अपने हाथों में उठा रखा है। तूने ये इसे दी है और अब ये इसे तेरे हवाले कर रही है। खुदावंद, ये बात इस औरत के ईमान और इसकी तमन्ना को जाहिर करती है कि इसकी बच्ची खुदा के खौफ में परवरिश पाए। खुदावंद, इस बच्ची को बरकत दे और होने दे कि ये एक बहुत ही खुशगवार और लंबी जिंदगी गुजारे, और अगर कोई कल बाकी है तो ये उस आने वाले कल में तेरी अजीम खिदमत का सबब बने। जिस घर से आई है उसे बरकत दे, खुदावंद ये बख्श दे। अब हम इस नन्ही प्यारी बच्ची को मखसूस करते हैं, यीशु मसीह के नाम में तेरे सुपुर्द करते हैं, आमीन। अब क्या ये नन्ही बच्ची प्यारी नहीं है? आप जानते हैं, हर माँ का बच्चा उसके लिए जमीन पर खूबसूरत तरीन होता है, ये बात सच है कि नहीं? नन्ही प्यारी, खुदा आपको बरकत दे, कितने गौर से मुझे देख रही है। अब मैंने अपना हाथ घुमा लिया है। अब आप कैसी हैं? खैर, ये भी कितनी प्यारी सी बच्ची है, इसका क्या नाम है? लीथा, लीथा एन, लीथा एन फार्मर। मेरे खुदाया, कितनी प्यारी सी नन्ही बच्ची है, क्या तुम यहाँ मेरे पास आओगी? समझे, ये अच्छी बात है। अब ये भी कितनी प्यारी सी बच्ची है, ये भी बहुत प्यारी लग रही है। लीथा, क्या आपको गिरजे जाना पसंद है? अब मैं तस्वीर करता हूँ कि हमारे खुदावन ने भी इस नन्ही की तरह बच्चों को अपने हाथों में उठाया था। क्या ये बहने हैं? आप जानते हैं, मैं अब यहाँ खड़े हुए कैसा महसूस करता हूँ। आप समझ रहे हैं मेरा क्या मतलब है, एक शादी क्या है या एक मखसूसियत क्या है, यानी आप खुदा की हजूरी में खड़े होते हैं, ओ मेरे खुदाया, और ये बात मुझे झंझोड़ देती है। आए, अपने सरों को झुकाते हैं। ऐ खुदा, हम इस नन्ही लेथा के साथ आज सुबह हाजिर होते हैं और हम दुआ करते हैं, आसमानी बाप, तू लेथा को बरकत देना और जिंदगी भर इसे संभालना, और होने दे कि ये लंबी और खुशगवार जिंदगी जिए, इसके वालदेन को बरकत दे। काश खुदावन ये ऐसे घर में परवरिश पाए जहाँ खुदा की हमदो सना होती हो, और मैं दुआ करता हूँ कि अगर कोई कल बाकी है तो ये खुदा की बादशाहत में काम करने वाली हो, और इसे इसके सफर में बीमारी और बुराइयों से बचाए रखना, और अपनी बादशाहत में इसे अजीम बाप बरकत बनाना। और हम इस नन्ही बच्ची को मखसूस करते हुए यीशु मसीह के नाम में तुझे सौंपते हैं, आमीन। कितनी प्यारी बच्ची है, हो मैं इन नन्हे बच्चों से प्यार करता हूँ, लेकिन मैं जरा, आप जानते हैं, मैं हमेशा खौफज़दा रहता हूँ कि इन्हें नुकसान न पहुँच जाए, क्योंकि ये बहुत ही छोटे से होते हैं। तो भी मेरी बीवी ने मुझे बताया था और कहा था कि जितना 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 तुम इन्हें उठाओगे, वो गिरेंगे तो वो मजबूत हो जाएंगे, लिहाजा ये बात तो दुरुस्त है। जी हाँ, और आप जानते हैं, बच्चे बहुत ही पुरथीले होते हैं, और अब क्या यहाँ कोई बीमार है जो चाहता हो कि उसके लिए दुआ की जाए? जिसने किसी खास मकसद के लिए या किसी और काम के लिए दुआ करवानी हो तो हम आपको वक्त देते हैं। ठीक है बहन जी, आप यहाँ आ जाएं और खड़ी हो जाएं। ठीक है जी हाँ, जैसा कि हम चाहते हैं इन कामों को कर लें। बस फिर अगर हम अपने क्रिसमस के पैगाम में जरा ज्यादा वक्त भी ले लेंगे तो ये सब ठीक रहेगा। ठीक है जनाब, अब आएं, हम अपने सरों को झुकाते हैं। भाई नेवल, क्या आप मेरे साथ आगे आएंगे? हमारे आसमानी बाप, क्रिसमस की इस शाम पर हमारे गुनाह और बीमारियों के लिए अजीम मखलसी मौजूद है जिसने दुनिया में जन्म लिया था ताकि हमारे लिए कुर्बानी दे सके, और हम अपनी बहन को यीशु मसीह के नाम में लाते हैं और अपने हाथ इस पर रखते हैं। बिल्कुल वैसा ही करते हैं जैसा तूने करने को कहा था कि अपने हाथ बीमारों पर रखोगे तो वो शिफा पा जाएंगे। हम इस बहन की शिफा के लिए यीशु मसीह के नाम में ऐसा करते हैं, आमीन। भाई कोपले को बुलाएं। हो क्या ये दुरुस्त है? बहन जी आप कैसी हैं? अब देखें, अब हम अपने सरों को दोबारा झुकाते हैं। हमारे आसमानी बाप, जब हम यहाँ कादरे मुतलिक की हजूरी में खड़े हैं और अपनी बहन के लिए दुआ कर रहे हैं जिसके साथ ये बुरा हादसा हुआ और कुछ ऐसा वाकया हुआ था जिसकी वजह से इसकी आंखें चली गईं, लेकिन खुदावन जैसे तूने मूसा को कहा था, इंसान की आंख को किसने बनाया? और सिर्फ एक ही है जो मदद कर सकता है और वो तू है जो अजीम यहोवा खालिक है। बस आसमानी बाप, हम दुआ करते हैं और जैसा कि हम इस बात पर अपने दिलों में ईमान रखते हैं और इसीलिए हम इस बहन को तेरे पास लाते हैं, और हमारा ये ईमान है और हम ईमान के साथ खुदा के इस अजीम सुनहरे मजबा पर आते हैं जहां मजबा पर लहू लहान कुर्बानी यानी मसीह पड़ा हुआ है। और यशायाह की किताब 53वें बाब और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, हालांकि वो हमारी ही खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी ही बदकरदारी के बाइस कुचला गया, और हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। अब हम अपना ईमान इस बहन के ईमान के साथ तेरे मजबा पर लाते हैं और यीशु के नाम में ये दुआ मांगते हैं कि ये अंधापन हमारी बहन को छोड़ दे और खुदा के जलाल और इज्जत के लिए ये बहन देखने के काबिल हो जाए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। बहन जी, खुदा आपको बरकत दे। भाई कोबले, पेरिस रेड हेड, जी हाँ, हाँ जनाब, अच्छा है। अब हम अपने प्यारे भाई कोबले की खिदमत को मसा करने के लिए दुआ करने लगे हैं कि वो जाएं और मेरे एक दोस्त से मुलाकात करें। मैंने उसके साथ न्यूयॉर्क में काम किया है। पेरिस रेड हेड वो शख्स जो रूल कुछ के बपतिस्मे को हासिल करने के लिए मेरे घर तक आ गया था। और क्या उसने सोडान में खिदमत का काम सर अंजाम दिया था? बहुत अच्छी बात है। तो फिर आप लॉइसविल छोड़ रहे हैं? ओ मेरे खुदाया, हम इस बात को पसंद नहीं करते कि भाई कोबले लॉइसविल को छोड़े। भाई, खुदा आपके दिल को बरकत दे। मेरे खुदाया, मैं भाई कोबले को हमेशा याद रखूंगा। ये बेशकीमत भाई है, खुदा का मुकद्दस बंदा है। और मुझे याद है जब मेरी पहली इसके साथ मुलाकात हुई थी, मौत ने इसको जकड़ा हुआ था और मैं भाइयों के दरमियान इसके अजीम नाम से वाकिफ था, और मैं वहाँ चला गया। भाई वहाँ अस्पताल में खड़े थे और मैं, यानी मेरे जैसा छोटा सा शख्स, मैं तो अंदर जाने से भी शर्मा रहा था। बस मैं कोको कोला की बनी हुई किसी चीज के पीछे जो अस्पताल के बाहर पड़ी थी उसके पीछे घुटनों के बल हो गया और इसके लिए दुआ की और वापस चला गया। दोबारा फोन की घंटी बजी और कहा, आप तो भाई कोबले से मिलने भी नहीं आए। और मैं वहाँ चला गया। उन्होंने इसके नाक का ऑपरेशन किया था और जबरदस्ती कुछ हिस्सा काट दिया था और ये भाई खून बहने से मौत की जानी बढ़ रहा था। मैं घुटनों के बल हो गया और दुआ की और खून बहना फौरन बंद हो गया। हमारे आसमानी बाप, ये तेरा खादम है और अब ये हमसे दूर हो रहा है, लेकिन फिर भी खुदावंद हम जुड़े हुए हैं और मैं दुआ करता हूँ जैसे कि अब हमारे दिल एक दूसरे के साथ धड़कते हैं वैसे ही हमारे दिल हमेशा धड़कते रहेंगे। ऐ बाप मैं तुझसे दुआ करता हूँ कि मेरे इस भाई को बरकत दे जबकि ये तेरे अजीम खादम भाई पेरिस रेडहेड की मदद करने को जा रहा है जो कि रूल कुछ के पीछे चलना चाहता है। इस बात से कता नजर कि तमाम बुनियाद प्रस्त क्या कहते हैं वो हर हाल ऐ खुदा तुझ ही को चाहता है। खुदावंद भाई कोबले को बरकत दे और इन्हें बरकत दे जब ये एक साथ मिलकर इकट्ठे काम करते हैं तो खुदावंद इनकी काविशों को बार बार करना। काश के ये दोनों पालूस और सेलास की तरह इकट्ठे मिलकर काम करें। खुदावंद ये बख्श दे खुदावंद इसे रूल कुछ का मसा अताकर जो इसकी तमन्ना है और इसने कोशिश की और जोर लगाया और जुस्तजू की कि ऐसी जगह ढूंढ पाए जहां तू इसे हकीकी तौर से बर सके। ऐ खुदावंद इस पर अजीम चीजें आश्कारा कर और खुदावंद शायद यही वक्त हो जिसके लिए तूने इसे तैयार किया है और हम इस घड़ी के लिए दुआगो हैं क्योंकि खुदावंद हम शाम के वक्त में आ पहुंचे हैं। और खुदावंद इसके बदन को कुव्वत दे इसे कुव्वत की जरूरत है उन्हें दे के वही कुव्वत जिसने यसु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया था यानी तब्दील कर देने वाली कुव्वत इसके बदन को शिफा बख्शे होने दे कि ये यसु मसीह के जी उठने की कुव्वत में आगे बढ़े। हम इसके लिए बरकत चाहते हैं। भाई कोबले खुदावंद आपको बरकत दे। भाई पेरिस को मेरा सलाम कहना और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबसे दोबारा मिलूंगा। मैं बैरून मुल्क इंडिया जा रहा हूँ। खुदा आपको बरकत दे। बहन जी आप कैसी हैं? भाई आपका शुक्रिया। खुदावंद यसु अब हम इस खातून को तेरे पास लाते हैं और अपने हाथ इस पर रखते हैं और हम खुद को इसके साथ शामिल करते हैं जैसे कुर्बानी के साथ शामिल करते हैं ये जानते हुए कि तूने इसका वादा किया है। मैं इस बहन की शिफा को यसु मसीह के नाम में मांगता हूँ आमीन। इस माँ को जो झुके हुए कंधों और सफेद बालों के साथ यहाँ खड़ी है जो कि अकासी कर रही है कि वो इस चलती हुई दुनिया में मुंजमंद हो गई है। ऐ खुदा वही कुव्वत जिसने हमारे खुदावंद यसु को कब्र से जिलाया था जैसे ही हम अपने हाथ इस पर रखते हैं और अपने आप को इसके और मसीह के साथ शामिल करते हैं तो होने दे वही कुव्वत जिसने मसीह को कब्र से उठा खड़ा किया था यसु के नाम में इसके बदन को शिफा बख्शे। मेरी बहन खुदा आपको बरकत दे। आसमानी बाप बिल्कुल उसी तरह हम अपनी बहन पर हाथ रखते हैं और यसु मसीह के नाम में खुदा के जलाल के लिए बहन शिफा पा जाए आमीन। पुरफजल बाप हम यसु मसीह के नाम में अपने हाथ अपनी इस बहन पर रखते हैं होने दे कि यसु मसीह के नाम में खुदा के जलाल के लिए ये बहन शिफा पा जाए आमीन। बहन जी खुदा आपको बरकत दे। आसमानी बाप हम अपने हाथ अपने इस भाई पर यसु मसीह के नाम में इसकी शिफा के लिए रखते हैं यसु के नाम से ये भाई शिफा पा जाए। हमारे आसमानी बाप जैसे कि हमारी बहन इस इबादत के लिए दूर का सफर करके आई है मगर अब वो आज सुबह यहाँ खड़ी है और खुदावन हम खुद को अंजील में शामिल करते हैं जैसे कि हमारे हाथ एक दूसरे पर और इस बहन पर रखे हुए हैं ताकि आसमान का खुदा इस बात पर निगाह करे जहाँ लिखा है अगर दो या तीन जमीन पर मुतफिक हों ऐ खुदावन यसु मसीह के नाम में हम तीन यहाँ पर मुतफिक खड़े हैं। ऐ खुदावन यसु के नाम में इस बहन को शिफा दे। खुदावन इसी तरीके से हम अपनी इस बहन पर अपने हाथ रखते हैं और हम इस बात पर मुतफिक हैं कि यसु मसीह के नाम में ये बहन शिफा पा जाए। आसमानी बाप तू इस भाई की आला मसीही जिंदगी को जानता है इसकी बीवी को कैंसर है ऐ खुदा ये उसके लिए खड़ा है और मसीह भी उसके लिए खड़ा है। अब ऐ शैतान यसु मसीह के नाम में तू उस बहन को छोड़ दे। भाई आप इस बात पर ईमान रखें आज के दिन को याद रखें ये एक खतरा था जिसे ठीक अभी भगा दिया गया है। खुदावंद हमारे आसमानी बाप ये हमारी बहन है जो हमारे पास आई है और ये एक मिसाली जिंदगी गुजार रही है और ये अपनी शिफा के लिए आई है और खुदावंद हम अपने दिलों और अपने हाथों को तेरे साथ जोड़ते हैं यसु मसीह के नाम में इस शिफा या बरकत को मांगते हैं। खुदावन, हमारी बहन रेजेट जो कि तेरी कारागरी है, वो इस बड़े दिन के वक्त में आई है। यीशु मसीह के नाम में इसे शिफा मिल जाए, आमीन। आसमानी बाप, आज सुबह हम इस प्यारी खातून को खुदावन यीशु के नाम में तेरे पास लाते हैं और हम अपने हाथ इस पर रखते हैं और यीशु के नाम में इसकी शिफा को मांगते हैं, आमीन। हमारे आसमानी बाप, हम आते हैं और अपनी बहन पर उस नाम में जो सब नामों से मुकद्दस नाम है, यानी यीशु मसीह के नाम में हाथ रखते हैं। खुदा के जलाल के लिए इस बहन को शिफा मिल जाए। हमारे आसमानी बाप, आज हम अपनी इस बहन को तेरे पास लाते हैं, जो कि तेरे फजल की निशानी है कि तू कैसे इसके साथ बला रहा है। सालों साल पहले जब ये चंद घंटों की जिंदगी की मेहमान थी और कैंसर ने इसे खत्म कर दिया था, जबकि ये खुदा की बादशाही के लिए अब भी जिंदा है। खुदावन, इसके साथ जो कुछ भी गलत है, यीशु मसीह के नाम में इसे आज शिफा बख्श दे, आमीन। खुदा आपको बरकत दे। हमारे आसमानी बाप, जैसा कि हमारी ये बहन भी खुदा के फजल की निशानी है, जो कि खार और इंतहाई नशे की हालत में मुब्तला थी, यानी शराबी थी, और अब वो पूरी तरह एक अच्छी औरत बन गई है। खुदावन, शिफा का ये कैसा अजीम काम हुआ, और अब इसका दिल दूसरों के लिए जलता है जो कि मुसीबत में मुब्तला है, क्योंकि ये जानती है कि एक अजीम शाफी मौजूद है। ऐ बाप, इसने अभी तीन मुख्तलिफ लोगों के नाम लिए हैं। मैं दुआ करता हूँ और खुद को और अपने भाइयों, अपने पास्टर और इस बहन को खुदावन यीशु के साथ जोड़ता हूँ, और होने दे। खुदा के जलाली नाम में वो तीनों लोग जिनके नाम लिए गए हैं खुदा की बादशाही के लिए रहाई पाएं, आमीन। शुक्रिया भाई। जलाली बाप, हम अपने हाथ भाई वे पर रखते हैं। ये तीन चीजों का तलबगार है, और खुदावन तू उन चीजों को जानता है, और हम ईमान रखते हैं कि ये लिखा हुआ है, और जानते हैं कि कलाम सब चीजों के मुतालिक फरमाता है, और बस हम दुआ करते हैं आसमानी बाप, ये चीजें जो इस भाई ने मांगी है यीशु मसीह के नाम में इसे मिल जाए, आमीन। जलाली बाप, हम खुदावन यीशु के नाम में अपने हाथ भाई पर रखते हैं और खुदा के जलाल के लिए इसकी शिफा मांगते हैं। ऐ बाप, यीशु के नाम में ये बख्श दे, आमीन। आसमानी बाप, हम अपने हाथ अपनी बहन पर रखते हैं और खुदा की बादशाही की खातिर यीशु मसीह के नाम में उसकी ताबेदारी करते हैं, क्योंकि ऐसा उसने करने को कहा है। यीशु के नाम में इसको शिफा मिल जाए, आमीन। बहन जी, खुदा आपको बरकत दे। खुदा बाप, इसी तरह हम अपने हाथ अपने इस भाई पर रखते हैं। खुदा की बादशाही की खातिर यीशु मसीह के नाम में तू इसे शिफा बख्श दे, आमीन। मेरे भाई, खुदा आपको बरकत दे। बहन ऑर्गन ब्राइट, आसमानी बाप, हम बहन ऑर्गन ब्राइट के लिए दुआ करते हैं, तू इसे शिफा दे, खुदावंद ये बख्श दे। हमारे आसमानी बाप, तू इसकी इल्तिजा को यीशु मसीह के नाम में सुन ले और इसे शिफा बख्श दे, आमीन। खुदावन यीशु मसीह के नाम में अपने भाई पर हाथ रखते हैं, इसकी इल्तिजा को कबूल कर, आमीन। मेरे भाई, उस पर ईमान रखें। आसमानी बाप, यीशु मसीह के नाम में इस छोटे लड़के पर हाथ रखते हैं, और जैसा कि आज सुबह हम एक साथ खड़े हुए हैं, تو ایمان کے وسیلے ہم اس بچے کو تیرے پاس لاتے ہیں، اور ہونے دے کہ خدا کی برکت یعنی مسیح کی شفا یسوع کے نام میں اس ننھے جسم میں ظاہر ہو جائے، آمین۔ خدا باپ، یہ پیارا والد جو اس بچے کو لایا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس پر بھی تیری شفایا قوت یسوع کے نام سے ظاہر ہو، آمین۔ میرے بھائی، خدا آپ کو برکت دے۔ آسمانی باپ، جیسے کہ ہماری پیاری بہن پیکن پال ضرورت مند ہے، اور خداوند تو اس بہن پر کتنا مہربان رہا ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ تیری برکتوں کا بہاؤ اس کے دل میں جاری اور ساری رہے، اور ساری بیماری اور اداسی جس میں سے گزر رہی ہے، خداوند ہونے دے کہ مسیح کی قوت اس بہن کو بحال کر دے، اور اس کے پیاروں اور اسے مکمل طور پر 100 گنا شفا مل جائے یسوع کے نام میں، آمین۔ خدا آپ کو برکت دے۔ آسمانی باپ، ہم اپنے اس بھائی پر ہاتھ رکھتے ہیں اور یسوع مسیح کی اس قوت کو مانگتے ہیں، اس مسیح یسوع کے نام کے وسیلہ سے جس کی خوشیاں ہم اس وقت منانے کو ہیں، وہ قوت اسے تندرست کر دے، آمین۔ پر فضل خدا، ہم اپنے ہاتھ اپنی اس بہن پر رکھتے ہیں جو کہ تیری کاراگری ہے، یسوع مسیح کے نام میں تیرے جلال کے لیے اس بہن کو شفا مل جائے، آمین۔ اے خداون، یسوع مسیح کے نام میں ہم اپنی اس بہن پر ہاتھ رکھتے ہیں تاکہ یہ شفا پا جائے، آمین۔ آسمانی باپ، یسوع مسیح کے نام میں ہم اپنی اس بہن پر ہاتھ رکھتے ہیں تاکہ خدا کی قوت اسے شفا بخش دے، آمین۔ خداون یسوع، ہماری بہن کی التجا کو قبول کر، ہم یہ خدا کے جلال کے لیے مانگتے ہیں یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ ہمارے آسمانی باپ، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری بہن پچھلے کئی سالوں سے ہمارے ساتھ ہے، خداوند ہم اس بات کے لیے تیرے شکر گزار ہیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ تو اسے اس کی درخواست کے مطابق دے یسوع کے نام میں۔ خداوند خدا، کیا خدا ہر جگہ موجود ہے؟ سمندروں کے پار، یہاں پر بھی، اور ہر جگہ موجود ہے۔ آپ صرف ایمان رکھیں، اور خدا آج صبح اس بھائی کو ناروے میں شفا بخش دے گا۔ کیا آپ اپنی بیٹی اور باپ اور ان کی نجات کے لیے دعا کروانا چاہتی ہیں؟ خداوند، تو اس خاتون پر نظر کر، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ تو اس کی التجاؤں کو جانتا ہے، اور تو نے اس کی پکار کو سن لیا ہے۔ تو یہ جانتا ہے کہ یہ یہاں کس مقصد کے لیے کھڑی ہے، کیونکہ ایک چڑیا بھی زمین پر تیری مرضی کے بغیر نہیں گر سکتی، اور میں جانتا ہوں کہ تو اس درخواست سے واقف ہے۔ بس ہم یسوع مسیح کے نام میں ان چیزوں کو مانگ لیتے ہیں، یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے یہ چیزیں اس بہن کو بخش دے، آمین۔ آسمانی باپ، ہم اس بھائی کی ماں کے لیے دعا کرتے ہیں جو کہ بوڑھی ہے اور اس کا آپریشن ہونے والا ہے، اے خدا اس کی مدد کر، اور اگر ہم اس سے بڑھ کر کچھ کر سکتے ہیں تو خداوند تو اس بات کو مجھ پر یا کسی اور پر آشکارا کر دے، اس دن سے پہلے ہمارے بھائی کو تسلی دے، اے باپ یہ بخش دے، میں یہ یسوع کے نام میں مانگتا ہوں۔ خداوند، ہم اپنی اس بہن پر ہاتھ رکھتے ہیں یسوع مسیح کے نام میں، تو اسے شفا بخش دے اور اسے تندرست کر دے، آمین۔ میں یسوع کے نام میں یہ دعا کرتا ہوں، آسمان کا خدا اس بہن کی درخواست کو پورا کرے۔ بہن جی، خدا آپ کو برکت دے۔ آپ بہن ماگریٹ ہیں؟ جی ہاں، ٹھیک ہے۔ خداوند یسوع، میں اپنی بہن کے لیے دعا کرتا ہوں، اس کا شوہر اس کے لیے کھڑا ہے، انہوں نے کتنی جدوجہد کی، اور تو نے کس طرح سے خود کو ان پر ظاہر کیا تھا، اور کیسے انہیں اپنے آپ کو دکھایا تھا۔ اے خدا، میں تیرا بڑا ہی شکر گزار ہوں۔ خداوند بخش دے کہ ہماری بیش قیمت بہن یعنی اس بھائی کی بیوی یسوع کے نام میں شفا پا جائے۔ आसमानी बाप, ये दरखास्त जो ये भाई कर रहा है, खुदावन तू इन तमाम हालात से वाकिफ है। मैं तेरे इस बंदे के लिए दुआ करता हूँ और उन लोगों की शिफा के लिए जिनके मुतालिक ये दरखास्त कर रहा है। ऐ खुदा, ये बख्श दे, और तूने इन दरखास्तों को मुझसे बेहतर तौर पर जान लिया है। बस मैं अपने दिल की गहराई से यहाँ तेरे मजबा पर अपनी दुआ को अपने भाई की दुआ के साथ यस्सु के नाम में मांगता हूँ कि तू इनका जवाब देगा। आमीन। आसमानी बाप, हम अपनी बहन पर इसकी दरखास्त के मुताबिक हाथ रखते हैं। यस्सु मसीह के नाम में इसे ये बख्श दे। आमीन। बहन जी, खुदा आपको बरकत दे। खुदावन, हम अपनी इस बहन पर इसकी दरखास्त के मुताबिक हाथ रखते हैं। यस्सु मसीह के नाम में ये इसे बख्श दे। खुदा बाप, अपने इस भाई पर इसकी दरखास्त के मुताबिक हाथ रखते हैं। खुदावन, ये इसे बख्श दे। इसने पिछले तमाम सालों में तेरी खिदमत करने की कोशिश की है, मसाइब के बावजूद ये भाई अभी तक कायम खड़ा है। ऐ खुदा, आज सुबह ये मजबा के सिंह को थाम ले और उस नूर के साथ चलता रहे, यही कबूलियत की घड़ी है। ये बख्श दे, और इसकी दरखास्त जो इसकी बीवी और इसकी पोती के लिए है, यस्सु के नाम में बख्श दे। भाई ब्रूस्टर, खुदा आपको बरकत दे, उस पर ईमान रखें। हमारे आसमानी बाप, इस माँ के लिए जो कि आज सुबह यहाँ खड़ी है, जो कि बहुत सारों की माँ लग रही है, खुदावन अब ये अपने प्यारों के लिए दुआ कर रही है। इसने ये दरखास्त की है और हम सब अपने आप को इकट्ठा करते हैं और अपने हाथ इस पर इकट्ठे होकर रखते हैं, और हम इस बात पर ईमान रखते हैं और अपने दिलों को तेरे मजबा के सामने रखते हैं। हम इस दरखास्त के लिए दुआ गो हैं जो इसने मांगी है। यस्सु के नाम में ये पूरी हो जाए। आमीन। ऐ खुदा, तू जानता है ये शख्स जो यहाँ खड़ा है और जो कुछ भी इस वक्त इसके दिल में है, खुदावन हम अपने आप को इसके साथ शामिल करते हैं। यस्सु मसीह के नाम में इसकी दरखास्त पूरी हो जाए। आमीन। ऐ खुदा, हम बहन हेटी को जानते हैं। खुदा, हम दुआ करते हैं जब हम अपने हाथों को इस पर रखते हैं तो बख्श दे कि रूह कुछ इसके साथ हो और इसके दिल को दोबारा खोल दे। हम इसके दोनों बेशकीमत बेटों के मुतालिक गौर फिक्र करते हैं। मैं ख्याल करता हूँ जैसे मैं उस दिन उस कमरे में उस छोटे से घर में बैठा हुआ हूँ जिस दिन तूने कहा था सिर्फ कलाम बयान कर और इससे कह जो मांगना चाहती है मांग ले। इसने मांग लिया। ऐ खुदा, मैं जानता हूँ तू उन लोगों की फिक्र करता है। बस मैं दुआ करता हूँ जब मैं अपने हाथों को इस पर रखता हूँ तो यस्सु मसीह के नाम में इसकी दरखास्त को कबूल कर ले। खुदावन खुदा, जब हम अपने हाथ इस बहन पर रखते हैं जो खतरनाक सड़कों और मुख्तलिफ राहों से गाड़ी चलाकर और बड़ी कोशिश करके यहाँ पहुँची है, तू इसके मुतालिक सब कुछ जानता है। जबकि मैं अपने हाथ इस पर रखता हूँ, ऐ खुदावन, मैं इसके लिए दुआ करता हूँ यस्सु मसीह के नाम में जो कुछ इसने मांगा है वो इसको मिल जाए। आमीन। हमारे आसमानी बाप, जैसे कि ये बेशकीमत भाई, कैसे खुदावन के लिए इसने एक दफा फैसला किया था जबकि उन पुरानी सिगरेटों और ऐसी ही चीजों ने इसे बांध रखा था। खुदा ने एक मुलाकात की और बस फिर इसने इंतजार और इंतजार किया और इसने हमें कुछ नहीं बताया था। फिर खुदा ने एक और मुलाकात की और इसने इंतजार और इंतजार किया लेकिन इसने हमें कुछ नहीं बताया था, और बिल आखिर एक सुबह बैठे हुए वो जाहिर ही हो गया। तब से ये इंतजार खत्म हो गया। खुदावन, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि तू सच्चा है। तेरा कलाम कभी नाकाम नहीं हो सकता, और कलाम कहता है खुदावन का इंतजार करने वाले असरे नो कुवत पाएंगे। अब खुदावन, आज सुबह ये तीन दरखास्तें लाया है और जैसा कि हम यहाँ तीन खड़े हैं, उसी तरह एक खुदा के तीन दफ्तर हैं, उसी के वादे के साथ हम खड़े हैं उसी सच्चे वाहिद और जिंदा खुदा के नाम में, यानी यस्सु मसीह के नाम में। इसकी दरखास्तों को इसे बख्श दे। आमीन। भाई, खुदा आपको बरकत दे। खुदावन, ओ मेरे खुदाया, खुदावन तू इन दरखास्तों को सुनता है और खुदावन तू जानता है कि कैसे इनका जवाब देना है। बस हम अपनी बहन बेकर पर यीशु मसीह के नाम में हाथ रखते हैं और अपनी मनाजात को इसके साथ शिफा के लिए पेश करते हैं। आमीन। मेरी बहन, खुदा आपको बरकत दे। आसमानी बाप, मैं इस पुरवकार भाई पर हाथ रखता हूँ। ऐसा लग रहा है जैसा कि ये आज बिल्कुल तंदुरुस्त है, लेकिन बाज औकात ये धोखा होता है। बस मैं दुआ करता हूँ जो कुछ भी इसके दिल में है इसकी दरखास्त को कबूल कर ले और जो कुछ भी इसने मांगा है यीशु के नाम में इसे बख्श दे। आमीन। आसमानी बाप, हम अपनी बहन पर हाथ रखते हैं और यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते हैं कि तू इसकी दरखास्त को अपने जलाल के लिए कबूल कर। आमीन। खुदावंद यीशु, हम अपने भाई पर हाथ रखते हैं और इसकी इल्तिजा को मांगते हैं। जबकि हम इस पर हाथ रखे हुए हैं तो खुदावंद, हम इसे तेरे सामने पेश करते हैं। हम अपने आप को इकट्ठा करते हैं और इस यकसुई में हम यीशु के नाम में दुआ मांगते हैं। आमीन। मेरे भाई, खुदा आपको बरकत दे। खुदा बाप, हम अपनी बहन पर भी इसी तरह हाथ रखते हैं, यीशु मसीह के नाम से इसकी दरखास्त को पूरा कर। मेरी बहन, खुदा आपको बरकत दे। ऐ खुदा, हमारे इस बेशकीमत भाई की किसी दिन मौत वाकया हो सकती थी, लेकिन तू इसके मरने पर रजामंद नहीं था। ऐ खुदा, मैं दुआ करता हूँ कि यीशु मसीह के नाम में तू इसकी इल्तिजा को पूरा कर। आमीन। आप जानते हैं कैसे उस पर ईमान रखना है। हमारे आसमानी बाप, हमारी ये बहन परेशानी के आलम में आगे आई है और खुदावन इस बात को जानती है कि इसकी बहुत सी परेशानियां हैं, लेकिन तूने वादा किया है रास्तबाज के लिए बहुत सी मुसीबतें हैं, लेकिन खुदावन उसे उन सब से रहाई बख्शेगा। खुदावन, इसे शिद्दत से रहाई की जरूरत है। हम इस पर हाथ रखते हैं और इस बुराई को डांटते हैं। खुदावंद, तेरे सुनहरी मजबे पर खुदा की कुवत इस पर साया करे और इसको तसल्ली दे। आमीन। ठीक है, आप सब ठहरने वाले हैं, क्या आप हमेशा पीछे ही नहीं बैठे रहते? जी हाँ, मैंने आपको नहीं देखा था। ओ, आप भी यहाँ मौजूद हैं? कोई हैरानगी की बात नहीं। ये एक आदमी है जिसको इस तरह पुकारा जाता है, यानी लोग इसे माइनर मजदूर पुकारते हैं। ये इसका नाम है, लेकिन एक वक्त आया कि ये माइनर मजदूर से एक बड़ा अहम शख्स बन गया। जो भी आपको कहना चाहूँ, कुछ भी कह दूँ। भाई माइनर ऑर्गन ब्राइट फुल गॉस्पल बिजनेसमैन वालों में से एक हैं, यानी उनमें से जिसने इस तहरीक की बहुत मदद की, और हम मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि सब लोगों को इकट्ठा करें इस बात की परवाह किए बगैर कि उनका इलाहाक किससे है और उनका ताल्लुक किस तंजीम से है। वो सिर्फ इस बात को पहचाने कि हम सब मसीह में भाई हैं। किसी दिन इसने एक मुख्तसर सी बात कही। इसने किसी सेनेटर या कुछ इसी तरह के शख्स को लिखा था। ये यकीनन एक हैरानकुन बात थी और मैंने कहा था, मैं चाहता हूँ कि तुम इसे बाहर भी लिखो और चाहता हूँ कि गिरजे में आओ और इस बात को बयान करो, और बताया मैंने तो पहले ही बयान कर दिया है। बस वो हमारे पास यहाँ टेप में मौजूद है और मैं चाहता हूँ कि आप भाई लोग इस टेप से सुने। भाई जिम, मुझे मालूम है कि आप मुझे उस कमरे में से सुन रहे हैं और मैं यही चाहता हूँ, क्योंकि यही सफारत का एक हकीकी हिस्सा था जो इसके साथ मुंसलिक किया गया था। समझे? ठीक है भाई ऑर्गन ब्राइट, आप कुछ कहना चाहते हैं? आमीन। आमीन, कितनी सच्ची बात है। आमीन, कितनी हकीकत है। सुकून आता है और जाता है और ख्वाहिशात गायब हो जाती हैं, लेकिन तसल्ली बाकी रहती है। खैर, बैरूनी तरफ तो ये एक बुरा दिन है, मगर अंदरूनी तरफ ये एक अच्छा दिन है। और आप जानते हैं कि मैं एक शख्स से मिला, बल्कि एक शख्स ने मुझे बताया कि वो अभी ही एक शख्स से मिलकर आया है। उसने कहा कि वो शिकायत कर रहा था, ओ, और उसने कहा ये एक बुरा दिन है। उसने कहा बारिश हो रही है और मतवातर जारी है, जबकि इस शख्स ने कहा ये तो एक अच्छा दिन है। और उस शख्स ने कहा ठीक है, तो फिर बताओ तुम कैसे इस दिन को अच्छा दिन कह सकते हो। उसने कहा मैं तुमको बताता हूँ, एक साल पहले डॉक्टर ने मुझे बताया था, जब मेरे पास जिंदा रहने के लिए सिर्फ एक हफ्ता बचा था, उसने कहा हर एक दिन अच्छा है, बस ये एक खुशगवार दिन है। जी हाँ, बस ये बात सच है, ये एक अच्छा दिन है। और हम सब जानते हैं ये क्या है। जैसे कि भाई ने कहा था कि मौत ने हम सबको फना कर दिया था, ये दुरुस्त है, ताकि तड़पते रहें और मर जाएं, लेकिन अब ये एक अच्छा दिन है क्योंकि हम सब मसीह में जिंदा हैं और मौत मजीद हम पर हुक्मरानी नहीं कर सकती। अब ये सब कुछ खत्म हो चुका है, आप समझ गए, क्योंकि हम दर हकीकत मसीह में हैं। अब आए हम, अब भाई ऑर्गन ब्राइट टैबरनेकल में मौजूद है और मैं सिर्फ अपना ही वक्त लेना चाहता हूँ। और अगर आपको खाने की तलब हो तो आप खिसक सकते हैं। मैं आज सुबह ही से काफी थकन महसूस कर रहा हूँ। मुझे अपने आप को ताज़ा करने के लिए कुछ और कहना पड़ता है। जब तक मैं कुछ और ताजगी महसूस नहीं कर लेता, लेकिन अब खुदावंद के रूह का अबर मुझ पर छा चुका है। बस इससे पहले कि हम कलाम मुकद्दस को पढ़ें, आएं, अब हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। और ऐसी ही दूसरी चीजों के लिए और कितनी दरख्वास्तें हैं जो आपके पास हैं, जिनके लिए शायद दुआ नहीं की गई, तो इनका इजहार सिर्फ अपने हाथ उठाकर करें। आएं, आज सुबह जब कि हम दुआ करते हैं तो खड़े हो जाते हैं, जो आपके बदन के अंदाज को बदलेगा और शायद ये थोड़ा सा मददगार साबित हो। और फिर मैं चाहता हूँ कि दुआ के बाद आप कुछ लम्हों के लिए खड़े रहें, जब तक कि मैं कलाम मुकद्दस की तलावत नहीं कर लेता। मेरा ख्याल है ये अच्छी बात है, इसलिए जब तक हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, इसके एहतराम में खड़े रहते हैं। हमारे आसमानी बाप, इंतहाई इंकसारी से, जैसा कि हम जानते हैं, अपने दिलों को दुनिया की तमाम ख्वाहिशात से और दुनिया की खुशियों से खाली करते हुए तेरी हजूरी में आते हैं, और जैसे हमारे भाई ने हमें हवाला दिया या बयान किया तसल्ली के मुतालिक, और खुदावंद की तसल्ली ही हमारी कुवत है, और हम खुशी से भरपूर दिलों के साथ आते हैं, क्योंकि हमें तेरी हजूरी में आने का ये शर्फ हासिल हुआ है, ताकि हमें जिस भी चीज की जरूरत है वो मांग सके। और तसल्ली तब आती है जब हम कलाम मुकद्दस पर निगाह लगाते हैं, और वादा किया गया है कि अगर हम इस पर ईमान रखेंगे तो इसके वसीले हमें बख्शा जाएगा। एक इंसान के दिल को इससे बढ़कर और कौन सी बात धड़का सकती है कि वो इस बात को जाने कि ये वादा लाफानी और अब्दी खुदा ने किया है। अब ऐ खुदावंद, हमें माफ फरमा, और अगर हमने कोई गुनाह किया है या कोई ऐसा काम किया है जिससे तू नाखुश हुआ है, तो इससे पहले कि हम इन चीजों को मांगे, क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसा लिखा हुआ है कि अगर हमारे दिल हमें इल्जाम ना दें तो हम अपनी दरख्वास्तों को हासिल कर लेंगे। लेकिन अब सब कुछ जो हम कर चुके हैं, हमें माफ कर दे खुदावन, हम पर रहम कर और हमदर्दी से निगाह कर। खुदावन, देख हम कितने काबिले तर्स लोग हैं, अदना फना होने वाले, जमीन पर रिंगने वाले, और सिर्फ इस गुनाह से बड़ी दुनिया से अलग होने की जुस्तजू कर रहे हैं। लेकिन हम अपने दिल की गहराई में जानते हैं कि किसी दिन कोई आने वाला है जो हमें इस जगह से उठाकर बेहतर जगह ले जाने वाला है, और हम इस बात से तसल्ली पाते हैं। और ऐ खुदा, मैं हर एक दरखास्त के लिए दुआ करता हूँ। तू जानता है कि इन उठे हुए हाथों के पीछे क्या मकसद है। खुदावन, इन लोगों को वो बख्श दे। मैं अपने लिए दुआ करता हूँ कि आज सुबह तू मुझे कुवत बख्श और बोलने में मेरी मदद कर, ताकि अंजील की मुनादी कर सकूँ। और हम तुझसे दरखास्त करते हैं, तू हमें इस खुशी में जिसमें हम इकट्ठे हैं बरकत दे, यानी इन क्रिसमस की खुशियों में जो हम मना रहे हैं। खुदावन, काश के हम क्रिसमस की हकीकी रूह को पा सके, और काश वो हमेशा तक हमारे साथ रहे। इसलिए हम ये यीशु के नाम में और उसी की खातिर मांग लेते हैं, आमीन। अब अगर आप कुछ देर और खड़े रहें, तो मैं आज सुबह मीका की किताब में से पढ़ना चाहता हूँ, और दूसरा हवाला अब्रानियों में से, अब्रानियों 12वां बाब। इससे मैं एक छोटा सा मजमून लूंगा, जिस पर मैं आज सुबह अपने क्रिसमस के पैगाम पर बोलना पसंद करूंगा, और ये हवाला अब्रानियों 12:25 में है। आज सुबह जब मैं उठा तो मुझे एक तरह से जल्दी करनी पड़ी, और सब कुछ मैं उस तरह से तरतीब ना दे सका जिस तरह से मैं चाहता था, बल्कि जिस जगह पर मैं चाहता था। अब मैं मीका 1:2 आयत से शुरू करता हूँ।
Hear ye people, hearken, O earth, and all that therein is, and let the Lord God be witness against you, the Lord from his holy temple.
ऐ सब लोगों सुनो, ऐ जमीन और उसकी मामूरी कान लगाओ, और खुदावंद खुदा, हाँ खुदावंद, अपने मुकद्दस मस्कन से तुम पर गवाही दे, क्योंकि देख, खुदावंद अपने मस्कन से बाहर आता है और नाजिल होकर जमीन के ऊंचे मकामों को पामाल करेगा, और पहाड़ उसके नीचे पिघल जाएंगे, और वादियाँ फट जाएंगी, जैसे मोम आग से पिघल जाता है और पानी कराड़े से बह जाता है।
And the 25th verse, we read this. See that ye refuse not him that speaketh.
और अब हम अब्रानियों में से 12वें बाब की 25वीं आयत को पढ़ते हैं। खबरदार उस कहने वाले का इनकार ना करना, क्योंकि जब वो लोग जमीन पर हदायत करने वाले का इनकार करके ना बच सके, तो हम आसमान पर के हदायत करने वाले से मुंह मोड़कर क्यों कर बच सकेंगे। अब खुदावंद खुदा अपने पाक कलाम के पढ़े जाने पर अपनी बरकत नाजिल फरमा, और आज हम में से हर एक को वो बात अता कर जो तू चाहता है कि हम जाने, ताकि जब हम यहाँ से जाएं, तो महसूस करें कि हम तेरी हजूरी में रहे और एक नई सोच और समझ के साथ और मजीद मजबूत अजम के साथ जाएं, बनिस्बत उस अजम के जिसके साथ हम इस इमारत में आए थे। बस हम ये दुआ यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। तशरीफ रखें। अब कोई शक नहीं कि अगर मैंने ये हवाला क्रिसमस के पैगाम के लिए सुना होता, तो मैंने कहा होता, क्या अब ये हवाला क्रिसमस के हवाले से पढ़ना अजीब नहीं? अब मेरा ये करने का मकसद ये है कि शायद कलीसिया के लिए थोड़ी सी मुख्तलिफ चीज ला पाऊं, क्योंकि क्रिसमस पर रेडियो से आप वही पुरानी जानी पहचानी कहानी बार बार सुनते हैं, यानी उन मजूसियों के मुतल्लिक जो मशरिक से आए थे और उस बच्चे यानी मसीह को ढूंढ रहे थे, और चरवाहों की मदासराई करना और सितारे का जाहिर होना और क्रिसमस की वो तमाम कहानियाँ जो आज हमारे मजहबी अकीदे को बयान करती हैं, ये सब कुछ ठीक है, मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि आज सुबह कलीसिया में शायद हमारे पास्टर साहब आज शब या अगले इतवार को कोई पैगाम इस हवाले से पेश करें, और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना लोगों को क्रिसमस के हवाले से जरा मुख्तलिफ सोच दी जाए, इसलिए मैंने ऐसा किया और मैंने ये हवाला चुना। अब ये छोटी सी बात है, और अब मैं देखता हूँ कि आप लोग जगह तब्दील कर रहे हैं, कुछ खड़े हो रहे हैं और कुछ बैठ रहे हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है, और जल्दी हमारे पास काफी जगह होगी और हम इसे भर नहीं सकते। माजरा चाहते हैं, क्योंकि हम इन गुजरगाहों को भर नहीं सकते, क्योंकि फायर मार्शल अफसर हमें ये नहीं करने देगा, लेकिन खुदा की मर्जी से बहुत जल्द हम इसमें थोड़ा सा इजाफा कर लेंगे। हम लोग पहले ही इस काम का आगाज कर चुके हैं, और जितनी जल्दी मुमकिन हुआ हम इसे तामीर कर लेंगे, और जब हम जिस्मानी हवाले से जगह की बात करते हैं तो ये मुकम्मल तौर से एक मुख्तलिफ जगह बन जाएगी, और फिर दरअसल पुराना टेबरनेकल नजर नहीं आएगा, खिड़कियों पर रंगदार शीशा होगा, उसके गिर्द ईंट की तय होगी, ऐसा ही होगा, ये मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ जगह होगी, लेकिन पुरानी इमारत यहीं पर रहेगी, क्योंकि उसके लिए हमारा कोई मनसूबा है, समझ गए? पुरानी दीवारों को रहने देंगे, समझ गए? हम इसको ऊपर से ढांपने वाले हैं और इसी तरह इसके गिर्द पत्थर लगाने वाले हैं, लेकिन ये इमारत बिल्कुल इसी तरह कायम रहेगी। अब क्रिसमस है, और मेरी आरजू है कि हकीकी तौर से लोग इस दुनिया में समझ पाए कि दर हकीकत क्रिसमस क्या है। अब पहली बात, लफ्ज क्रिसमस एक कैथलिक इख्तरा है, और इसका मतलब है मसीह। लफ्ज CHRISTMAS क्रिसमस पर गौर करें, क्राइस्ट मास यानी मसीह की इबादत करना, समझ गए? ये रोमन कलीसिया ने मखसूस किया या शुरू किया था, और जहाँ तक मेरा मानना है मसीह कभी भी 25 दिसंबर को पैदा नहीं हुआ। जी हाँ, ये सिर्फ रस्म और रवाज का एक मजमुआ है, यही सब कुछ इसमें है, और सारी दुनिया ही जैसे कि नबी कहता है ये बिगाड़पन की खो बन गई है, और ये सच है। कोई असल चीज कहीं नहीं है, हर एक छुट्टी के पीछे कुछ न कुछ है, तो फिर क्यों सेंता क्लॉज ने क्रिसमस यानी चरनी में पैदा होने वाले की जगह ले ली है, खरगोश और चूजों और नई टोपी ने जीठने की जगह ले ली है, और कहां पर इन सब में खुदा नजर आता है, समझे? इसका सबब यह है कि इंसान दौलत कमाने वाला बन गया है। क्यों लोग महीना पहले ही क्रिसमस के तोहफे खरीदना शुरू कर देते हैं? और ये क्या है? सिर्फ एक गैर मसीही तारीख, इसमें कोई भी इलाही बात नहीं। ओ, लोग कहने की कोशिश करते हैं तोहफे देने चाहिए, मजूसियों ने दिए थे। ये तो सिर्फ रेगिस्तान में एक सरसब्ज मकाम दिखाने का एक शैतानी बहाना है। अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो अपनी जिंदगी मसीह को दें, एक दूसरे को मत दें, ये मसीह को दें। इसी मकसद के लिए तो वो हुआ था और यही उसके आने का मकसद था, समझे? लेकिन ये बात अब एक ऐसी जगह पहुंच गई है जहां ये छोटे बच्चों के लिए लानत बन गई है। कुछ पड़ोसियों के बच्चों के पास अफराद से होता है, जबकि दूसरी जानिब बच्चों के पास कुछ भी नहीं होता और वो बच्चे देखते ही रहते हैं, और ये सब कुछ मिलकर एक गलत चीज है। बस यही बात है। और ताजर हजरात अपनी तजारती चीजों को ऐसी जगहों पर लगाते हैं कि वो, जैसे कि मेरी बीवी छोटे बच्चों के लिए कुछ खरीदना चाहती थी और वो चली गई, और इस बात को तकरीबन 3 हफ्ते गुजरे हैं और दुकानदार ने कहा, ओ, हमने सब कुछ बेच दिया है और हमारा सारा माल बिक चुका है। हमने इस साल दुगने माल का ऑर्डर दिया था पर वो भी सारे का सारा बिक चुका है। देखें, 3 या 4 हफ्ते पहले ही खरीदारी शुरू हो जाती है। ओ, देखें, दौलत कमाने का ये कितना बड़ा जरिया है। और इन सब बातों के बाद क्या आप जानते हैं कि क्रिसमस कैसे शुरू हुआ, जिसे हम क्रिसमस कहते हैं, यानी क्राइस्ट मास? यहाँ इसकी कहानी है जो मैंने एक सफ़े पर तहरीर कर रखी है। मैंने इसे पिछले साल ही मुकम्मल किया था। इससे पहले मैंने 7 कलीसियाई जमानों के मुतल्लिक यहाँ पर लोगों को सिखाया था, और मैंने नासियाई काउंसिल और प्री नासियाई काउंसिल और पोस्ट नासियाई काउंसिल और नासियाई फादर्स और हेसलूप की 2 बाबल और फोकस के शहीदों की किताब और बाकी सब कुछ को लिया, क्योंकि मैंने खादमों को इनमें से बयान करते सुना था, लेकिन मैं इनको खुद पढ़ना चाहता था और देखना चाहता था ताकि मुझे मालूम हो जब मैं इसे पढूं या अपने लोगों से बयान करूं। जो कुछ मैंने लोगों से बयान करना है, आखिरी दिन मुझे खुदा को इसका हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए मैं वो ना कहूं जो दूसरों ने कहा या जो उन्होंने पढ़ा। इसलिए मैं इन किताबों को खुद पढ़ना चाहता था ताकि इनके मुतालिक जानूं और गौर करूं। अब हकीकत में क्रिसमस मसीह है, मेरा ईमान है, और इस बात को साबित किया जा सकता है, जैसे खालिक पर नजर करने से जी उठने को साबित किया जा सकता है कि कैसे उसने ये नबाताती जिंदगी को तख्लीक किया और किस तरह हर एक चीज उसके मकसद को पूरा करती है और फिर मर जाती है, और अगर ये मरती है तो ये दोबारा जिंदा हो जाती है, क्योंकि इसमें ना खत्म होने वाली जिंदगी होती है और ये सिर्फ एक ही तरीके से दोबारा जी सकती है कि इसमें जिंदगी का बीज हो, समझे? अब खुदा अपने आप को इस तख्लीक के जरिए जाहिर करता है, और ये बात जाहिर करती है कि तमाम गैर कौम के देवता और दूसरी चीजें जो हमारे पास हैं, वो दुरुस्त नहीं हैं। गौर करें तो वो सिर्फ फलसफे और तसव्वुरात हैं, लेकिन सिर्फ वाहिद वो खुदा है जिसने आसमान और जमीन को तख्लीक किया और खुद को दोबारा अपनी तख्लीक के जरिए जाहिर करता है कि वो अपने मनसूबे में क्या हैसियत रखता है। और फिर क्या आपने कभी सोचा कि जब मसीह पैदा हुआ, जो कि खुदा का बेटा था, क्यों वो चरनी में यानी अस्तबल में पैदा हुआ और उसे चरनी में रखा गया? क्योंकि वो बड़ा था, और बड़े घरों में पैदा नहीं हो सकते, बड़े घरों में पैदा नहीं होते। और फिर क्या आपने गौर किया जब वो उसे कलवरी पर ले गए तो वो कलवरी से क्यों ना भागा और सलीब उस पर लाद दी गई और उसे इतना मारा गया कि उसकी कमर से खून बह रहा था, लेकिन वो उसे ले गए, वो बर्रे को जबा करने के लिए ले गए, समझे? क्योंकि वो एक बर्रा था। खैर, अगर कुदरत की इन तमाम गवाहियों को देखें, तो वो क्या था? बर्रे कब पैदा होते हैं? दिसंबर में या अप्रैल में? यकीनन गौर करें, देखें, ऐसी बात सोचना भी हमाकत है। ये काम रोमन कैथलिक कलीसिया के जरिए किया गया, जब रोम में कैथलिक चर्च बना तकरीबन 606 एडी में, शायद इसी सन में, बल्कि 306 में। अब हम इस बात को देखते हैं कि रोमन बुद्ध प्रस्त कौमें मुश्तरी की पूजा करती थी, जो कि सूरज देवता था, और फिर अस्तारात की पूजा करती थी, जो कि चांद देवता था, या फिर दूसरी तरह माँ यानी आसमान की माँ। अच्छा, इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा कि अब अस्तारात देवी यानी आसमान की माँ अब मजीद आगे नहीं चल सकेगी, इसलिए उन्होंने उसे मरियम की सूरत दे दी। बस ये उस वक़्त से बुत प्रस्ती पर कायम है और तब से मसीहत में बुत प्रस्ती को जोड़ दिया गया है।
Worshipped
और फिर इसी तरह उन्होंने अपने सूरज देवता की सालगिरह के दिन को, जो कि मुश्तरी था, उसकी इबादत और एहतराम करने की जुस्तजू की। और ये सूरज की पहली दिसंबर से 25 दिसंबर तक होती है और ये तब्दील नहीं हुई, और ये गुजरती हुई अपने बुर्ज जद्दी तक चली जाती है। और वैसे भी मेरे पास अखबार का एक सफा मौजूद है जो मैं किसी भी वक्त आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, जो कि आपको हैरान कर देगा। आप बात करते हैं कि उस दिन दरिया के किनारे क्या वाकया हुआ था। मैं आपको इसकी तस्दीक के लिए यरूशलम में पाई गई मालूमात दिखाना चाहता हूँ, जो कि चंद हफ्ते कबल अखबार में शाया हुई थी। उन्होंने चंद हफ्ते कबल यरूशलम में कुछ पाया था जो इसकी मुस्बत तस्दीक करता है कि वो फरिश्ता बिल्कुल उस वक्त जाहिर हुआ था और खिदमत को आगे लेकर गया था। जी हाँ, अब चंद हफ्ते पहले मुझे भी ये मालूम नहीं था और अब ये यहाँ अखबार में मौजूद है। अब ध्यान दें, जब उसने वो अबूर किया तो वो इसमें मौजूद है, समझ गए। अब 21 दिसंबर के बाद जब तक जुलाई नहीं आ जाता, दिन हर रोज जरा मुख्तसर होना बल्कि लंबे होना शुरू कर देते हैं, और फिर ये दोबारा मुख्तसर होना शुरू कर देते हैं जब तक ठीक वहाँ तक पहुँच नहीं जाते, और फिर वो आराम करने का वक्त होता है। और रोमन बुत प्रस्तों ने कहा कि यही सूरज देवता की सालगिरह का दिन है। दिसंबर की पहली तारीख से, बल्कि दिसंबर की 21 तारीख से लेकर 25 दिसंबर तक, उस वक्त के दौरान वो रोमन सर्कस, रथों की दौड़ और ऐसी ही चीजों को शुरू कर देते हैं। खैर, तब मसीहों, बल्कि रोमन मसीहों ने अपने रस्म रवाज में इजाफा किया कि इन दोनों अतराफ वाली ही चीजों को रख लेते हैं। दोनों बुत प्रस्त और मसीहों ने मिलकर कहा, अगर ये सूरज देवता की सालगिरह का दिन है तो आओ इसे मिलाकर खुदा के बेटे की सालगिरह का दिन बना लेते हैं। यहाँ है आपका 25 दिसंबर का दिन और आपकी इबादत यानी क्राइस्ट मास। हो, ये कैसी खौफनाक बात है, समझे। अब ये है ताल्लुक कायम करना। आप कहते हैं क्यों किसी दूसरे दिन क्यों नहीं मना लेते। हाँ, लेकिन मसीह को बुत प्रस्ती के साथ जोड़ दिया गया है, बिल्कुल इसी चीज को वो खत्म करने आया था, लेकिन इन्होंने दोबारा इसी चीज को मसीह के साथ जोड़ दिया है, समझे। और यही वो चीज है जो गलत है। और सेंटा क्लॉज जर्मनी में कोई बूढ़ा शख्स था जिसका नाम क्रिस क्रेंकल था। वो आसपास के इलाकों में जाता था और क्राइस्ट मास के दिन बच्चों को तोहफे तहाज देता था। वो एक कैथलिक था और उन्होंने उसे मुकद्दस बना दिया और कहा, अब से ये मुकद्दस नेकलस है, समझे। मैं बेहतर समझता हूँ, वो फिर भी करेंगे क्योंकि आप हर हाल में इस बात को जानते हैं। देखें, इसलिए कि हमने कलीसियाई जमानों में इन बातों पर गौर किया था। लेकिन आज सुबह जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये है कि इस क्रिसमस के दिन हम इस बात को पाते हैं कि दुनिया बेहतर हालत में नहीं है, बल्कि वैसे ही है जैसे कि 19 और 2000 साल पहले था जब मसीह आया था। इसमें कोई भी फर्क नहीं है, बिल्कुल वैसी ही हालत है जैसी उस वक्त थी, अब भी वैसी ही हालत है। और अगर मैं इसका नतीजा निकालूं या एक मजमून लूं जो मैं बयान करने लगा हूं, तो वो होगा दुनिया का जवाल पजीर होना। जब मसीह क्रिसमस पर 1900 साल पहले आया था तो दुनिया जवाल पजीरी का शिकार थी और हर एक चीज अलूदा हो चुकी थी। मजहबी दुनिया भी अलूदा हो चुकी थी और रोमी दुनिया इखलाकी तौर पर अपनी निचली तरीन सतह पर पहुंच गई थी। हो, यानी दुनिया अपने गैर इखलाकी पन पर पहुंच चुकी थी। यहूदी अपने खुदा को भूल चुके थे और अपने मुकद्दस त्योहारों को रवायती रस्म रवाज में बदल चुके थे और खुदा उनको छोड़ चुका था। और वो लोग जानते थे कि कुछ वाक्या हुआ था और सारी दुनिया ने ऐसा ही किया था ताकि उस निजाम को इकट्ठा रखे, और यही जवाल पजीरी थी। और किसी चीज को इकट्ठा रखने के लिए हर एक कौम अपने तौर पर किसी चीज की या किसी की मुंतजर थी कि कोई आए और उसे इकट्ठा कायम रखे। मैं दुनिया के मुतल्लिक नहीं जानता, लेकिन क्या आज भी बिल्कुल वही तस्वीर नजर नहीं आ रही? क्या ये किसी चीज के लिए मुंतजर नहीं है जो इसे इकट्ठा कायम रखे, जैसा कि 2000 साल पहले था? दुनिया 2000 साल पहले मसीहा की मुंतजर थी कि वो चीजों को इकट्ठा कायम रखेगा, और खुदा ने 2000 साल पहले मसीहा बख्शा, क्योंकि अगर हम किसी चीज की उम्मीद करते हैं और किसी चीज के मुंतजिर होते हैं तो खुदा वो चीज हमारे लिए बेचता है। और अब दुनिया 2000 साल बाद वापिस उसी हालत में आ गई है जहां पर ये 2000 साल पहले थी, और ये दुनिया जवाल पजीरी का शिकार है। कौमों की कहीं पर भी कोई बुनियाद नहीं है। कम्युनिज्म, कैथलिकिज्म, प्रोटेस्टेंटिज्म, सियासत और इखलाकपन, ये सब कुछ जवाल पजीरी का शिकार है। और अब ये लोग एक मसीहा के लिए दुआ कर रहे हैं। और यही बात है जो मैं कहना चाहता हूँ। और अगर वो आ जाता है तो क्या हम उसे कबूल करेंगे, या हम वही करेंगे जैसा उन्होंने किया था? क्या हम उसका इनकार करेंगे? क्या हम जानते हैं कि हमें हकीकत में किस चीज की जरूरत है? बाज़ औक़ात हम ऐसा चाहते हैं और हम अपनी ख्वाहिशात के लिए दुआ करते हैं, और बाज़ औक़ात हमारी ख्वाहिशात हमारी जरूरत नहीं होती। हमें जरूर महसूस करना चाहिए, क्योंकि हम नहीं समझ पाते कि हमारी जरूरत क्या है, और हम सोचते हैं हमें मालूम है, लेकिन खुदा ने वादा किया है वो हमारी जरूरतें पूरी करेगा और वो इनको जरूर पूरा करता है। अब क्या हो अगर मेरा 7 साल का छोटा बेटा जोसेफ मेरे साथ शिकार पर जाना चाहे और रोए और चिल्लाए और मेरी बंदूक को खुद लेना चाहे और उसमें गोलियां भरना चाहे और कहे, अब्बा जान मैं खरगोश को मार सकता हूँ। खैर, मैं उसे ऐसा नहीं करने दे सकता, अगरचे वो सोचता है ये उसकी जरूरत है, लेकिन मैं उस काम के मुतल्लक ज्यादा जानता हूँ जो वो करना चाहता है। अब क्या हो अगर आपका 1.5 साल का बच्चा आपको उस तरह से शेव करते देखे और वो उस तरह के लिए चिल्लाए और रोए? अगरचे उसने आपको उस तरह से शेव करते देख लिया है और वो बिल्कुल उसी काम को करना चाहता है, लेकिन तो भी आप जानते हैं कि उसके लिए बेहतरीन क्या है, और आप उसे वो नहीं करने देंगे, क्योंकि अगर आप एक बादशाह बाप हैं तो आप ऐसा काम नहीं करने देंगे, बल्कि आप उसको इस काम से रोकेंगे। और कई मर्तबा हम वो चीजें चाहते हैं जो कि हम समझते हैं कि हमारी जरूरत है, लेकिन खुदा की मर्जी के खिलाफ होती है, इसलिए फिर खुदा हमें वो चीज नहीं देता। और वो एक मसीहा के लिए दुआ कर रहे थे और वो एक मसीहा को चाहते थे, लेकिन ऐसी ही हालत थी जैसी कि इस वक्त है। वो लोग उसको उस तरीके से चाहते थे जो उनका अपना तरीका था, और खुदा ने उसे उस तरीके से भेजा जैसे वो उसे भेजना चाहता था, और उन्होंने उसे रद्द कर दिया। और लोग आज दोबारा भी ऐसा ही करेंगे, बिल्कुल वही काम, लोग दोबारा उसे रद्द कर देंगे, क्योंकि लोग अब भी वही काम कर रहे हैं जैसे उन्होंने तब किए थे। क्यों? एक ही वजह के लिए, क्योंकि वजह एक ही है। वो तब भी आया था और हम जानते हैं कि वो आया था, वो तब उनके पास आया था, लेकिन वो उस अंदाज से और उस तौर से नहीं आया था जिस तरह से लोग ख्वाहिश कर रहे थे कि वो आए। अगर आज खुदा हमारे पास कोई चीज भेजे जिसके लिए हम इल्तिजा कर रहे हैं, तो कलीसिया भी, यानी जब खुदा उस चीज को भेजता है तो हम उसे नहीं चाहते, क्योंकि वो हमारी तंजीमी जायके के साथ मिलाप नहीं करती, और बाज़ औक़ात वो हमारी थियोलॉजिकल सोच के साथ भी मिलाप नहीं करती। लेकिन ये बिल्कुल वही चीज है जिसके लिए हम दुआ कर रहे थे, बिल्कुल वही इल्तिजा जो हमने खुदा से मांगी थी, और खुदा ने हमें वो बख्श दी है, लेकिन हम उसका इनकार कर देते हैं। हम खुदा से क्रिसमस का तोहफा चाहते हैं, लेकिन हम उस तोहफे को उस तौर से चाहते हैं जिस तौर से हम चाहते हैं, लेकिन खुदा हमें उस तौर से देता है जिस तौर से वो चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि कौम की क्या जरूरत है, वो जानता है कलीसिया को किस चीज की जरूरत है, लेकिन हम सोचते हैं कि हम जानते हैं, लेकिन दर हकीकत वो जानता है कि किस चीज की जरूरत है। अब जैसे कि मैंने चंद मिनट पहले कहा था कि हम इस क्रिसमस पर दोबारा इस बात को पाते हैं कि दुनिया जवाल पजीरी का शिकार है। आए कुछ चीजों के नाम लेते हैं जो मैंने यहाँ तहरीर कर रखी है।
Never was in a lower state, hardly. I got an article here.
दुनिया की बद इखलाकी पर गौर करें, जो बा मुश्किल शायद पहले इतनी निचली सतह पर थी। मेरे पास यहाँ एक तहरीर मौजूद है जिसकी मैं चंद लाइनें पढ़ना पसंद करूँगा। ये एक अखबार है और ये अफ्रीका का नामवर अखबार है और इसमें लिखा है शर्मो हया की मौत। जनाना शर्मो हया, यानी वो खूबसूरत खासियत जो खुदा ने इंसानी खानदान में रखी थी कि बनी नौ इंसान उस इखलाकी खासियत की हिफाजत करे, वो शर्मो हया आज मर रही है। जैसे कि मासूम लड़कियों और औरतों ने फैशन की देवियों के सामने घुटने टेक दिए हैं और बेहयाई की इंतहाई आला गैर यकीनी जदीद स्टाइल्स करते हुए जरा भी नहीं झिझकती। मेरे पास यहाँ इसके मुतालिक पूरा सफा मौजूद है। बहरहाल, मैंने कभी ऐसी बात नहीं सुनी थी। और जिनसी कशिश को मसीहों और गैर मसीहों दोनों के दरमियान जायज तसव्वुर किया जाता है। मैं और हमारे ये प्यारे भाई ऑर्गन ब्राइट आज सुबह सवेरे आते हुए रास्ते में इसी मौजू पर बात कर रहे थे कि किसी ऐसी लड़की का मिल जाना जिसका चेहरा शर्मो हया से सुर्ख हो जाए इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि वो पहले ही इतने सारे गंदे लतीफे और गलाजत सुन चुकी हैं और आप कुछ ऐसा बयान नहीं कर सकते जिससे उनका चेहरा शर्मो हया से सुर्ख हो जाए। चंद साल पहले जब मैं एक लड़का था तो एक जरा सी बात पर उनके चेहरे सुर्ख हो जाते थे। एक ऐसी ही बात स्कूल में हुई थी कि एक दूसरी छोटी बच्ची का नीचे पहनने वाला स्कर्ट स्कूल में नजर आ रहा था और मैं वहाँ खड़ा बात कर रहा था और जो ही उस लड़की की नज़र उस पर पड़ी, उसने उसे देखा कि वो नजर आ रहा है तो मुझसे दूर चली गई और उसका चेहरा सुर्ख हो गया। वो एक 16 साल लड़की थी। क्यों? ये क्या है? ये वही खुदा की बख्शी हुई खासियत है जो हमारे इखलाकी मेयार की मुहाफिज है। फिर आप क्यों हैरान होते हैं जब मैं इस गलाजत के मुतालिक चीखता हूँ जो कि आज हम देख रहे हैं? लोग अपने आप को मसीही कहते हैं। जरा औरतों की अदाएं और लबास को देखें। आदमी सिगरेट पी रहे हैं और इसी तरह के दूसरे काम कर रहे हैं और खादम हजरात मंबर से समझौते कर रहे हैं और वो आपको मंबर पर नहीं आने देंगे कि आप इन चीजों के खिलाफ मुनादी करें। हैरानगी नहीं है कि हम सब कुछ वही कर रहे हैं जो उन्होंने 2000 साल पहले किया था। याद रखें, जब इसराइली लोग ऐसा कर रहे थे तो खुदा ने यशायाह को उठा खड़ा किया। जब वो वक्त गुजर गया और उन्होंने दोबारा वही काम करने शुरू कर दिए तो खुदा ने यर्मिया को उठा खड़ा किया और इसी तरह आगे भी नबियों को खड़ा करता रहा। और खुदा ने इन कामों को करते हुए अपना तरीका नहीं बदला, क्योंकि वो अजली खुदा है। वो अपना तरीका नहीं बदल सकता। उसका पहला काम करने का तरीका ही हमेशा कायम रहता है। आज हमें जिस चीज की जरूरत है वो मसीह का मसीहाना मसाशुदा पैगाम है। लेकिन क्या लोग उसे कबूल करेंगे? लोग उसके लिए दुआ कर रहे हैं, लेकिन क्या वो उसे कबूल करेंगे? नहीं जनाब, वो उसे कबूल नहीं करेंगे, बल्कि वो उसे मसलूब करेंगे उसी तरह जिस तरह उन्होंने पहले किया था, क्योंकि इंसान का दिल धोखा खा रहा है। इखलाकियात कौमी मसला बन चुका है। दुनिया कहाँ कभी इखलाकी मेयार की जवाल पजीरी में इतनी ज्यादा गिरी थी जितनी के आज है। ऐसी चाल चलना किसने तरतीब दी? हम अमरीकियों ने। जब मैं सैन एंजेलो रोम में था, इस बात को बहुत ज्यादा अरसा नहीं हुआ, सैन एंजेलो कब्रस्तान वालों की तरफ से वहाँ पर अमरीकी औरतों के लिए एक तख्ती लिखी गई थी कि ब्राय मेहरबानी कब्रस्तान में दाखिल होने से पहले मुर्दों के एहतराम में कपड़े पहने। एक मजहबी कौम को कैसा होना चाहिए? ऐसा जैसे कि खुदा का खौफ रखने वाली हो। हम दूसरे लोगों के माजी के तजर्बों पर रह रहे हैं। हम अपने अबाऊ अजदाद के तजर्बों पर जो मसीह थे रह रहे हैं। कौमी तजादुम, दुनिया में कभी भी इससे बढ़कर ऐसा वक्त नहीं रहा जितना कि अब इस दुनिया में एक कौम की बर्बादी और जवाल पजीरी का वक्त है। क्यों आप एडिटोरियल और खबरें और मुफस्सरीन और पेशनगोई करने वालों और इसी तरह की ऐसी चीजों को देखते हैं, बमों के मुतालिक बात करते हैं और कहते हैं कि वो क्या कर सकते हैं? और कोई एक छोटी सी कौम भी सारी दुनिया को तबाह कर सकती है, और कौमों के दरमियान सुकून नहीं है। आप इस तरीके से अमनो अमान नहीं ला सकते। अमनो अमान और भाईचारा सियासत के वसीले नहीं आ सकता, बल्कि मसीह के वसीले आ सकता है, और लोग मसीह को कबूल करना नहीं चाहते। मैं यहाँ कैसे चंद चीजों को बयान करूँ? हमारी अपनी सियासत में बिगाड़ है। क्यों सियासत इस कदर बिगड़ी हुई है? अगली रात आपने नशरियात में सुना होगा, मेरी सोच है या फिर मेरा ख्याल है कि वो प्रोग्राम घंटे या दो घंटे का था जो यहाँ लुइसविल से पूरे मुल्क में नशर किया गया, और वो लोगों की राय लेते हैं और अक्सर वो कुछ मुख्तलिफ मौजूदात पर बोलते हैं। इस बार उन्होंने मिस्टर निक्सन पर नुक्ताचीनी की। उसने सियासत से किनारा कशी कर ली है क्योंकि वो एक बार सियासी मुकाबला लॉस एंजलिस में या शायद कैलिफोर्निया में हार गया था, और सवाल किया क्या अब वो कभी सियासत में वापिस आएगा। और जब दो या तीन घंटे के बाद ये प्रोग्राम नशर हुआ तो मैंने भाई चार्ल्स के घर से आते हुए भाई वुड्स के साथ इसे रेडियो पर सुना, और मालूम हुआ कि निक्सन हमारे साथ मशरकी हिस्से में जहां तक खबर नशर हुई, यानी मिसिसिपी से पेंसिल्वेनिया तक, लोग इन बातों का इजहार बयान कर रहे थे। उसने मिस्टर कनेडी को एक मुकाबले में चार वोटों के तनासुब से शिकस्त दी थी। लेकिन तब एक शख्स खड़ा हुआ और कहा, अगर आप मशीनों के जरिए धांधली ना करते तो वो सदर बन चुका होता। ये आपकी अखलाकियात है। दोनों जानबी सियासत धोखा दही और गली सड़ी है। मैं उसे इल्जाम नहीं देता, शायद मैं भी अपने हाथ उठा लेता और उन बुरी चीजों को होने देता, क्योंकि उसे किसी भी तरह दुनिया के साथ चलना है। लेकिन आप अपने हाथ मसीह की तरफ उठाएं और कहें, खुदावंत मैं हाजिर हूँ। कौमी तसादुम, और अब जहाँ आप तसव्वुर करते हैं कि वो इकट्ठे होने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो इंतहाई बढ़ चुके हैं, और यही हाल 2000 साल पहले वाले वक्त में था जब दुनिया जवाल पजीरी का शिकार थी, और आज बिल्कुल उसी तरह के हालात के तहत ये दुनिया जवाल पजीरी का शिकार है। और फिर कलीसिया की बिगड़ी हुई सूरत हाल है। ओ मेरे खुदाया, मजहबी आलूदगी हो, ये बात देखने में मजाक़ा खेज लगती है कि जमीन पर 2000 साल से बाइबल और रूल कुछ होने के बावजूद आज भी ये दुनिया उतनी ही बुरी तरह जवाल पजीरी का शिकार है जितनी के ये 2000 साल पहले थी, और ये मजहबी बिगड़ी हुई सूरत हाल है। सियासत मजहब में दाखिल हो चुकी है और मजहब सियासत में दाखिल हो चुका है, और इस हालत को देखते हुए ये एक खतरनाक बात है, और मैं जानता हूं कि ये ऐसा ही है। आप कहते हैं भाई ब्रहनम, आपको हमें यहाँ क्रिसमस के मौका पर ऐसी तस्वीर सजाकर नहीं दिखानी चाहिए, मगर आपको सच्चाई को जानना चाहिए। यही है जो आपको जानना चाहिए। अब कैसे खुदा आपको बरकत देगा? लेकिन वो बरकत मखसूस हालात के तहत हासिल की जा सकती है, और उन मखसूस मांगों को पूरा करना आपके लिए जरूरी है, और अगर आप उन मांगों को पूरा नहीं करते तो फिर वो बरकत और खुदा के वादे आपके लिए बेअसर हैं। खुदा ने इसराइल से वादा किया था कि जब तक वो उन ईदों और कामों को सच्चाई और दयानतदारी से मानते रहेंगे, खुदा अपने वादे पूरे करता रहेगा, और खुदा ने उन्हें पूरा किया। लेकिन जब उन लोगों ने उन बातों को एक खानदानी रवायत के तौर पर मानना शुरू कर दिया, तो तब खुदा ने मजीद उन्हें पूरा करने से इनकार कर दिया, और खुदा ने कहा वो उसके नजदीक बदबू की मानिंद है। बस आज भी बिल्कुल वैसी ही हालत है। इसलिए हमें वापस उस चीज की सच्चाई को हासिल करने के लिए जाना चाहिए। कलीसियाओं में सियासी तसादुम। आज हम मसीहत की तकरीबन 900 मुख्तलिफ तंजीमों के साथ खड़े हैं जो कि एक दूसरे के साथ झगड़ रहे हैं। खैर, ये सब कुछ जब मसीह आया था तो इतनी ही बुरी हालत थी। उस वक्त तकरीबन 4 या 5 ग्रोह थे, फरीसी और सदूकी और मजीद इसी तरह के कुछ और ग्रोह थे, लेकिन अब हमारे पास तकरीबन 900 और कुछ ग्रोह हैं। क्यों? आज इस क्रिसमस पर ये कलीसिया अपनी बदतरीन हालत में है बनिस्बत उस हालत के जो 1900 साल पहले उस क्रिसमस पर थी। अब ये उस वक्त से भी बदतरीन हालत है। और ये तंजीमी तसादुम है। दोस्तों, इस सब का सबब क्या है? सबब यह है कि रूल को उसकी जगह सियासत ने ले ली है। रूल कुछ चाहता है कि वो कलामे खुदा को ले और कलीसिया की फतायाबी तक उसकी रहनुमाई करे, लेकिन तालीमी प्रोग्रामों और सियासी प्रोग्रामों और अकीदों और तंजीमों ने कलीसिया की रहनुमाई 900 मुख्तलिफ सिमतों में कर दी है, और कलीसिया में अब कुछ नहीं। अब जिसको हम कलीसिया कह रहे हैं, मेरा मतलब हकीकी कलीसिया से नहीं, वो अब भी आग से भरी हुई है। हो जी हाँ, वो अब भी बिल्कुल उसी तरह कायम है। लेकिन जिसे दुनिया कलीसिया कहती है वो ऐसी लगती है जैसे एक ढांचा लेटा हुआ हो जिसने दुनिया को इकट्ठा कर रखा है और जो उसे बुनती है। उन्हें आज भी हम इखलाकियात और दुनिया की चीजें कहते हैं जो कि अलूदा हैं और इसकी नसें सड़ चुकी हैं और वो खुद गर्जी की दीमक है और इस दीमक ने इसकी बुनियाद को अंदर ही से खा लिया है और ये यकीनन सच है। और अब ये बिल्कुल उसी हालत में है जैसा कि दूसरा तिमोथियुस 3 में कहा गया है, वो डीट घुमंडी और इसी तरह खुदा की निस्बत ऐशो इशरत को ज्यादा दोष रखने वाले होंगे। फिर अगर हम सियासत की हालत देखें जो कि आज कुमो में है, तो फिर इसी तरह हम कलीसिया को उनके अपने बिगाड़ के साथ तंजीमों में देखते हैं और फिर भी हम चाहते हैं कि खुदा इन चीजों के बावजूद आए, इन चीजों के साथ हम चाहते हैं कि वो आए, तो खुदा हमारे पास इस गलाजत में नहीं आएगा। वो ऐसा हरगिज नहीं करेगा। वो मुकद्दस है और वो जानता है कि क्या बेहतरीन है। अगर हम पुकारते हैं तो वो हमें जवाब देता है और जब वो जवाब देता है तो हम उसका इनकार कर देते हैं, क्योंकि हम उसी तरीके से चाहते हैं जो कि हमें पसंद होता है और बिल्कुल उसी चीज के जरिए हम खुदा को हासिल करने की कोशिश करते हैं और खुद को बचाने की कोशिश करते हैं जो कि पहले ही परखी जा चुकी होती है। कलीसिया, मेहरबानी से इस बात को सुन। बिल्कुल वही चीज जिसको दीनदारी ने हमारे सामने साबित कर दिया है और उसी चीज ने हमें बदनवानी में उलझा दिया है, लेकिन हम फिर भी उसी निजाम की तरफ देख रहे हैं। वही हमें बचाएगा। कलाम के पास वापिस आए और यही वो बात है जो मसीहा कहेगा। लेकिन अब भी हम सियासत की तरफ देखते रहते हैं। हम दुनिया के लिए कोशिश करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि इसे सियासत के जरिए बचा लें। और कलीसिया यानी दुनियावी कलीसिया यही चाहती है कि अपनी दुनिया को सियासत के जरिए बचा ले। और ये सिलसिला कई जमानों से दुनिया से टकराता आ रहा है, हत्ता के मूसा के जमाने से चलता आ रहा है। बिल्कुल एक ही जैसी चीज यानी सियासत हुक्मरानी करने की कोशिश कर रही है और यही खराबी है। इंसान किसी तरीके से भी ये नहीं कर सकता। इंसान के अंदर कुछ भलाई नहीं जिसके साथ वो आगाज कर सके। यही सबब है कि इसे मरना पड़ता है। और जब हम इस दुनिया को इस हालत में देखते हैं तो महसूस होता है कि दुनिया हर जमाने में जवाल पजीरी का शिकार होती रही है। और जब दुनिया इस हालत में दाखिल होती है तो लोग दुआ करते हैं। ओ, हत्ता के सदर भी इसके लिए ऐलान करता है। वो क्या था, 10 मिनट या 1 घंटा या कुछ देर के लिए दुआ की जाए, इससे कुछ भलाई नहीं होगी। हमें जिस चीज की जरूरत है वो ऐसी दुआ नहीं है, बल्कि हमें वापस मुड़कर तौबा करने की जरूरत है और उससे दूर होने बल्कि उसे बिल्कुल तर्क करने की जरूरत है। खुदा के पास वापस आ जाएं। मैं पसंद करूंगा कि मेरी तसल्ली की तामीर खुदा के कलाम और रूल कुछ के बपतिस्मे और मसीह की हजूरी में हो, बजाय उस तमाम हफाजत के जो सियासत या कलीसियाएं आपको कभी दे पाएंगी। यकीनन, क्योंकि मैं जानता हूं वो कायम रहेगा। क्या हम एक कौम नहीं कि हम बेहतर हो जाएं? अगरचे हम खुदा की कौम है और खुदा की मलकियत है तो खुदा हमें जवाब देता और तसल्ली देता है, लेकिन लोग उसे कबूल करना नहीं चाहते। लेकिन हर मर्तबा जब कौम इस किस्म के हालात में दाखिल होती है तो खुदा जवाब देता है, बल्कि जब भी दुनिया इस हालत में आती है तो जवाल पजीरी का शिकार होती है, तो फिर खुदा हमेशा उनकी दुआओं का जवाब देता है और उनके पास किसी नबी को भेजता है, किसी अजीम नबी को भेजता है जो कि उन्हें हला के रख दे। लेकिन वो उसकी नहीं सुनते। वो क्या करते हैं, वो उसे कब्र में डाल देते हैं। यीशु ने कहा, तुम भी उनमें से हो, क्या तुम्हारे बाप दादा ने नबियों को कब्रों में नहीं डाला और सफेदी फेर दी और फिर उन पर सफेदी फेर कर उनके मकबरे बना दिए? तुम भी उनमें से एक हो जिन्होंने उन्हें वहाँ डाला। ये सच है। तुम भी उनमें से एक हो। वो मदद के लिए चला उठे और खुदा ने उनके लिए कुम्मक भेजी और उन्होंने उसे रद्द कर दिया, तो फिर क्या किया जाए, खुदा को या फिर लोगों को इल्जाम दिया जाए? यकीनन इल्जाम लोगों को देना चाहिए।
That world, as I said, has fallen apart.
जैसा कि मैंने बताया कि जब यीशु मसीह पैदा हुआ तो वो दुनिया भी जवाल पजीरी का शिकार थी। सियासत ने उसे काबू किया हुआ था और उन दिनों की सियासत बिगड़ी हुई थी और कौमी कलीसिया भी बिगड़ी हुई थी और रोमी और यूनानी एक मसाशुदा मसीहा का इंतजार कर रहे थे। यूनान और रोम जो कि उस वक्त दुनिया के बेहतरीन खिते थे, और वो दोनों ही एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे थे। बस वो किसी मसा शुदा मसीहा के मुंतजिर थे कि वो जाहिर हो, और यहूदी लोग भी चाहते थे कि एक मसीहा जाहिर हो, और रोमी लोग किसी अजीम सियासतदान के मुंतजिर थे वो रोम में उठ खड़ा हो, जो उन्हें बताए कि कोई काम कैसे करना है, ताकि वो यूनान पर कब्जा कर लें और रोम दुनिया पर हुक्मरानी करे। यूनान चाहता था कि कोई अजीम सियासतदान उठ खड़ा हो, जो मसीहशुदा और सियासतदान हो, कोई ऐसा मसीहा जो कहे कि हम रोमियों और यहूदियों पर और बाकी सब पर कब्जा कर लेंगे। गौर करें, यही सब कुछ था जिसके वो मुंतजिर थे। क्या ये आज की तस्वीर नहीं? फिर मुझे नहीं मालूम और ये क्या है। ठीक है, सियासत एक मसीहशुदा मसीहा चाहती थी, और यहूदी भी एक मसीहा के मुंतजिर थे, और वो ऐसा नहीं चाहते थे जैसा कि उनके पास आया था, बल्कि वो ऐसा जनरल चाहते थे जो आता और रोम और यूनान को जमीन से उनके लिए पांव तले रोनता। वो दरअसल इस किस्म का मसीहा चाहते थे, और वो इसी किस्म के मसीहा के लिए दुआ कर रहे थे। रोमियो ने कहा, हमारे लिए भी एक को भेज दे। उन्होंने कहा, आओ हम किसी मसीहशुदा शख्स को वोट दें, ऐसे शख्स को जो समझदार हो और वो सियासत का जादूगर हो, उसे मालूम हो कि किस हिकमत अमली से हम यूनान और बाकी तमाम दुनिया पर कब्जा कर लें। और बाकी दुनिया भी चला रही थी कि हमें भी कोई ऐसा मिल जाए जो कि जहीन दिमाग के साथ मसीहशुदा हो, जो कि इस बात को जान पाए कि बाकी दुनिया को कैसे काबू करना है। अब क्या ये आज की दुनिया की तस्वीर नहीं है? फिर मैं नहीं जानता कि ये क्या है। और कलीसिया भी चला रही है, हमारे लिए भी कोई जनरल भेज दे जो कि हमारे पास आए और हम में से हर एक को मसल्ला करे और जानता हो तलवार कैसे चलानी है, और हमें वो हिकमत अमली बताए ताकि हम रोम यूनान और बाकी सब दुनिया को पांव तले रोंद डालें। यही वो तरीका है जिससे लोग हुक्मरानी करना चाहते हैं, और यही वो ताकत है, और बिल्कुल यही चीज आज हम कलीसियाओं में देखते हैं। आप मेथोडिस्ट वाले एक मसीहा के मुंतजिर हैं। किस किस्म के मसीहा के मुंतजिर हैं? ना कि उसके जिसे खुदा आपके पास भेजेगा। और आप बैप्टिस्ट वाले, आप भी एक मसीहा के मुंतजिर हैं। आप असेंबलीज ऑफ गॉड वाले, आप भी एक मसीहा के मुंतजिर हैं। आप वदानियत वाले, आप भी एक मसीहा के मुंतजिर हैं, और ये सच है। लेकिन आप किसके मुंतजिर हैं? बिल्कुल उसी चीज के जिसकी सियासी दुनिया मुंतजिर है, किसी अजीम हिसाबी किताबी शख्स के, जो अजीम आलम हो, जिसके पास डीडी पीएचडी की डिग्री हो, और वो आपकी कलीसिया में आए, जो इन दूसरी तंजीमों को खत्म कर दे और उन्हें आपकी तंजीम में शामिल कर दे। यानी कोई ऐसा शख्स जो मरीद बनाने में बड़ा माहिर हो, जो सब कुछ काबू कर सके। आप यहाँ क्रिसमस के इस वक्त पर मसीहा के लिए चला रहे हैं। जी हाँ, उन्हें क्या मिला? वो भी यही चाहते थे, वो उस दुनिया पर काबू पाना चाहते थे, और आज की दुनिया भी हुक्मरानी चाहती है, और कलीसिया भी हर तंजीम पर हुक्मरानी चाहती है। लेकिन देखें कि खुदा ने लोगों को क्या दिया। जबकि लोग एक चलाक जंगी शख्स चाहते थे, लोग एक अजीम साइंसदान चाहते थे, लेकिन खुदा ने लोगों को एक बड़ा दिया, एक बच्चा दिया। कैसा बड़ा फर्क है! क्या आप सोच सकते हैं कि लोगों ने उस रोते हुए बच्चे को कबूल किया होगा? लेकिन दरअसल यही लोगों की जरूरत थी, और खुदा आपको भी आपकी जरूरत के मुताबिक देना चाहता है। और उन्हें एक बच्चा मिला, उन्हें एक बच्चा मिला, जबकि वो एक जनरल चाहते थे, लेकिन उन्हें एक हलीम और फरोतन बच्चा मिला, क्योंकि खुदा उनकी जरूरत से वाकिफ था। उसे कभी भी कौमी या एक कलीसिया सियासतदान बनकर नहीं आना था, और अगर आज भी मसीहा आएगा तो वो कोई कौमी या कलीसिया सियासतदान नहीं होगा। और अगर हम एक ऐसे शख्स के लिए दुआ कर रहे हैं तो खुदा हमें रहाई बख्शे, लेकिन जैसे खुदा उसे भेजता है, हमें उसे उसी तरीके से कबूल करना होगा, जबकि उन्होंने ऐसा नहीं किया था और उसको उस तरीके से कबूल नहीं किया था। और आज कलीसिया भी फरियाद कर रही है, ए आसमानी बाप, क्या तू मेहरबानी से यस्सु को हमारे पास भेज देगा? क्या तू मेहरबानी से ऐसा करेगा? और जब रूहुल कुछ जुम्बश करना शुरू करता है तो हो, ये बात तो हम इस बात को नहीं चाहते, समझे? खैर, आप भी कहेंगे, हो हम नहीं चाहेंगे कि ये शख्स हम पर हुक्मरानी करे, हो मैं उसे सुनना नहीं चाहता, हरगिज नहीं, मेरे खुदाया, मैं उसे कबूल नहीं कर सकता, मेरी तंजीम उस पर यकीन नहीं करेगी। तो फिर आप मसीहा को नहीं चाहते हैं, आप उस मसा को नहीं चाहते हैं। अगर खुदा एक मसीहा को भेजता है तो वो बिल्कुल लफ्ज ब लफ्ज बाइबल की तरह होगा, यानी कि बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वो पहली मर्तबा था। दुनिया शोर करती है जब हम सियासतदानों और हर एक दूसरी चीज को देखते हैं कि कलीसिया की असल जिंदगी पर उंगली उठाते हैं तो हम चिल्ला उठते हैं, जबकि खुदा ने उसे हमारे पास भेजा है, लेकिन हम उसका इनकार कर देते हैं। ये दुरुस्त है, हम उसे कबूल नहीं करते, हरगिज नहीं। और अगर वो हमारे तंजीमी अकीदे के साथ मुत्तफिक नहीं होता तो हम उसे कबूल नहीं करते। देखें, हो क्या आप समझ नहीं पा रहे कि हकीकी क्रिसमस क्या है? लोग उसे नहीं चाहते, लोग खुदा के तरीके को नहीं चाहते जिस तरीके से वो उसे भेजता है। लोग किसी चीज के मुंतजिर हैं, लेकिन उसे कबूल करना नहीं चाहते। अब उन दिनों में जब वो फरियाद कर रहे थे तो खुदा ने उन्हें जवाब दिया, लेकिन ना कि एक शातर मिलिट्री शख्स की सूरत में और ना ही अजीम जनरल की सूरत में जो हथियार और कुव्वत से मुलब्बस हो और माफूकुल फितरत तलवार या नेजे से सब कुछ वापस ले लेता और रोम और यूनान और बाकी सबको मार डालता और उन्हें समुन्दर में गर्क कर देता। उसने उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं दिया था, हालांकि उसने कहा था उसने एक दफा मूसा के वक्त में ऐसा किया था, लेकिन तब उन्हें उस चीज की जरूरत थी। लेकिन इसने उन्हें एक मसीहा दिया और वो उसे नहीं चाहते थे। उन्होंने सोचा था कि वो वहाँ पर महफूज हैं, समझे? और आज कलीसियों का भी यही हाल है। इस क्रिसमस के मौका पर हर जगह क्रिसमस की सजावट, सेंटा क्लॉज की रोशनियाँ और गैर मसीही तौर तरीकों ने और दूसरी चीजों ने दोनों कैथलिक और प्रोटेस्टेंट कलीसियों को दबोच रखा है और इतना खराब कर दिया है जितना कि ये हो सकती है। और खुदा ने इनके लिए निजात दहिंदा भेजा है, और वो क्या है? वापिस कलाम की तरफ लौट आओ। और रूहुल कुछ खुदा का मसा शुदा मसीहा है जो उसकी कलीसिया को मसा करे और उसे वापिस कलाम में लाए। क्या आप सोचते हैं कि लोग इसे कबूल करेंगे? नहीं जनाब, वो इसे कबूल नहीं करेंगे, वो इसे रद्द कर देंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे उन्होंने पहले किया था। उसने एक निजात दहिंदा भेजा, लेकिन उसने किसके लिए निजात दहिंदा भेजा? वो चाहता है कि यहाँ कुछ आश्कारा किया जाए जो कि आपकी मदद कर सके, क्योंकि कुछ पहले से मुकर्रर शुदा लोग हैं जो उसे कबूल करेंगे। जब वो पहली मर्तबा आया तो उस वक्त भी कुछ थे, अब जब वो दूसरी मर्तबा आता है तो इस वक्त भी कुछ होंगे। कोई मसला नहीं कि दुनियावी कलीसिया क्या सोचती है, कोई तो होगा, वो उसे बेसबब नहीं बेचता। कोई तो है जो उसे कबूल करेगा, कोई तो है जो उसे पहचान लेगा, बस ये सब कुछ है। लेकिन सियासी दुनिया या सियासी कलीसिया या ये जो कुछ भी है उसे नहीं पहचान पाएगी। लेकिन जब आप फरियाद करते हैं तो खुदा उसे बेचता है, तो फिर कोई तो है जो उसे कबूल करेगा, ये सच है। उसने मसीहा इसलिए नहीं भेजा कि वो कौमों को रौंद डाले, जैसा कि आज हम सोचते हैं कि हमें उस शख्स की जरूरत है जो उठ खड़ा हो। अमेरिका एक ऐसा शख्स चाहता है जो रूस को नेस्तो नबूद कर दे, और रूस ऐसा शख्स चाहता है जो बाकी सारी दुनिया को नेस्तो नबूद करके उन्हें चांद पर ले जाए। लेकिन खुदा हमारे लिए सुलह भेजता है, खुदा हमारे लिए उम्मीद भेजता है, और हम उसे नहीं चाहते। वो कहते हैं हम अमन कायम कर सकते हैं, कौमें अमन चाहती हैं, यकीनन ऐसा ही है। और वो सोचते हैं कि जब अक्वामे मुत्तहिदा इकट्ठी होती है तो वो अमन हासिल कर सकती है, लेकिन अक्वामे मुत्तहिदा इस बात से नहायत दूर है। आज जो इस दुनिया का अमन है वो एक रबड़ के गुब्बारे की मानिंद है जो हवा में तैर रहा है, जिसे हवा का एक झोंका जिधर चाहता है ले जाता है। यकीनन ऐसा ही है, कोई जरा सी सियासी तब्दीली उसे एक तरफ से दूसरी तरफ गंवा देती है। अक्वामे मुत्तहिदा में दुआ नहीं होती, मुबादा इस बात से शायद दूसरे नामजद लोगों के जज्बात को ठेस लगे जो खुदा पर ईमान नहीं रखते। ये इस्तकाम है, क्या ऐसा नहीं है? क्या ये किसी तौर पर बस खाली बातें नहीं है? एक और बात, एक गुब्बारा किसी भी चीज से फूट जाएगा, आमीन। और इस दुनिया का अक्वामे मुत्तहिदा के वसीले अमन, जिसे वो अमन कहते हैं, और मजीद जो कुछ भी है वो सब फट जाएगा। ये दुरुस्त है, इसमें कोई अमन नहीं है, और इंसान की हासिल करदा कामयाबियों से अमन कायम नहीं किया जा सकता। हर किस अमन नहीं हो सकता, क्योंकि हवा के हर झोंके के साथ ये कहीं भी जा सकता है। कलीसिया भी ऐसी ही किसी चीज को चाहती है, वो चाहते हैं उनका अमन के मुतल्लिक ख्याल है, और वो भी तालीम के हर झोंके के साथ हिल जाते हैं, और फिर हर एक चीज इधर उधर हो जाती है। जब उनमें से एक कहता है ओ मेरा ख्याल है कि हम सबको फला फला काम करने की जरूरत है, आपकी क्या सोच है? आपके पास कोई सोच है ही नहीं जो आए, और खुदा अपनी सोचों को जाहिर कर चुका है। आपके पास कोई हक नहीं के सोचें, इसलिए जो मसीह की सोच है वही आप में होनी चाहिए। और उसका मकसद था, और उसने खुदा की मर्जी को पूरा करना था। उसने कहा था अगर मैं खुदा के काम नहीं करता तो मेरा यकीन मत करो, समझे? आपके पास कोई सोच नहीं है जो आए, वही एक है जो सोचने का काम करता है। उसकी सोच को अपने अंदर आने दें और आप बिल्कुल वही सोचें, क्योंकि वही उसका कलाम है। आप कैसे उससे मुख्तलिफ सोच सकते हैं? उसने अपनी सोच हम पर जाहिर कर दी है, लेकिन हम फिर भी अपनी सोच पर काम करना चाहते हैं, जैसे कि हम कहते हैं मेरा ख्याल है कि उन्हें ऐसा करना चाहिए। गुज़िश्ता रोज मैं एक प्यारी और बूढ़ी सी औरत के साथ सफर कर रहा था, और एक बीमार बच्चे के लिए दुआ करने के लिए जा रहा था। और जब हम उस बीमार बच्चे के पास पहुँचे तो उसके घर वाले नहीं चाहते थे कि उस बीमार बच्चे के लिए दुआ की जाए। ये बस उस बंदे का अपना नजरिया था। किसी भी तरह सड़क पर जाते हुए उस खातून ने कहा, वो एक बूढ़ी औरत थी और तकरीबन 81 साल की थी, जाजब नजर, बहुत जहीन औरत और बहुत ही अच्छी थी। लेकिन उसने कहा, मेरी सोच है कि ऐसा होना चाहिए, गौर करें, मेरी सोच कि तमाम कलीसियाओं को इकट्ठा होना चाहिए और एक हो जाना चाहिए। बिल्कुल यही बात है जो शैतान भी चाहता है, लेकिन खुदा अपनी कलीसिया को दुनिया की चीजों से अलग करता है। वो उसे सियासत से अलग देखना चाहता है, समझे? और क्या हो अगर खुदा दुनिया में एक मसीहा को भेजे? और बस वो खातून भी सिर्फ सारी दुनिया की सोच ही को सोच रही थी। कलीसिया इतिहाद क्या है? क्या ये वही यकसा सोच नहीं है? कलीसियाओं की आलमी काउंसिल क्या है? सिर्फ यकसा मकसद को हासिल करने की वही सोच नहीं है? क्या ये दुरुस्त है? खैर, तब उस औरत, उसने सिर्फ इस दुनिया की सोच की अक्कासी की थी। लेकिन यहाँ बाइबल में खुदा की सोच है और हम उससे मुख्तलिफ होकर कुछ भलाई हासिल नहीं कर सकते, और खुदा ने अपनी उसी सोच को हम पर आश्कारा कर दिया है। और हम देखते हैं कि दुनिया जवाल पजीरी का शिकार है और हम किसी चीज के लिए फरियाद कर रहे हैं, तो आए उसे कबूल करें। अब अगर उसे कबूल किया जाता है और कोशिश की जाती है कि वो रहनुमाई करे, हमें सियासत के साथ बाहर निकाले, तो यही वो चीज है जिसने हमें खराब कर रखा है। मेरे पास यहाँ कुछ थोड़ी सी बातें हैं जो क्रिश्चियन बिजनेसमैन के रहनुमाओं के लिए हैं, क्योंकि ये एक आला लोगों का ग्रोह है, और अगर ये गलत राह पर चलना शुरू कर देते हैं और तंजीम बन जाते हैं तो ये भी बाकी सब लोगों की तरह पीस डाले जाएंगे। और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए और इस शख्स के लिए दुआ करें। मुझे खुदावन से इसके मुतल्लिक रोया मिली है और फिर मुझे जाना ही है, समझे? और अगर ये बाज नहीं आते और ऐसे ही चलते जाते हैं तो आने वाले वक्त में ये एक तंजीम बन जाएंगे, और अगर ऐसा होता है तो खुदा इनसे दूर हो जाएगा। ये दुरुस्त है? गौर करें, जब तक इंसान अपने ख्यालात को आजमाने की कोशिश करते रहते हैं तब तक वो इकट्ठे नहीं हो सकते। यही वजह है कि खुदा किसी भी शख्स को इनफरादी तौर पर लेता है, समझे? खुदा किसी तंजीम को नहीं लेता और ना ही कभी उसने किसी तंजीम को इस्तेमाल किया है। तारीख गवाह है कि उसने किसी भी जगह ऐसा नहीं किया। वो इनफरादी तौर पर किसी भी एक शख्स को लेता है, और ये सच है। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि लोगों के ग्रुप को लें और इकट्ठा करें, और फिर कहते हैं ये इस तरीके से है और उस तरीके से है, और मजीद इसी तरीके से कहते रहते हैं। और पहली चीज आप जानते हैं, अजीम, काबिल, जहीन, दिमाग वाले, ये सुरमा जिन्हें शैतान ने यहाँ भेजा है, वो आते और कहते हैं, अच्छा ये काम इस तरह होना चाहिए, मैं इसे आपको साबित करके दिखा सकता हूँ। कोई बात नहीं, वो क्या कुछ साबित कर सकते हैं? अगर वो चीज कलाम के मुतजाद है तो उससे दूर रहें। ये दुरुस्त बात है। वो तालीम के हर जोंके के साथ दूर हो जाते हैं, और कहीं भी उसे फुलाया जा सकता है और फिर उसकी हवा को निकाला जा सकता है। ये हकीकत है। और आज रूस भी एक मसाशुदा मसीहा का मुंतजिर है। वो किसके मुंतजिर हैं? क्या हो अगर खुदा उनके लिए एक मसीहा को भेज दे, बिल्कुल एक बरे की तरह, जैसे उसने 1900 साल पहले किया था? क्या वो उस पर काबू पालेंगे जैसे हेरोदिस ने किया था? वो उस पर काबू पाने की अपनी बेहतरीन कोशिश करेंगे। रूस का मसीहा के बारे में क्या नजरिया है? वो साइंस चाहते हैं, वो मसाशुदा साइंस और एक साइंसदान चाहते हैं, एक शातर नौजवान चाहते हैं जो उनके लिए दुनिया को फतह कर सके और उन्हें शिकस्त दे सके और बाकी दुनिया को चांद पर ले जाए, जो खला के इंतहाई ज्यादा हिस्सा को फतह कर सके और जो उन्हें सितारों से भी आगे ले जाए। रूस वाले इस किस्म के मसीहा के मुंतजिर हैं। ऐ खुदा, अब तवज्जो दें कि हम फिर क्रिसमस के मौके पर मौजूद हैं। क्या हो अगर वो उन्हें मिल जाए? फिर उसके मुतजाद कुछ ढूंढेंगे बाकी लोगों का जिन्हें खुदा ने आने के लिए तख्लीक किया है, क्या होगा? समझे? गौर करें, खुदा जानता है कि हमें किस चीज की जरूरत है, ना कि हम क्या चाहते हैं। आए अब जरा इस पर ध्यान दें। क्या हो अगर रूस वाले अपने मसीहा को पा लेते हैं, अब वो बरे को कबूल नहीं करेंगे? नहीं, हरगिज नहीं, वो किसी बरे को कबूल नहीं करेंगे। नहीं जनाब, वो बरे को नहीं चाहते, बस उसके ताल्लुक से यही सारी बात है, और वो किसी भी तरह उसे नहीं चाहते। लेकिन वो एक मसाशुदा मसीहा चाहते हैं, ठीक है? और मसीहा का मतलब है एक मसाशुदा शख्स। बस अगरचे वो एक मसाशुदा शख्स चाहते हैं, लेकिन तो भी वो एक मसाशुदा साइंसदान चाहते हैं, वो एक जहीन शख्स चाहते हैं जो एटमों को ले सके और उन्हें तकसीम कर सके, जो खला को फतह कर सके, जो रूस को चांद पर ले जा सके, वो वापस मुड़कर अपने सीने पर शाबाशी ले और कहे, बाकी दुनिया वाले कुत्ते की मानिंद हैं, इसलिए तुम हमारी खिदमत करो। ये सब है जो रूस चाहता है। हो जी हाँ जनाब, आप इस बात को जानते हैं कि सारी दुनिया चिल्ला रही है। बहुत अरसा नहीं गुजरा कि जर्मनी वालों ने भी एक मसीहा मांगा था और उन्हें एक मसीहा मिल गया था। आप ये भी देखें कि उन्होंने उससे क्या हासिल किया था, समझे? आप समझते हैं? क्या आप नहीं जानते उन्हें हिटलर मिला था, पर उन्हें क्या हासिल हुआ था? तबाही और बर्बादी। अगर आप खुदा के मसीहा को रद्द करते हैं तो फिर ऐसे ही मसाशुदा मसीहा मिलते हैं। उन्होंने क्या हासिल किया था? जब पेंटिकॉस्टल की बरकत रूस या जर्मनी पर नाजल हुई तो उन्होंने पैगाम को रद्द कर दिया था और वो उन लोगों पर हंसते थे और उनको जेल में डाल देते थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सलीब को रद्द कर दिया था और उन्हें दोहरी सलीब स्वास्तिका निशान की सूरत में मिली। और जब आप रहम को कबूल नहीं करते तो फिर सिवाय सजा के और कुछ नहीं बचता। दोस्तों, ये बात दुरुस्त है। अब गौर करें, आज वो कहाँ हैं? समझे? गौर करें, उनकी कहीं पर भी कोई हैसियत नहीं है। वो बिल्कुल बेहाल लोगों की मानिंद है, इसलिए कि उन्होंने गलत मसीहा को कबूल कर लिया था। और अगर रूस को एक बिल्कुल वैसा ही मसीहा मिल जाता है तो कोई मसला नहीं, वो चाहे कितना भी जहीन होगा, वो भी बिल्कुल यकसा चीज लाएगा जो सारी कौम को बर्बाद करके रख देगी, समझे? आज इंडिया भी एक मसीहा चाहता है, वो भी एक मसीहा चाहते हैं। अब याद रखें, मसीहा का मतलब है मसाशुदा, और वो एक मसीहा चाहते हैं। वो क्या चाहते हैं? वो एक ऐसा मसीहा चाहते हैं जो उन्हें खिलाए और उन्हें खाना दे और उन्हें पहनने को दे और उन्हें उसके लिए कुछ काम करना ना पड़े, सिर्फ सड़क के इधर या उधर चले और एक जानिब से दूसरी जानिब उसे फेंक दे। ये आपका मुकाम है, ये चीजें काम नहीं करेंगी। वो सिर्फ मांगना चाहते हैं, बस वो इसी किस्म का एक मुकद्दस शख्स चाहते हैं जो उठ खड़ा हो और दरख्त के ऊपर चढ़ जाए और उसे हिलाए, रोटी और गोश्त और दूसरी चीजें नीचे फेंके और उन्हें दे और ऊपर से उन पर निशावर करे और वो उसके गिर्द बैठे रहें और खाते रहें और बाकी का दिन सोते रहें और जब जागें तो उन्हें बेहतरीन कपड़े मिले। और अब इसी किस्म का मसीहा इंडिया वाले चाहते हैं। इस क्रिसमस पर रूस वाले अपने लिए एक जहीन साइंसदान की सूरत में मसीहा चाहते हैं। यही वो चीज है जो वो चाहते हैं, उन्हें बख्शा जाए। इंडिया वाले एक मसीहा चाहते हैं जो उन्हें काम किए बगैर खाना और कपड़े दे सके। अमरीका वालों, अब आप क्या चाहते हो? अमरीकी लोगों, अब आपकी क्या सोच है? आप भी एक मसीहा के लिए चलाते रहे हैं। मैं जानता हूँ कि ये बात टेप में रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन आप एक मसीहा के लिए चलाते रहे हैं। अब आपको क्या चाहिए? जो आप चाहते थे वो आपको मिल गया है। आप भी एक सियासतदान चाहते थे और वो आपको मिल गया है। अब आप उसके साथ क्या सलूक करने वाले हैं? लेकिन वो आपकी चमड़ी उतारने वाला है और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि यही काम है जो वो करने को है और आपको कब्र तक पहुंचाने वाला है। और आप यही चाहते थे और आपकी अपनी ख्वाहिश पूरी हो गई है। अब आप उसके साथ क्या करने वाले हैं? ये अब आपके हाथों में है और ये जदीद अखियब और एजबल है। आप जिस चीज के लिए दौड़ रहे थे वो आजादी थी, मगर आपने अपने आप को वापस उस गुलामी में फंसा लिया है। लेकिन यही चीज थी जो आप चाहते थे। आप कोई नशे में दूत आवारा यानी जदीद जमाने का एल्वस चाहते थे और वो आपको मिल गया है। आप एक जहीन तलीम याफ्ता और आला दिमाग का सियासतदान चाहते थे और वो आपको मिल गया है। आपने ये सारा काम कैसे किया? मक्कारी से, और एक मशीन अंदर ले आए और उसे ठीक लोगों की आंखों में दोष दिया। अब मैं ना डेमोक्रेट हूँ और ना रिपब्लिकन, बल्कि मैं मसीही हूँ, समझे? समझे, दोनों पार्टियां निकम्मी हैं। लेकिन जब एक इंसान जो कम से कम ऐसा करता है तो वो दोनों जानिब मसीहत की सोच और उम्मीद की अक्कासी करता है, लेकिन फिर आप मुड़ते हैं और मशीनों को तैयार करते हैं क्या करने को? ताकि उन जहीन लोगों को चुन ले जिन्हें आप चाहते हैं। आपने ये कैसे किया? आप उसे टेलीविजन पर लाए और सारे मुल्क में उसका शोरा किया, ओ मेरे खुदाया, और कोशिश करते हैं कि चुने गए दोनों सदरों की दिमागी कुव्वतों को जांचें ताकि आप उन्हें चुन लें जिसे आप समझते हैं कि उसके पास आला दिमाग है, और ये नहीं देखते कि उसके पीछे क्या है। आप देखते हैं कि आपको सौदेबाजी में क्या मिला है। हाँ जी हाँ, हो अब क्रिसमस दोबारा आ गया है। जी हाँ, अमरीका को इसका मसीहा मिल गया है। अब आप उसके साथ क्या करने वाले हैं? और ध्यान दें कि वो आपके साथ क्या करता है। आप सिर्फ याद रखें, जैसे हिटलर ने जर्मनी के साथ किया था। आप सिर्फ इस बात को अपने जहन में रखें, याद रखें, और ये बात टेप पर हो गई है। जी हाँ, और आपको वो मिल गया है। फिर भी उन बेदारियों से जो मुल्क में हुई, काफी लोग हैं, काफी शायस्ता लोग बचे हैं जो अपने दिलों में खुदा का खौफ रखते हैं। इन्होंने ऐसे काम किए और उसे कुछ देर ठहराए रखा, लेकिन आपने खुद अपनी मशीनों के जरिए इस काम को दरियाफ्त किया, यानी एक ऐसी मशीन जो वोटों पर धोखा दे सके, और आपके अपने अखबारात ने इसे मुल्क भर में फैला दिया, मगर आपने उसे ठीक करने के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन आपको ये मिल गया है। इसी तरह का मसीहा ये लोग चाहते थे। बस मेरा ख्याल है अब ये लोग सुकून में हैं, इसलिए कि इन्हें एक अकलमंद, आला दिमाग, यकीनन जहीन और आला तालीम याफ्ता मसीहा मिल गया है। और आप अपने खुदावंद की तालीम को अच्छे और बेहतर तरीके से जानते हैं कि जमाने के बदकार लोग हर जमाने में हमेशा से जहीन लोग रहे हैं। क्या आप नहीं जानते कि ये साइंसदान और अकलमंद लोग कायम से हैं, जबकि खुदा के लोग चरवाहे और इस तरह के थे जो तबाही के दहाने पर भी सच्चे और वफादार रहे, और ये वही देहाती किसान और इस तरह के लोग थे जो कश्ती में बच गए थे और अकलमंद लोग बर्बाद हो गए थे। क्या आपको मालूम नहीं कि यीशु ने कहा था इस जमाने के लोग यानी इस दुनिया के लोग वो बादशाही के फर्जंदों से ज्यादा होशियार और चलाक हैं? क्यों? बादशाही के फर्जंद बड़े हैं और उन्हें एक रहनुमा की जरूरत है, लेकिन वो अपना रहनुमा आला दिमाग की चलाकी से चुनने की कोशिश करते हैं। होशियार ऐसा ही करते हैं, लेकिन खाकसार अपने रहनुमा रूहुल कुद्स को चुनते हैं। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है जो कलीसिया कर चुकी है, यानी कलीसिया ने तंजीमी सुरमाओं को चुन लिया है, जबकि मसीह के हकीकी बदन ने रूहुल कुद्स और उसके कलाम को चुन लिया है। ये इस बात पर मुनसर है कि आप किसे अपनी रहनुमाई करने देते हैं। एक बड़े को रहनुमाई की जरूरत होती है और यही वो चीज है जो हमें हासिल करनी चाहिए। अब उनके पास उनके मसीहा हैं, उनके मसीहा तालीम याफ्ता जहीन और आला सलाहियत के हामिल हैं। ओ मेरे खुदाया, ऐसा जहीन शख्स जैसा कि ये सदर है ऐसा कभी नहीं हुआ। बस वो ठीक वहाँ खड़ा होगा और शायद मेरा ख्याल है आज या आज रात या आने वाले दो दिन में, क्योंकि मैंने इस बात को किसी रोज नशर होते हुए सुना था कि आप उससे जो भी सवाल पूछना चाहे पूछ लें। यकीनन वो तो एक तालीम याफ्ता मशीन है जिस पर अमेरिका भरोसा किए हुए है। अब आए देखते हैं कि इसके साथ आप क्या कुछ हासिल करते हैं। जी हाँ, अमेरिका, तूने उसे रद्द कर दिया, तूने मसीह के पैगाम को रद्द कर दिया, तूने रूहुल कुद्स को रद्द कर दिया जो तेरे सामने ऐवान नुमाइंदगान की इमारत में साबित हो गया था, जहां मसीह की कुवत ने अपने आप को जाहिर कर दिया था और लोगों के ख्यालों को बांप लिया था और बीमारों को शिफा बख्शी थी और दिलों के पोशीदा भेद बता दिए थे, और बिल्कुल वही काम करता रहा जो उसने फरमाया था कि आखिरी दिनों में करेगा, लेकिन तूने उसे रद्द कर दिया। क्या ये चमक काफी नहीं थी? वो एक अस्तबल में पैदा हुआ था और कौम के लिए वो बदबूदार जगह थी, लेकिन याद रखें, आपकी सियासत और कलीसियाएं भी खुदा के सामने बदबूदार हैं। खुदा हलीमी की मीठी खुशबू के जायके से प्यार करता है और कलीसिया ऐसा नहीं चाहती, वो रयाकारी चाहती है, जबकि खुदा हकीकी हलीमी चाहता है, और यही बात है जिससे खुदा प्यार करता है। अब उनके पास उनके तालीमी सुरमा है। कलीसिया भी एक मसीहा चाहती है। अच्छा, ये कैसा मसीहा चाहती है? इसे एक जहीन तंजीमी निजाम दरकार है, ऐसा मसीहा दरकार है जो उन्हें एक मकाम पर ले आए। मुझे यहाँ अपना वक्त लेने दे ताकि आप पुर यकीन हो जाएं कि ये यहाँ और बाहर की दुनिया में वारिद हो चुका है। आज कलीसिया एक ऐसा मसीहा चाहती है जो हर एक चीज को ऐसे मजबूत कर दे कि वो ऐसी दुनिया में रह सके जहां औरतें अपने बाल कटवा सकें, अपने चेहरों पर सिंगार कर सकें, मर्द हजरात चार या पांच शादियां कर सकें और फिर भी डीकन बन सकें, हो और वो जो कुछ भी करना चाहें कर सकें और फिर भी अपने मसीह होने के इकरार को कायम रख सकें। आप बस इससे ये हासिल करने वाले हैं। आप खुदा का मसीहा नहीं चाहते। मसाशुदा कलाम यानी वो कलाम जो मुजस्सम हुआ और वही कलाम अपने आप को आगे बढ़ा रहा है, और आप उस कलाम को नहीं चाहते जबकि खुदा ने उसे आपके लिए भेजा है, लेकिन कलीसिया उसे नहीं चाहती। वो अपने अकीदों को चाहते हैं और वो एक जहीन आलम चाहते हैं जो अकीदों को मजबूत कर सके, जहां उसके सामने झुक सके, और आपको ऐसा मसीहा मिल जाएगा। जी हाँ, और ये अपने रास्ते पर गामजन है। आप उसके बहुत सारे बच्चे पाते हैं, लेकिन इन्हीं दिनों में एक दादाजी उठ खड़ा होने वाला है, यानी एक फराउन जो यूसुफ को नहीं जानता, और यही कुछ आप चाहते हैं और यही कुछ कलीसिया चाहती है, और आप देख सकते हैं कि वो बिल्कुल यही काम कर रहे हैं। जी जनाब, बिल्कुल उसी तरह से। मुकाशवा 17 इस बात को वाज़े तौर पर उस पुरानी कस्बी और उसकी बेटियों के मुतल्लिक बयान करता है जो कि बिल्कुल दुरुस्त है, और वो सब अपनी माँ के घर जाएंगी, और ये बात जेरे तकमील है, और अब वो अपनी राह पर बिल्कुल रवा दवा है कि एक आलमगीर कलीसिया बनाए। आप बिल्कुल यही चीज हासिल करने जा रहे हैं, यानी तंजीमें जो कि आप चाहते हैं। मेरी बात गौर से सुने, ये बात होगी और उस वक्त शायद मैं जा चुका हूँगा, लेकिन वो लोग भी होंगे जो उसे कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि तब शाम की रोशनी चमकना शुरू हो जाएगी और बाहर फैलना शुरू हो जाएगी, और वो लोग इर्द गिर्द देखेंगे, वो मालूम करेंगे कि उनकी तंजीम उन्हें किसी चीज की तरफ माइल करने के लिए मजबूर कर रही है, और उनकी तंजीम ऐसा इसलिए करेगी कि वो अपने वजूद को बचा सके और वो सब ऐसा करेंगे। लेकिन वो लोग भी होंगे जो उस निजाम को नहीं चाहेंगे, जिन्होंने खुदा के निजाम को कबूल कर लिया होगा, रूल कुस और कलाम को कबूल कर लिया होगा, तो वो कहेंगे वो शख्स जरूर ही सच्चा था, और हो सकता है उस वक्त बहुत देर हो जाए। हम एपिस्कोपेलियन कलीसिया के राकान को, प्रेसबिटेरियन को, बैप्टिस्ट को और हर किसी को फुल गॉस्पल बिजनेसमैन की मीटिंग में आते हुए देखते हैं, और हर एक रूल कुछ का मुतलाशी है। क्या लोग महसूस नहीं करते कि बिल्कुल यही घड़ी दुल्हा के आने का वक्त है, जब सोई हुई कुंवारियां आईं और उन्होंने तेल खरीदने की कोशिश की। ऐसा ही वक्त था जब यीशु ने कहा था कि दुल्हा आया और अंदर दाखिल हो गया और वो कुंवारियां अंदर दाखिल ना हो सकी। अब इन लोगों के साथ क्या मसला है? इस पर वो वावेला करती हैं, जबकि बाइबल साबित करती है कि वो अंदर दाखिल ना हो सकी, और जब वो ऐसा करने की कोशिश कर रही थी तो दुल्हा आ गया और उन्हें बाहर अंधेरे में डाल दिया गया। ये क्या था? उनके पास शायद हर किस्म के जज्बात, हर किस्म के बनाव सिंगार और हर किस्म के एहसासात हों, जो कि शायद इस बात का सबूत लगते हों, लेकिन हकीकी कलीसिया पर मोहर की जा चुकी थी और वो जा चुकी थी। जी हाँ, हो सकता है ये नबुवत हो। वो कुछ ऐसा चाहते हैं कि जैसे वो चाहें वैसे ही वो रह सके, और वो यानी कलीसियाई दुनिया इस तरह की चीज की मुंतजिर है। कुछ ऐसा चाहते हैं कि शहर की सबसे बड़ी कलीसिया हो जहां वो जा सके, जहां शहर के तमाम मशहूर लोग तल्लुक रखते हों, और उनके पास सबसे ऊंचे मकाम पर अमारत हो, और उनके पास बेहतरीन साज हों, और उनके पास नशिस्तें हों, और उनके पास ऐसे खादम हों जो उन्हें एक लफ्ज भी ना कहें उन्हें कैसे रहना है, चाहे वो नाचना चाहते हों, चाहे वो किसी किस्म का प्रोग्राम करना चाहते हों, चाहे औरतें छोटे कपड़े पहनना चाहती हों, चाहे वो अपने बाल कटवाना चाहती हों, चाहे ऐसा ही कोई और काम करना चाहते हों, वो सिगरेट पी सकें और सामाजिक तौर पर शराब भी पी सकें। और यही चीजें कलीसियाओं में हो रही हैं कि बस जदीद तरीके से शराब नोशी करें, अपने बच्चों को सिखाएं कि शराब पी लें लेकिन बहुत ज्यादा ना पिए, और उसे हावी ना होने दें, सिगरेट पी लें लेकिन हद से ज्यादा ना पिए, और जो चाहें वो पी लें लेकिन कोशिश करें कि अपने आप को ऐसे मलबूस करें जो आपको मुनासिब लगता हो, और ये आप ही जानते हैं कि ये कैसे करना है। ये रयाकारी है, ये शैतानी मसा है, और इसे ही तंजीम कहा गया है, और इसे ही मजहब कहा गया है। ये शैतान की तरफ से है, इसलिए मसीह और उसके कलाम के पास वापिस आ जाएं, अपने आप को इस जैसी नामाकूल नस्ल से बचाएं, इससे पहले के तौबा करने के लिए बहुत देर हो जाए, और ये किसी भी वक्त हो सकता है, इसलिए आप में से हर एक को तौबा की जरूरत है। जब हम उन सोई हुई कुंवारियों के अमल को देखते हैं जिस तरह वो करती हैं, तो ऐसा लगना चाहिए कि लोगों को अपने जेनों से खौफजदा हो जाना चाहिए, लेकिन इसकी बजाय लोग कहते हैं ओ जलाल मिले, क्या ये बात बहुत अच्छी नहीं, हालेलुया, हो मेरे खुदाया, लोग कितनी दूर तक जा सकते हैं। जी हाँ, वो अपने सियासी ख्यालों के साथ किसी किस्म की हालत में भी जा सकते हैं, और अपने जद्दी तसव्वुरात के साथ खुदा के कलाम के मुतल्लिक मजीद नहीं जानते, बनिस्बत एक जंगली शख्स के जो मिस्री रात के मुतल्लिक जानता हो। ये दुरुस्त है, ये सिर्फ उसके मुतल्लिक एक थियोलॉजिकल या कोई नफ्सियाती तसव्वुर है जो उन्होंने अकीदे या किसी रस्म की सूरत में उनके आगे पेश कर दिया है, और पेंटिकोस्ट इसके साथ नाकिस हो गया है। इस इजहार ख्याल के लिए माजरत खा हूँ। लेकिन ये तसव्वुरात मनाद औरतों और मजीद ऐसी बातों की बुनियाद हैं। ये दुरुस्त है, ये है आपका मकाम, नाचकूद, रॉक एंड रोल, तालीम। आज दुनिया इस किस्म की कलीसिया चाहती है, और इसी किस्म का मसीहा भी चाहते हैं, एक ऐसा मसीहा जो उन्हें मुतहद रख सके। आपको एक ऐसा ही मसीहा मिलने वाला है। जी हाँ, और उसकी रूह पहले ही नस्ले इंसानी के दरमियान काम कर रही है, और ये बात सच है, और फिर भी वो मसीहत का इकरार करते हैं, वो उन्हें मिल जाएगा। खुदा ने उन लोगों को भेजा, उनके लिए भेजा। अगर 1963 में, अगर खुदा हमारे लिए 1963 में भेजता है, तो वही मसा होगा जो उसने पीछे इब्तदा में नाजिल किया था। हम उसका इनकार कर देंगे जैसे उन्होंने उस वक्त किया था, क्योंकि अगर वो मसा शुदा शख्स यानी वो मसीहा जो कलीसिया में आता है तो उसे वैसा ही होना चाहिए जैसा बाइबल ने कहा था, उसे बिल्कुल वैसा होना चाहिए, क्योंकि अब्रानियों 13:8 में ये लिखा है कि यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। तो फिर अगरचे हम एक मसा शुदा मसीहा के लिए दुआ कर रहे हैं तो क्या हम मजहबी सियासतदान चाहते हैं? क्या हम जहीन मिलिट्री वाला चाहते हैं? क्या हम तालीम याफ्ता साइंसदान चाहते हैं? आप तो एक बड़ा चाहते हैं, एक बड़ा चाहते हैं जो आपको वापस लाए। वो अपने आप को जलाल नहीं देगा बल्कि कलामे मुकद्दस के पास वापस लाएगा, वापस लौटाए। एक है जो आपको बिना किसी परवाह के सच्चाई बताएगा। देखें, इसके लिए बिल्कुल उसके साथ खड़े रहें और उसके साथ खुद को ठीक कर लें, लेकिन लोग उसको नहीं चाहते। अगर वो आज आ जाए जैसा कि वो उस वक्त आया था, तो बिल्कुल बाप के कलाम के साथ खड़ा होगा। वो यकीनन पूरा कलाम होगा जिसका बाइबल में वादा किया गया है कि उसे आदम के बेटों में से आना है। ये दुरुस्त है। यीशु ने कहा, कौन मुझ में गुनाह साबित कर सकता है? कौन मुझ पर बेइत्तकादी का इल्जाम लगा सकता है? वो सब कुछ जो बाप ने कहा था क्या मैंने पूरा नहीं किया? और अगर मैंने उसे पूरा नहीं किया तो मुझको बताओ कि मैंने कहां पर उसे छोड़ दिया। आमीन। मुझे बताओ कि मैंने कहां पर कमी की है। आमीन। आप जानते हैं, बेइत्तकादी गुनाह है। ये दुरुस्त है, हम ये बात जानते हैं। कौन मुझे दिखा सकता है कि मैंने कहां पर किसी बात को पूरा नहीं किया? उसने कहा, हर लफ्ज जो बाप ने कहा क्या मैंने उसे पूरा नहीं किया? कौन है जो अपनी उंगली मुझ पर उठा सकता है और कह सकता है कि मैंने फला बात को पूरा नहीं किया? तुम में से कौन है? तो फिर भी वो क्यों उसके पीछे पड़े हुए थे? क्योंकि ये नबुवत की गई थी कि वो ऐसा करेंगे। लेकिन वो बाप के काम बिल्कुल उसी तरह करता रहा जैसे वो करता था, और वो उन कामों को बिल्कुल उसी तरह करता रहा, क्योंकि वो बदल नहीं सकता, क्योंकि खुदा कलाम है, क्योंकि वो बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि वो है, और वो कलाम है। वो कैसा कलाम है? वो रूल कुछ है जो खुदा के कलाम को लेता है और उसे मुजस्सम करता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा यीशु मसीह है। जब खुदा बाप जो रूह था वो हमारे दरमियान अपने बेटे की सूरत में मुजस्सम हुआ, उसने खुदा के कलाम को लिया और उसे मुजस्सम किया और उसे लोगों पर जाहिर किया। लेकिन वो इस किस्म के कलाम को नहीं चाहते थे, क्योंकि उनके पास अपने अकीदे थे, उनके पास अपनी तंजीमें थी, और वो कलाम उनकी तंजीमों से हटकर था, लिहाजा उन्होंने उसे कबूल नहीं किया था। और आज भी बिल्कुल वही चीज है। और अगर मसीहा आ जाए तो वो वही काम करेगा जिनका खुदा ने यहाँ पर करने का वादा किया है और जो बाइबल में मौजूद है, और उन कामों को आदम के बेटों के सामने जाहिर करेगा, और हर एक तंजीम उससे मुंह मोड़ लेगी क्योंकि वो उसे नहीं चाहते, उन्हें उससे कोई सरोकार नहीं है। लेकिन वो यही कुछ है जो खुदा ने उनके लिए भेजा है। अगर उसने उनके लिए कुछ भेजा है तो वो यही कुछ है, और फिर वो इसे रद्द कर देंगे और लोगों की ये नस्ल अपने ऊपर खुद सजा ले आएगी, बिल्कुल उसी तरह जैसे यहूदियों ने अपने वक्त में किया था और बाकी सब ने भी किया था। जी हाँ जनाब, आप जानते हैं वो क्या करेगा? अगर मसीहा 1963 में आ जाए तो आप जानते हैं वो क्या करेगा? वो हमारी तमाम तंजीमों को नेस्त और नबूद कर देगा। वो जमीन पर से इनको पाश पाश कर डालेगा। खैर, वो कहेंगे क्या डॉक्टर फलाफला या डॉक्टर फलाफला को मात दे सकेगा? वो कहेगा, तुम अपने बाप अब्लीस से हो और बिल्कुल उसी के से काम करते हो। बिल्कुल यही बात है जो वो कहेगा। वो उन्हें किसी तौर से मुक्के नहीं मारेगा। क्या उसने इब्तदा में ऐसा नहीं किया? और वो आज भी बिल्कुल यकसा है जैसा वो तब था। और कोई भी चीज जो कलाम से मुतजाद है वो उसे मुतजाद ही कहेगा। वो कहेगा, तुम अपने बाप अब्लीस से हो और बिल्कुल उसी के से काम करते हो। तुम उसके कलाम से मुतजाद काम करते हो। ये दुरुस्त है, और मसीहाना निशान उसकी पैरवी करेगा। ये बात दुरुस्त है, और वो ठीक उन बातों पर खड़ा होगा और कहेगा, जो कुछ वकू पजीर हुआ क्या मैंने उसे पूरा नहीं किया? तुम में से कौन है जो मुझ पर बेइत्तकादी का इल्जाम लगा सकता है? समझे? लेकिन लोगों ने उसे कठपुतली बनाने की कोशिश की और उसे जगह ब जगह उठाए फिरते रहे, जैसे फरीसियों ने किया। वो उसे एक जगह लाए कि कुछ तफरी करें, और वहाँ उनके मेहमान जमा हो गए कि वो लोग साबित कर पाए कि वो नबी नहीं। आप इस कहानी से वाकिफ हैं जिसके मुतालिक मैंने सिखाया था। देखें, वही चीज आज भी कर रहे हैं ताकि अपनी तफरी के लिए इकट्ठा कर सके और उसे वहाँ ला पाए। वो वही चीज करेंगे और वो जाएगा। हालेलुया, वो जाएगा, क्योंकि जहाँ उसे दावत दी जाती है वो हमेशा वहाँ जाता है। जबकि वो जानता था कि फरीसी उसके साथ क्या करने वाले हैं। वो जानता था कि फरीसियों से उसे कुछ फायदा नहीं होगा। वो जानता था कहीं पर भी जाल बिछाया जा चुका है। फरीसियों को उससे कोई लेन देन नहीं था, बल्कि वो तो उससे नफरत करते थे। और वो बूढ़ा शमौन चाहता था कि वो उसके घर में आए ताकि वो अपने घर के चौगिर्द बड़ा हजूम इकट्ठा कर सके। लेकिन तो भी यीशु इस बात को जानता था, मगर वो फिर भी वहाँ चला गया। क्या उसने यीशु पर कोई तवज्जो दी? वो मोजिस ओदेदारों की खिदमत में लगा हुआ था और यीशु बगैर पांव धोए पीछे बैठा हुआ था, और आज भी बिल्कुल वही चीज है। वो मसीह को नहीं चाहते, आप देखें, और ना ही वो खुदा के तरीके को चाहते हैं। जी हाँ, यीशु ने कहा तुम अपने बाप अपलीस से हो, और वो लोग जो उन कवानीन और उन बातों को और हर एक उस बात को जो उनकी तंजीम और अकीदों में होती है कायम रखते हैं, और वो सिर्फ लफ्जों की हद तक रहते हैं, वो हाथ मलते रहते हैं। यीशु ने कहा कि तुम अपने अकीदों और अपनी रवायात से खुदा के कलाम को बेतासीर करते हो। और शायद अब्रानियों 9:12 बयान करती है, मेरा ख्याल है ये शायद अब्रानियों 12 है, नहीं बल्कि मेरा ख्याल है ये 9:12 ही है, या फिर इसी के इर्द गिर्द है, जहाँ पर बयान किया गया है कि हम पाक कर दिए गए हैं और बख्श दिए गए हैं, और हमारे दिलों को मुर्दा कामों से भी पाक कर दिया गया है, और जब हम हकीकी तौर पर यीशु मसीह के खून से माफ कर दिए गए हैं तो रूल कुछ हम में बसता है और हम दुनियावी कामों के लिहाज से मुर्दा हैं। हो पेंटिकॉस्टल कलीसिया, आपने क्यों ऐसी गलती की है? आप अंधे को अंधे राह दिखाने वाले हैं। क्या आप नहीं जानते कि आप 50 साल पहले इसमें से निकल गए थे और फिर वापस लोगों के ग्रोह को इसमें खींच ले गए हैं? क्या आप खुदावन का कलाम नहीं सुन सकते? ए खुश खड़ियो, तुम्हारे साथ क्या मसला है? जो तुम्हारे पास भेजा गया था तुम उसे कबूल क्यों नहीं करते? क्योंकि उन्होंने तब भी उसे कबूल नहीं किया था और लोग आज भी उसे कबूल नहीं करेंगे। अब आप क्या जानते हैं? दोबारा एक मर्तबा फिर दुनिया की तंजीमों के मंसूबे और अकीदे और उनके अपने मंसूबे तबाह हो रहे हैं, इंसान के मंसूबे तबाह हो रहे हैं। खुदा ने हमें कभी भी कोई अकीदा नहीं दिया, खुदा ने हमें कभी भी कोई तंजीम नहीं दी। मैं चाहता हूँ कि कोई भी शख्स मुझे बाइबल में से दिखाए जहाँ उसने ऐसा किया हो। मैं आपको दिखा सकता हूँ जहाँ उसने आपसे ये कहा हो कि ऐसा मत करना। आप मुझे दिखाएं कहाँ उसने ऐसा कहा कि ऐसा करो। आप कहते हैं भाई ब्रहनम, फिर यीशु ने इंसान को क्या दिया है? एक बादशाहत दी है। हालेलुया, वो बादशाह है, मुकद्दसीन का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद है। उसने हमें एक बादशाही दी है, ना कि सियासी तंजीमी निजाम, बल्कि एक बादशाही दी है। उसने कहा पिलातुस, बल्कि पिलातुस ने कहा क्या तू यहूदियों का बादशाह है? उसने कहा तू खुद कहता है। उसने कहा अगर मेरी बादशाही इस दुनिया की होती तो मेरे लोग मेरे लिए जंग करते, लेकिन मेरी बादशाही आसमानी है। तो फिर हम क्यों दुनिया की चीजों को थामे बैठे हैं, जबकि हम उसकी बादशाही के फर्जंद हैं, आसमानी हैं, समझे? कहीं पर जरूर कुछ गड़बड़ है। लेकिन हमें कोई दुनियावी निजाम नहीं दिया गया, हमें कोई तंजीमी निजाम नहीं दिया गया, हमें कोई दुनिया की सियासी हुक्मरानी नहीं दी गई, बल्कि हमें खाकसारी की बादशाहत दी गई है, जैसे कि बरे की जिंदगी हमारे अंदर बसी हुई है, ना कि दुनिया की जिंदगी बसी हुई है, इसलिए कि हम मजीद दुनिया के नहीं रहे। ए बच्चों, तुम इस दुनिया के नहीं हो। उसने कहा ए बाप, मैं दुआ करता हूँ जैसे मैं इस दुनिया का नहीं, ये भी इस दुनिया के नहीं। देखें, यीशु ने हमारे लिए यही दुआ की थी, लेकिन फिर भी हम ठीक वापस मुड़ जाते हैं और अपने आप को दुनिया के मामलात में उलझा लेते हैं, जहाँ पर हर किस्म के लोग उलझे पड़े हैं। अब आप जानते हैं कि दुनिया में कोई ऐसी कलीसिया नहीं है जो रयाकारों से भरी हुई ना हो, और यीशु ने कहा बे ईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुतो। बस फिर आप क्यों तंजीमों के जुए में जुते हुए हैं, जबकि खुदा की बादशाही आपको दी जा चुकी है, जिसमें आप पैदा हो चुके हैं, और उसमें कोई रयाकार नहीं, बल्कि सब खालिस हैं, खुदा के पाक बेटे और बेटियां हैं, जो उसके कलाम पर पदेश से लेकर मुकाशवा तक हर बात पर ईमान रखते हैं और उसके साथ कायम रहते हैं, और आपकी जिंदगी उसे साबित करती है, और खुदा अपने कलाम से उसकी तस्दीक करता है। वो मसीहा है और आप मसीहा की बीवी हैं, और खुदा इस निजाम में उस्तादों, चरवाहों, नबियों और मजीद ऐसे लोगों को मुकर्रर करता है कि मसीहत को खालिस कायम रखें, ना कि तंजीमी अकीदों के साथ मिल जाए, बल्कि जड़ी बूटी जैसी चीजों को बाहर निकालें और कलीसिया पाक रहे और मसीह और उसके कलाम से पाक और खालिस रहे। क्या आप सोचते हैं कि कलीसिया उसे कबूल कर लेगी? वो उसे ठोकर मारकर बाहर निकाल देंगे। वो उससे कोई सरोकार रखना नहीं चाहते। उनके पास उनका अपना सियासी निजाम है, और जैसे अमेरिका ने अपना जहीन मोतबर शख्स पा लिया है, इसी तरह कलीसिया अपना जहीन मोतबर शख्स पाने को है। आप सिर्फ नजर रखें, कलीसिया उसे पालेगी। वो उसे पाने के लिए अपनी राह पर गामजन है। उन्होंने अपने आप को उसमें शामिल कर लिया है।
And in this kingdom it has eternal life. Not membership, but eternal life.
लेकिन हमारे पास एक बादशाहत है और उस बादशाहत में अब्दि जिंदगी है, ना के रुकनियत है बल्कि अब्दि जिंदगी है, और उसकी निगरानी करने वाला अजली बादशाह है और एक अब्दि बादशाहत जो अब्दि जिंदगी से मामूर है और जिसको कंट्रोल करने वाला अजली बादशाह है, यानी अजली लोगों के लिए जो बनाए आलम से पेशतर से ही मुकरर है, क्योंकि जिनको उसने पहले से मुकरर किया उनको बुलाया भी, और जिनको बुलाया उनको रास्तबाज भी ठहराया, और जिनको रास्तबाज ठहराया उनको जलाल भी बख्शा। शायद अब्रानियों 11 में ये बात है, लेकिन ये सच है। अब ये इस बात पर मुनसर है कि आप किस चीज के मुतलाशी हैं। अगर आप इब्राहिम हैं, तो आप उस बादशाही के मुतलाशी होंगे। मैं आज सुबह आपको ये दिखा सकता हूँ। जी हाँ जनाब। अब एक बादशाहत अजली जिंदगी से भरपूर है, जो कि पहले से मुकरर शुदा अजली लोगों पर मुश्तमिल है, और अजली बादशाह अजली कलाम से उस बादशाहत की निगरानी करता है। यही सब कुछ है। क्यों? इसलिए कि हमेशा से ऐसा ही था और हमेशा ऐसा ही रहेगा, जिसका ना तो आगाज था और ना ही अंजाम है। खुदा के इरादे में बिल्कुल ऐसा ही था, और ये अजल से खुदा के साथ था, और खुदा का मकसद था कि इस काम को पूरा करे। बस ये दुनिया जवाल पजीरी का शिकार है, इसे जवाल पजीर ही होना है। ये बिल्कुल दुरुस्त है, इसे किसी न किसी तरह जवाल पजीर होना है। मीका ने यहाँ क्या बयान किया था? मीका ने इसके मुतल्लक क्या कहा था? और पहाड़ उसके नीचे पिघल जाएंगे और वादियाँ फट जाएंगी, जैसे मोम आग से पिघल जाता है और पानी करारे पर से बह जाता है, बल्कि एक तरह से गीजर पर जमी तय की मानिद है, वो पिघल जाएगी और गिर पड़ेगी, पर यहोवा सदा कायम रहेगा। हर बशर घास की मानिद है, क्योंकि खुदा की हवा उस पर चलती है, चाहे वो फूल हो या घास हो, चाहे वो जितनी भी खूबसूरत हो वो मुरझा जाती है, पर हमारे खुदा का कलाम अब तक कायम रहता है। यशायाह 40 में उसने मसीहा की आमद की नबूवत करते हुए ये बयान किया था। हमारे तमाम अकीदे, तंजीमी निजाम, तालीम देने वाले, जहीन लोग और बाकी सब कुछ फना हो जाएगा, लेकिन खुदा का कलाम अब तक कायम रहेगा। इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलमे रवा के दरवाजे इस पर गालिब ना आएंगे। हम क्रिसमस के वक्त में हैं। मुझे नहीं मालूम कि हमें फिर ये दिन या पहर मिलता। मैं जरा अफसरदा सा हो जाता हूँ जब मैं वक्त की जरूरत के मुतालिक गौर करता हूँ। अब मैं जरा जल्दी करूँगा। जी हाँ, और हम उस बादशाहत में पैदा हुए हैं, और फिर जैसा कि हम मसीह लोग ईमान रखते हैं और उस बादशाहत में शामिल हैं। अब थोड़ी सी देर पहले मैंने शायद अब्रानियों की किताब में पढ़ा था, क्योंकि हम एक बादशाहत को कबूल करते हैं, ना कि एक अकीदे को कबूल करते हैं, ना किसी निजाम को कबूल करते हैं। हम एक ऐसी बादशाहत को कबूल करते हैं जो जुम्बश नहीं खा सकती, जबकि दुनिया जवाल पजीरी का शिकार है, और ये बात सच है। हर एक सियासतदान, हर एक तंजीम, हर एक कलीसिया टुकड़े टुकड़े हो जाएगी, लेकिन हम एक ऐसी बादशाहत को कबूल करते हैं जिसे जुम्बश नहीं हो सकती, क्योंकि अगर उन्होंने उसे, जो कोई सीना से हम कलाम होता था, उसे रद्द कर दिया था और उसकी आवाज के वसीले जमीन हिल गई थी, तो कितना ज्यादा आप गौर कर सकते हैं जो उसे रद्द करते हैं, इसे उसे यानी उसके कलाम को जो आसमान से बोलता है, यानी उसकी बादशाहत से, क्योंकि हम उसकी ऐसी बादशाहत में हैं जो जुम्बश नहीं खा सकती। आमीन। और सब कुछ जो उससे बाहर है, खुदा ने सब कुछ भेजा है, खुदा ने इसे कमजोर बनाया था, इसलिए ये टूट जाएगी। अपनी कमजोरी की हालत में इसे टूटना ही है, ये कमजोर है। लेकिन याद रखें, हमारे पास एक ऐसी बादशाहत है जो टूटने वाली नहीं है, जबकि बाकी सब चीजें बिखर रही हैं और गिर रही हैं। इसलिए कोई हैरानगी की बात नहीं कि एडी प्रोनट ने कहा, मैं मजबूत चट्टान मसीह पर खड़ा हूँ, बाकी सब कुछ बिखर रहा है। एक बादशाहत, ना के कोई सियासी निजाम, ना ही कोई मदीराना निजाम, ना ही कोई कलीसियाई निजाम, ना ही कोई तंजीमी निजाम, ये सब चीजें फरीसी और शैतान के चेले बनाती हैं। लेकिन हम एक ऐसी बादशाहत को पाते हैं जिसका एक अजली बादशाह है, जो अजली कलाम है, जिसके पास अजली जिंदगी है, और उसके अजली कलाम के वसीले उसके अजली लोगों के पास अजली जिंदगी है, और हम उसमें शरीक हैं। ओ मेरे खुदाया, यही असल बात है। अब कोई भी चीज जो आपको उससे दूर खींचती है, वो गलत है, वो झूठा मसीहा है, वो झूठा मसा है। ओ, लोग कहते हैं उस भाई पर खास मसा है। किस किस्म का मसा है? यही तो सारी बात है। हिटलर पर भी एक मसा था, इसी तरह क्रूशे पर भी एक मसा था, इसी तरह पोपाइस पर भी एक मसा था। अब आप पर किस किस्म का मसा है? अगर वो मसा इस कलाम के साथ नहीं है और हर लफ्ज कलाम से सच्चा साबित नहीं होता तो उसे तनहा छोड़ दे, क्योंकि फिर वो मसा गलत है। अगर वो अपने आप को पैदा नहीं करता तो फिर वो हकीकी बीज नहीं है, वो अपना रंग दिखाएगा। वो लोग कहते हैं पर वो तो किसी दूसरे जमाने के लिए था, तो फिर उस मसा को खैरबाद कह दे, क्योंकि यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। जी हाँ जनाब, बस जबकि ये दुनिया जवाल पजीरी का शिकार है, लेकिन हम एक ऐसी बादशाहत में पैदा हुए हैं जिस पर जवाल नहीं आ सकता। क्या आप यकीन करते हैं कि दुनिया जवाल पजीरी का शिकार है और इस दुनिया के निजाम जवाल पजीरी का शिकार है? क्या आप इस बात पर यकीन करते हैं? क्या आप ईमान रखते हैं कि माशी निजाम भी जवाल पजीरी का शिकार है और सियासी निजाम भी जवाल पजीरी का शिकार है और अक्वामे मुतहदा का निजाम भी जवाल पजीरी की जानिब रवा दवा है और कलीसिया भी जवाल पजीरी का शिकार है, तंजीमें भी जवाल पजीरी की जानिब गामजन है, हर चीज जवाल पजीरी की जानिब बढ़ रही है, लेकिन हमारे पास एक ऐसी बादशाहत है जिसे जुम्बश नहीं हो सकती और वो खुदा की अजली बादशाहत है जिसे जुम्बश नहीं हो सकती। हमें बताया गया है कि इन तंजीमों का नया निजाम जो कि यहाँ वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज ला रही है वो जमीन पर अमन ले आएगा। ये कितनी ज्यादा तजलील है, मसीह के चेहरे पर कितना जोरदार तमाचा है, कितनी बेइज्जती की बात है, कितनी बेहुर्मती की बात है, ये शैतान की तरफ से है। क्या एक इंसान खुदा से बेहतर चीज का बंदोबस्त कर सकता है जिन्हें उसने भेजा है? जैसे बाबल के बुर्ज की मिसाल है और ये एक दूसरा बाबल का बुर्ज है, इसे भी गिरना लाजमी है। जमीन पर अमन कैसे आएगा? वो भी एक झूठे मसीहा के वसीले जो अपनी तालीम में मुखालिफ मसीह है। आप कैसे इन तंजीमों को इकट्ठा कर पाएंगे? यहाँ तक कि वो कठी नहीं होंगी, वो अब एक दूसरे से मुतफिक नहीं है, जबकि वो इन छोटे छोटे निजामों में एक दूसरे की मुखालफत कर रही है। तो क्या ख्याल है कैसे वो सब इकट्ठे होकर इसे हासिल कर पाएंगे? जी हाँ, गौर करें, ये एक झूठा निजाम है। ये सिर्फ इसलिए रचाया गया है कि प्रोटेस्टेंट को रोमनिज्म में डाला जाए, जो कि एक झूठी मुखालफ मसीह की तालीम है। खुदा की बादशाही इस दुनिया की नहीं है, यीशु ने ऐसे ही कहा है, मेरी बादशाहत इस दुनिया की नहीं है। बस अगर इस बादशाहत का इनकार इस दुनिया में होता तो वो एक झूठा मसीहा होता, मगर ये मसीहा बहुत जल्द प्रोटेस्टेंट कलीसिया को वो चीज पेश करने वाला है और वो इसे ले लेंगे, क्योंकि वो इसी चीज के मुंतजिर हैं, क्योंकि वो इसी निजाम के मुंतजिर हैं जो उन्हें इकट्ठा कर सके। खैर, अब हम मेथोडिस्ट और बैप्टिस्ट, यकीनन हम लोग एक तरह से आपस में मुतफिक हैं और आप इस बात से वाकिफ हैं, हम प्रेस्बिटेरियन हैं, हम पेंटिकॉस्टल हैं। हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या हम भाई नहीं हैं? एक फर्क मौजूद है, यानी खुदा ने हमको मुख्तलिफ बनाया है। लेकिन खैर, हम इस बात को भी कुर्बान कर देते हैं और आपकी वो मुबशराना तालीम आपको इसे तर्क करना पड़ेगा। आप कैसे उन लोगों के ग्रोह के साथ जा पाएंगे जो किसी चीज पर ईमान नहीं रखते, जबकि उनमें से कुछ दैरिये हैं और झूठा मसीहा यही कुछ है, यही दुरुस्त बात है। जी हाँ जनाब, अब खुदा की बादशाही इस दुनिया की नहीं है, और जब मसीह इस जमीन पर था तो उसने हमें उस बादशाहत का प्रोग्राम दिया था, उसने हमें खुदा की बादशाहत का प्रोग्राम दिया था, यानी बाप की बादशाहत का, जो कि उसकी दुनिया है। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे उसकी बादशाही में दाखिल हों, तो वो सब कुछ इस कलाम में मौजूद है। अगर आप किसी दूसरे दरवाजे से अंदर आने की कोशिश करते हैं, बल्कि आपको बिल्कुल उसी दरवाजे से अंदर आना होगा जिसके वसीले दूसरे उसमें दाखिल हुए हैं, और अगर आप किसी दूसरे दरवाजे से अंदर आने की कोशिश करते हैं तो फिर आप बिल्कुल उसी तरह हैं जैसे एक चोर या डाकू होता है, क्योंकि उसने कहा कि जो कोई इस नबूवत की किताब में से एक लफ्ज का इजाफा करेगा या इसमें से एक लफ्ज घटाएगा, तो बिल्कुल वैसे ही उसका हिस्सा किताब हयात में से निकाल दिया जाएगा। बस अगर आप दावा करते हैं कि आपका नाम किताब हयात में दर्ज है, और अगर आप ये दावा करते हैं तो फिर उस नाम को उसमें से मत निकालें, क्योंकि पत्रस ने पेंतिकोस के दिन उस बादशाहत का दरवाजा खोल डाला था, उसने दरवाजा खोल दिया था और उस बादशाहत का इफ्तिताह यरूशलम में कर दिया था। मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे दिखाए कि कलीसिया का आगाज रोम में कब हुआ। मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे ये बात साबित करके दिखाए, कलीसिया की इब्तदा कभी भी रोम से नहीं हुई, बल्कि कलीसिया का आगाज यरूशलम से हुआ था, और उस बादशाहत का इफ्तिताह पेंतिकोस के दिन से कर दिया गया था। और जब लोगों ने जानना चाहा कि उस बादशाहत में कैसे दाखिल हुआ जा सकता है, तो फिर पत्रस ने कहा, तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले, तो तुम रूह कुस इनाम में पाओगे, क्योंकि यही चीज थी जो उन्हें बादशाही में ला सकती थी। इसके सिवा कोई दूसरी हिकमत अमली या तंजीमों के वसीले या हाथ मिलाने से या कुछ और करने से, ये सब झूठा मसीहा है। कोई भी मसला नहीं कि आप कितने मशहूर हों, आप कितने नमाया हों, और शायद आप एक डीकन हों, चाहे आप एक पास्टर या बिशप हों, या एल्डर या नगरान हों, या मुकरर किए हुए हों, कोई मसला नहीं। आप चाहे जो भी हों, जब तक आप वापस खुदा के हलीम बर्रे और उसकी बादशाही में नहीं आ जाते, ये सब कुछ झूठ है। अब गौर करें, उसने हमें एक प्रोग्राम दिया, यानी बाप का कलाम, और हकीकी ईमानदार उससे लिपटा रहता है, क्योंकि वो उससे बाज नहीं रह सकता। ये खुदा की बादशाहत है जो उसके अंदर होती है, और इब्राहिम की तरह कोई भी चीज जो खुदा के कलाम से तजाद करती है, उसे वो ऐसे समझता है जैसे वो मौजूद ही नहीं। और कोई आपसे कहता है कि फला तंजीम खुदा की तरफ से है, तो आप इब्राहिम की तरह कायम रहें। अगर कोई आपसे कहे कि छिड़काव जरूरी है, या किसी किस्म की कोई और चीज, कोई निजाम, या खुदा के कलाम से कोई मुतजाद बात जरूरी है, तो आप उस बात का यकीन मत करें। उसे आप ऐसे शुमार करें जैसे वो चीज मौजूद ही नहीं। अगर वो कहते हैं, खैर मेरे अजीज, अब आपको ये काम करने में कोई मसला नहीं है, तो आप उसका यकीन मत करें। जबकि खुदा ने, वो कहते हैं औरतों को अपने बाल काटने में कोई मसला नहीं है, जबकि खुदा का कलाम कहता है कि ऐसा करने से उसे नफरत है। जब आप कहती हैं कि मैं तो पतलून पहनती हूँ, मैं तो छोटे कपड़े नहीं पहनती, जबकि खुदा का कलाम कहता है कि अगर एक औरत मर्द का लबास पहनती है तो ये खुदा के नजदीक मकरूह है, और बाइबल बयान करती है कि औरत अपने बाल ना कटवाए, क्योंकि ये गलत है, और फिर ये मुनासिब नहीं कि वो दुआ करे और ऐसे ही मजीद काम करे, क्योंकि वो अपने बाल काटने के सबब से अपने ही सर को बेहुरमत करती है, और खुदा इस काम से मना करता है। और वो निजाम जो आपसे कहता है कि ऐसा करना दुरुस्त है, तो उसका यकीन मत करें, क्योंकि वो झूठा मसीह है, वो झूठा मसीह है, और ये खुदा के कलाम के खिलाफ है। मगर रास्तबाज खुदा के कलाम से लिपटा रहता है, क्योंकि ये खुदा के अजली प्रोग्राम की तरतीब है। जब खुदा ने मर्द को बनाया तो खुदा ने उसे मुख्तलिफ बनाया, और जब खुदा ने औरत को बनाया तो उसे मुख्तलिफ बनाया, यानी उसे मुख्तलिफ तरीके से बनाया। ये दो मुख्तलिफ अहद हैं, दो मुख्तलिफ मनसूबे हैं, दोनों के दरमियान गहरा फर्क है, और वो एक जैसे नहीं है, वो एक जैसे नजर नहीं आते हैं, उनके काम एक जैसे नहीं है, वो मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ हैं। लेकिन औरतें कोशिश करती हैं कि मर्दों की तरह हो जाएं, और मर्द इतने जनाना हो गए हैं कि औरतों की तरह लगते हैं। गुजरे रोज मैंने एक लड़के को सनसनाटी में देखा जो मिसिस कैनेडी की तरह नजर आ रहा था, उसी तरह के बाल थे और वैसा ही नजर आ रहा था, जबकि खुदा चाहता है कि मर्द एक मर्द की तरह नजर आए, और वो चाहता है कि औरत एक औरत की तरह नजर आए। मैं आपको बताता हूँ कि इस शैतानी हिजबल के निजाम ने सारी दुनिया को अपनी गिरफ्त में लेकर आलूदा कर दिया है। इसने कोई जगह नहीं छोड़ी। ये बुक्स जख्मों को नासूर ज़दा बना रहा है, जैसे कैंसर के नासूर हों। शैतान की कीना परूरी उस निजाम को जो लोगों ने तरतीब दे रखा है, उस निजाम की हकीकी रूह को बसम कर रही है। अब्लीस एक गिद्ध है जो अपनी बादशाही में परवरिश पा रहा है। वो शैतान है, वो निजस है, वो झूठ का बाप है, वो अपने ही लोगों के बदनों को नोच रहा है, क्योंकि वो शैतान है। मसीह बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद है। वही मसा शुदा मसीहा है, और ईमानदार उसके कलाम से लिपटे रहते हैं। खुदा और उसका कलाम एक है, जैसे मैं और मेरा कलाम एक है, इसी तरह आप और आपका कलाम एक है। बस अपने आप पर तकिया मत करें, और अपने ख्यालों पर इंसार ना करें, बल्कि उसके ख्यालों पर चलें, तब आप खुदा का हिस्सा हैं, क्योंकि आप और उसका कलाम एक बन जाते हैं, समझे? फिर आप बादशाही में होते हैं। इब्राहिम ने उन चीजों को जो खुदा के वादे के खिलाफ थी, ऐसे समझा जैसे वो है ही नहीं। जी हाँ, लेकिन वो क्या आज इंसानों के बनाए हुए निजाम वैसे हैं? लेकिन वो यकसा अमल करेगा। फिर एक ऐसी बादशाही में होना, अब मैं इसे खत्म करने वाला हूँ, मैं इसमें से कुछ नोट छोड़ दूंगा और खत्म कर दूंगा। गौर करें, ऐसी बादशाही में होना क्या होता है? अब ये सब तंबीह है, लेकिन ये सब एहतराम, इज्जत और मुखलसी है, जैसे कि मुझे खुदा के कलाम के वसीले हुक्म दिया गया था, जो कि मुझे रुलकुस ने दिया था कि मैं इस गल्ला की निगेबानी करूं, जिस पर उसने मुझे मुकरर किया है, और बेलजाम होते हुए उसके साथ ठहरा रहूं, चाहे जो भी हो जाए, दाएं या बाएं हलाए जाए, तो भी उसका कलाम दुरुस्त है, ये हुक्म दिया गया है। और अगर हम बादशाही हासिल करते हैं, भाई ब्रैनम, ये तमाम दूसरे लोग पूछते हैं, आप किस तंजीम में होते हैं? उनसे कहें, किसी में नहीं। तो फिर आप कहाँ होते हैं? हम एक बादशाही में होते हैं। अच्छा, तो फिर आप उस बादशाही में कहाँ मिलते हैं? आप कहाँ जाते हैं? हम मसीह यसु में आसमानी मकामों में बिठाए गए हैं और हम अपने बादशाह की हजूरी में बुलंद किए गए हैं। उस बादशाही में जलाल हो, अब मैं जोश महसूस कर रहा हूँ। खुदा की बादशाही है जहाँ लोग इकट्ठे मिलते हैं, जहाँ रूल कुस उन्हें ठीक बादशाह की हजूरी में ले जाता है। और जब हम मसीह यसु में बपतिस्मा लेते हैं तो हम इकट्ठे आसमानी मकामों में बैठते हैं और यही वो मकाम है जहाँ से हम ताल्लुक रखते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि पिछली गर्मियों में मैं अपनी बीवी के साथ बाजार गया था और मेरी बीवी ने मुझे कहा, हमने एक खातून को अजीब लिबास पहने हुए देखा था और वो देखने में अजीब सी लग रही थी और वो औरत कुछ अजीब सी लग रही थी, समझे? उसने कहा, ऐसा क्यों है? क्योंकि हम उन औरतों को जानते हैं और उनमें से कुछ यहाँ क्वायर में गाती हैं। ओ मेरे दोस्तों, मैं ये बात कहने लगा हूँ, अगरचे ये टेप हो रही है, शायद कुछ भी हो, लेकिन मैं ये बात जरूर कहना चाहता हूँ और आप जानते हैं कि मैं ये इज्जत और एहतराम से कहता हूँ, बस इसे थामे रखें। आप हजारों लोगों को हजारों मर्तबा यहाँ प्लेटफॉर्म पर आते देख चुके हैं और आप देख चुके हैं कि हर दफा कभी भी ये एक मर्तबा भी नाकाम हुए बगैर पूरी होती है। और भाई ऑर्गन ब्राइट जानते हैं कि दुनिया के दूसरे हिस्सों में जहाँ पर भी हम गए हैं, यानी दूसरे मुल्कों में, और ये एक मर्तबा भी नाकाम नहीं हुई बल्कि हमेशा सच्चाई साबित हुई है। जब मैं इन जैसी जगहों पर जाता हूँ और उन एक जैसी पैरहन तक पहनी हुई पोशाक वाली क्वायरों को देखता हूँ, वो मर्द और औरतों को गुलगत्ता वाले लिबास पहने हुए देखता हूँ और उन्हें सुनते ऐसे लगता है जैसे आसमानी लश्कर गाते हों, लेकिन दिलों को जाँचने वाली रूह वहाँ नजर रखे हुए होती है। और अगर मैं आज सुबह जाऊं कि शायद पांच को सारी दुनिया में से तलाश कर पाऊं जो निजात से पाक हो, तो मैं नहीं जानता कि मैं उन्हें कहां तलाश कर पाऊंगा। ये एक बयान है मगर ये एक हकीकत है और खुदा इस बात को जानता है। मेरे हाथ यहां बाइबल पर रखे हुए हैं, ये दुरुस्त है, और मैं नहीं जानता मैं उन्हें कहां तलाश कर पाऊंगा। देखे, अगर खुदा कहे जा और जिन्हें तू जानता है उनमें से जरा पांच को तलाश करके ला, तो मैं कहूँगा मैं नहीं जानता कि मैं कहाँ जाऊँ। ओ मेरे खुदाया, ये कैसा निजाम है, ये कैसी निजासत है। और यही वो चीज है जिसे दुनिया चाहती है और यही वो चीज है जिसे दुनिया तब तक चाहती थी और यही वो चीज है जिसे दुनिया अब भी चाहती है और यही वो चीज है जिसे अब ये हासिल करेंगे। जैसे कि एक आदमी दूसरे आदमी की बीवी के साथ खड़ा होता है और शराब नोशी और सिगरेट नोशी कर रहा होता है जो एक गौन से मुलब्बस होती है जिसे उसने डांपा होता है। जरा इसके मुतालिक सोचे, खुदा को ये सिर्फ अंजीर के पत्ते ही नजर आते हैं, जैसे कि हवा कसूर करके खड़ी हुई जो अपने दिल में नेजस थी, और अगर पानी की तरफ मुड़े तो वहाँ भी कश्ती तरा सकती है और वो उस काबिलियत के साथ वहाँ खड़ी हो जो उसे फितरी तौर पर मिली हो और गा रही हो और तकरीबन उस वक़्त तक आवाज निकालती रहे जब तक उसका चेहरा स्याना पड़ जाए और इस तरीके से गाने की कोशिश कर रही हो जैसे कोई फरिश्ता या फिर कोई ऐसी मखलूक है, और वो नाजेबा गौन पहने हो जो निजस और बेहया हो जिससे रुसवाई हो रही हो, और आप पुलपट पर खड़े हो और ऐसा कह रहे हो और उसने अपने होंठों पर रंग मला हो, और वो फौरन इमारत से बाहर निकल जाए और कहे, मुझे ऐसी बेकार बातों को नहीं सुनना है, लेकिन आप जहन्नम में एक दिन इस रहम के लिए चला उठेंगे, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होगी। अब जबकि आपके पास इसे हासिल करने का मौका है तो इसे हासिल करें। अब आप समझे, ओ मेरे खुदाया। लेकिन हकीकी कलीसिया ने एक बादशाहत को हासिल किया है जबकि हमें आसमानी मुकामों में बिठा दिया गया है और खुदा की हजूरी में बुलंद किया गया है, और इस बात को जानते हुए कि ईमान की जमानत के साथ हमें मसीह यसु में आसमानी मुकामों में बिठाया गया है और हम अपने मसाशुदा बादशाह की हजूरी में है, हो जहाँ एक नया आसमान और एक नई जमीन होगी और जिसके एक हिस्से का भी अबदियत की तरह आखिर ना होगा, और हम ऐसे ही नए आसमान और नई जमीन के मुतलाशी हैं। यही एक चीज है जिसे आप चाहते हैं, जो आपके पास हो सकती है, और चूंकि मैं भी इसी चीज को चाहता हूँ। ये आप पर मुनसर है कि आपने अपनी लगन कहाँ लगा रखी है, ये आप पर मुनसर है कि आप किस जगह से मुंसलिक हैं। अगर आप अपनी तंजीमी जगह से मुंसलिक हैं तो आप ठीक उसी के साथ जाएंगे, और अगर आप इस दुनिया की किसी चीज के साथ मुंसलिक हैं या किसी सियासत या इसी तरह की चीज के साथ मुंसलिक हैं तो आप उसी पर भरोसा करते हैं तो आप ठीक उसी के साथ तबाह हो जाएंगे। लेकिन मेरी उम्मीद यसु के पाकीजा खून के अलावा किसी चीज के साथ नहीं है, और चाहे सब कुछ मेरी रूह से दूर हो जाए और हर एक खादम मुझसे मुंह मोड़ जाए और हर एक अकीदा मुझसे दूर चला जाए, हत्ता के मेरे पास जाने के लिए कोई जगह ना हो, तो भी वही मेरी उम्मीद और मेरे छुपने की जगह है, और मैं उस चट्टान पर यानी उस मजबूत चट्टान मसीह पर खड़ा रहूंगा जबकि बाकी सारी दुनिया रेत की तरह डूबती जा रही है। और हो सकता है कि मैं किसी दिन किसी कब्रिस्तान में समुंदर में डूबकर या किसी हवाई जहाज के हादसे में मरकर या किसी ट्रेन या किसी कार के हादसे में मरकर दफनाया जाऊं, या इसके अलावा जो भी मेरे जाने के लिए खुदा ने जगह मुकर्रर कर रखी है। लेकिन तो भी एक बात है, और मैं उस बात को जानता हूं कि मेरी रूह ऊपर आसमान पर उसके कलाम के साथ लंगर अंदाज है, और मैं इस पर ईमान रखता हूँ क्योंकि ये खुदा के कलाम की बात है। किसी रोज खुदा ने इस दुनिया का इंसाफ किसी चीज से करना है। अगर वो किसी कलीसिया से इसका इंसाफ करेगा तो फिर वो कौन सी है जिसके जरिए वो इसका इंसाफ करेगा, क्योंकि ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसके जरिए इंसाफ किया जा सके। सिर्फ एक ही चीज है और वो उसका कलाम है जो कि अब्दी है, जिसमें ना तो कुछ बढ़ाया जा सकता है और ना ही कुछ घटाया जा सकता है। मेरी रूह उसी जगह के साथ लंगर अंदाज है, और मैं बड़ी सादगी के साथ अपने हाथों को अपनी कुर्बानी पर रखता हूँ और इस बात का इकरार करता हूँ कि मुझ में कुछ भी अच्छा नहीं है। ऐ खुदावंद खुदा, मुझ में ऐसी कोई बात नहीं है, इसलिए उस मसीहा को मुझ पर भेज और जो कुछ मुझ में अच्छा नहीं उसको बदल दे, और उस तरीके से जिससे तू मुझे रंगना चाहता है मुझे उसी तरीके से अपने रंग में रंग ले। कोई मसला नहीं, चाहे आपने कितनी ही किसी को चोट पहुंचाई हो, चाहे कितना ही किसी को नुकसान पहुंचाया हो, चाहे कितनी ही आपने लोगों के खिलाफ बातें की हो या उन्होंने कुछ कहा हो, लेकिन एक दिन वो हमें उठा खड़ा करेगा। और एक बात शाहत है जिसे हम हासिल करेंगे, जिसे जुम्बश नहीं हो सकती। ओ मेरे खुदाया, और याद रखें उन तमाम जलाली चीजों को जिनसे अब हम लुत्फंदोज हो रहे हैं और आसमानी मकामों में बिठाए गए हैं। ये सिर्फ बेशकीमत खैमा है। हालेलुया, ये आने वाली चीजों का बेशकीमत खैमा है। ये तो सिर्फ आने वाली सौगात का एक तारुफ है। हो हालेलुया, और अब बरे के उस जलाल इज्जत और स्ताइश और प्रस्तिश के मुतालिक बात करते हैं। एक दिन फरिश्तगान जमीन पर यानी जमीन की सतह पर खड़े होंगे और खून से दूले उस छोटे से ग्रोह के उन लोगों को सर झुकाए यीशु मसीह के कफारे के गीत गाते हुए सुनेंगे। कहें, खुदा मैं अब ही उनमें शामिल होना चाहता हूँ। ऐ खुदा मुझे अभी ही उनमें जगह लेने दे, मुझे पुर यकीन हो जाने दे कि यीशु मेरा है, मैं उसके और उसके कलाम के साथ खड़ा हूँगा। जी हाँ, खत्म करते हुए मैं ये छोटी सी क्रिसमस की कहानी बयान करना चाहता हूँ ताकि ये बच्चे शायद इससे कुछ सबक सीख लें। और अगर मैंने आप में से किसी को देर तक बिठाए रखने से नाराज किया है, क्योंकि कल एक औरत थी, भाई ब्राउन ने नहायत ही आला पैगाम सुनाया था जो कि तकरीबन एक घंटे पर मुश्तमिल था, और वो ममसूस शख्स है। उस औरत ने कहा था उसने हमें काफी देर तक बिठाए रखा था, लेकिन पालूस तो सारी सारी रात कलाम सुनाता था, और लोग उस वक़्त तक वहाँ बैठे रहते थे जब तक उन्हें नींद नहीं आ जाती थी, और गालबन घंटों घंटे बैठे रहते थे। और उसी दौरान एक शख्स नीचे गिर गया और उसकी मौत हो गई, और पालूस ने अपने आप को उस पर फैला दिया और कहा, फिक्र मत करो, सिर्फ दुरुस्त बात सुनो। एक बूढ़ा मोची था, मेरा ख्याल है वो जर्मनी का था, और वो वहाँ उन लोगों के जूते बनाया करता था। और फिर एक दिन अब वो अपने फारिग वक्त में बाइबल को उठाता और उसे पढ़ा करता था। वो कलाम को उसके स्याको सुबाग के साथ पढ़ता था, और वो इस काम में नहायत ही मुखलिस हो गया था। उसने कहा, आप जानते हैं, उसने कहा, मैं इस मर्तबा क्रिसमस आएगा तो मैं कोई क्रिसमस ट्री नहीं सजाऊंगा। लेकिन उसने कहा, आप जानते हैं मैं क्या करूंगा? उसने कहा, मैं एक बड़ी ज़ियाफ़त करूंगा और खाना तैयार करूंगा, गोश्त बनाऊंगा, और मैं अपने क्रैनबेरी के फलों को लाऊंगा, चटनी और बाकी तमाम चीजों को भी लाऊंगा। लेकिन वो सिर्फ अकेला ही शख्स था, और उसने कहा, मैं सब कुछ मेज पर सजाऊंगा और मैं यीशु को दावत दूंगा कि वो आए और मेरे साथ मेज पर बैठे। मैं खुदा के मसीहा को जानना चाहता हूँ, उसके एहतराम में मैं और क्या कर सकता हूँ? उसने कहा, मैं ये सब कुछ करूंगा और फिर मैं मेज के चौगिर्द बैठ जाऊंगा और उससे कहूंगा कि मुझे बरकत दे और उन सब चीजों के लिए जो उसने मुझे बख्शी हैं उसका शुक्रिया अदा करूंगा। और फिर मैं उससे कहूंगा, खुदावंद यीशु, क्या तू आज नहीं आएगा और मेरे साथ क्रिसमस के खाने के लिए नहीं बैठेगा? सादगी देखें, खुदा हमेशा इस किस्म के खालसपन पर निगाह करता है। और उस बूढ़े मोची ने पैसे इकट्ठे किए कि इस तरह की ज़ियाफ़त का इंतजाम कर सके, आप जानते हैं, ताकि बादशाहों के बादशाह को मधु कर सके। और उसने वो सब तैयार किया और खाना पका लिया और मेज पर सजा दिया, और उसने अपने आप को अच्छी तरह साफ किया और खुद को तैयार किया और अपने बालों में कंघी की, और वो मेज पर बैठ गया और एक कुर्सी यीशु के लिए मखसूस कर दी और मजीद कुर्सियां भी वहां पर रख दी। और उसने कहा, शायद रसूलों के लिए हो, शायद वो भी आ जाए। बस उस बूढ़े शख्स ने अपने सर को झुकाया और उसने बरकत मांगी और खाने के लिए खुदा का शुक्रिया अदा किया और उसने कहा, अब यीशु क्या तू नहीं आएगा और मेरे साथ क्रिसमस का खाना नहीं खाएगा? और उसने खाना शुरू किया और दूसरी कुर्सी को देखने लगा, मगर वहाँ कोई नहीं आया था। उसने थोड़ा और खाना खाया और उसने कहा, खुदावंद खुदा, मैंने तुझे अपने घर में मधु किया है, क्या तू नहीं आएगा और मेरे साथ खाना नहीं खाएगा? और वो उठा कि खाने के लिए कुछ और ले आए, तो उसी घड़ी किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी और वो दरवाजे पर गया। वहाँ पर एक बूढ़ा शख्स था, उसके कंधे झुके हुए और कपड़े फटे हुए थे। उसने कहा, जनाबे अली, मुझे सर्दी लग रही है, क्या आप मेरी मदद करेंगे? और उसने कहा, अंदर आ जाए। और वो अंदर आ गया और उस बूढ़े ने खाने की उस खुशबू को सूंघा और उसके मुंह में पानी भर आया और वो उस जानिब मुड़ा और मोची ने कहा, क्या आप बैठेंगे नहीं? मोची ने कहा, क्योंकि मैं भी किसी के आने की तवक्को कर रहा हूँ, लेकिन क्या आप बैठेंगे नहीं और मेरे साथ खाना नहीं खाएंगे जब तक कि मेरे साथ शिरकत करने वाला नहीं आ जाता? और उस शख्स ने कहा, आपका शुक्रिया, मुझे बड़ी खुशी होगी। और वो बैठ गया और उन्होंने खाना खाया। उस बूढ़े शख्स ने उसका शुक्रिया अदा किया और वो उठा और चला गया। और वो मोची मुड़ा और उसने कहा, ऐ खुदावंद खुदा, तूने मुझे क्यों मायूस किया? और कहा, मैंने हर एक चीज को बड़ी अच्छी तरह से तैयार किया था, मैंने वो सब कुछ किया जो कि मैं जानता था कि मुझे करना चाहिए, और तू ऐसा करेगा? और मैंने वो सब कुछ किया जो कि मैं जानता था कि मुझे करना चाहिए, और सोचा कि तू आएगा और मेरे साथ खाना खाएगा। और वो दौड़ा और जाकर बिस्तर पर लेट गया और उसने रोना शुरू कर दिया और वो बिस्तर पर लेटा रोए जा रहा था, मैंने वो सब कुछ किया जो कि मेरे ख्याल में दुरुस्त था, पर खुदावंद, तू मेरे साथ खाना खाने क्यों नहीं आया? और उसे एक आवाज आई और उसे कलाम मुकद्दस की वो बात याद आई, अगर तुमने मेरे छोटे से छोटे खादम के साथ किया तो तुमने मेरे साथ ही किया। जी हाँ, अरिनियस भी, बल्कि मैं आपसे माफी चाहता हूँ, वो सेंट मार्टिन था। क्रिसमस से पहले एक सर्द दिन था और एक गरीब फकीर राह के किनारे पड़ा हुआ था, सर्दी से मुंजमंद हो रहा था और लोग उस मुस्तहिक शख्स को एक फकीर की निगाह से देख रहे थे, उसके पास से गुजरते जा रहे थे। खैर, वहाँ उसकी मदद के लिए कुछ भी नहीं था और वो सिर्फ एक फकीर की हैसियत से वहाँ पड़ा था और वहाँ उसी जगह पड़ा रहा। और मार्टिन वहाँ खड़ा हो गया और गौर करता रहा और देखता रहा, शायद उन लोगों में से कोई उस शख्स की मदद करे, लेकिन उसने किसी को ऐसे करते हुए ना पाया। आखिरकार मार्टिन खुद पर काबू ना पा सका। वो खुदा पर ईमान रखता था और वो मिलिट्री का एक सिपाही था और उसके पास एक ही कोट था। और उसने कहा, अगर ये गरीब शख्स इसी तरह पड़ा रहा तो ये तो सर्दी की वजह से मर जाएगा। बस उसने अपनी तलवार को खींचा और अपने कोट को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया और वो वहाँ गया और उस गरीब फकीर को आधे हिस्से में लपेट दिया और उससे कहा, मेरे भाई, अब सुकून से सो जा, और खुद गश्त पर चला गया। और उस रात वो अपनी बैरक में गया और अपने जूतों को चमकाने के बाद वो वहाँ लेट गया और वो सो गया और अचानक एक शोर ने उसे जगा दिया और उसने अपने सामने किसी को खड़े हुए देखा और यीशु उसके सामने उसी पुराने कोट को लपेटे हुए खड़ा था जिसमें उसने उस फकीर को लपेटा था। तो फिर मैं इन बातों के मुतल्लिक क्या कर सकता हूँ? मुझे इन बातों के साथ क्या करना जरूरी है जो कि मैं जानता हूँ कि दुरुस्त है? वो बातें जिनकी तस्दीक हुई और साबित हुई कि ये दुरुस्त है, मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे कलीसिया को लपेटना है, ना कि किसी अकीदे या किसी तंजीम में, बल्कि यीशु मसीह के खून में, उसी के कलाम से इसे लपेटना है, क्योंकि यीशु ने कहा, अगर तुमने इन छोटों में से किसी के साथ ये किया तो तुमने मेरे साथ ही किया। आए दुआ करते हैं। खुदावंद यीशु, अगर तू आज सुबह यहाँ खड़ा होता, खुदावंद, मैं जानता हूँ कि तू रूह की सूरत में यहाँ मौजूद है, लेकिन अगर तू हकीकत में यहाँ खड़ा होता, मैं ये बात कहकर बेयकीनी नहीं कर रहा, मैंने अपने अल्फाज थोड़े से बदल दिए हैं, बल्कि मैं यकीन करता हूँ कि मैंने बिल्कुल एक ही बात कही है। आसमानी बाप, मैं यकीन करता हूँ कि ये लोग जिन्होंने अपनी कुदरती खुराक के बगैर ये किया है और जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने एक थकी हुई सख्त आवाज में सुना है, लेकिन अगर तू यहाँ खड़ा होता तो ये लोग मजीद यहाँ ना ठहर सकते, लेकिन ये यकीन करते हैं कि तू यहाँ है क्योंकि ये तेरा कलाम है जो जाहिर करता है कि ये लोग तुझसे मोहब्बत करते हैं।
We're so thankful for this Christmas visitation of the Holy Spirit that directs us and shows us just what.
हम क्रिसमस के इस मौके पर रूल कुछ की मुलाकात के लिए नहायत ही शुक्रगुजार हैं, जिसने हमें हदायत की और हम पर जाहिर किया कि क्रिसमस का क्या मतलब है, जबकि हम देखते हैं कि दुनिया जवाल पजीरी का शिकार है और निजाम टूट फूट रहे हैं। لیکن ہم نہایت ہی خوش ہیں اور ہم نہایت ہی شکر گزار ہیں کہ ہم نے ایک بادشاہت کو اور ایک بادشاہ کو حاصل کر لیا ہے جسے جنبش نہیں ہو سکتی. اور جب مزید دنیا باقی نہ رہے گی, جب مزید سیاست باقی نہ رہے گی, جب مزید کوئی قوم باقی نہ رہے گی, لیکن خداوند کی بادشاہی قائم رہے گی اور راست باز اس کے ساتھ حکمرانی کریں گے, اور وہ جنہوں نے دکھ اٹھائے مزید دکھ نہ اٹھائیں گے. خداوند, کرسمس کے اس موقع پر ہماری مدد کر تاکہ ہم یاد رکھیں کہ مسیح شدہ مسیحا کا کیا مطلب ہے. اس بات کو سمجھنے میں ہماری مدد کر, ہماری اس رفاقت کو برکت دے. پیارے باپ, ان لوگوں کے ساتھ ہو اور انہیں رول کس میں راست بازی اور تسلی دے.
Bless our pastor. Lord, we love him. This gallant servant stands loyal.
ہمارے پاسٹر صاحب کو برکت دے. خداوند, ہم اس سے محبت کرتے ہیں. یہ تیرا بہادر خادم ہے جو وفاداری سے کھڑا ہے, اور ایک رات یہ ہمیں بتا رہا تھا. اس نے کہا, میں تقریباً 60 سال کا ہوں پر میں حاضر ہوں, اور اس کے کم سن بچے ہیں. لیکن یاد رکھے, کاش خداوند وہ یہ بات یاد رکھے کہ کوئی اسے یہاں سے نہیں لے جا سکتا جب تک تو اسے نہیں بلا لیتا. اور اگر تو ٹھہرا رہا تو میں دعا کرتا ہوں کہ یہ زندہ رہے اور اپنے بچوں کی شادیاں دیکھے اور انہیں اپنے گھروں میں بستے دیکھے. اس کی بیش قیمت بیوی کو برکت دے جو تیرے ہاتھ کی کاراگری ہے.
Bless our deacons and our trustees. God, I'm thankful this Christmas for all these my friends.
خداوند, ہمارے ڈیکنوں اور خزانچیوں کو برکت دے, اور اے خدا, میں اس کرسمس پر ان تمام کے لیے تیرا شکر گزار ہوں. اپنے دوستوں کے لیے جو برفانی راہوں اور پھسلنی راہوں اور بارش میں سفر کر کے اور اپنا سامان لے کر سینکڑوں سینکڑوں میل سے یہاں آئے ہیں. اے خدا, میں نہیں جانتا مزید کیا کہوں. میں ایمان رکھتا ہوں باقی جو میرے دل میں ہے وہ تو آشکارا کر دے گا. اور اے خدا, میں ہمیشہ اس بادشاہت میں جو تو نے ہمارے درمیان بھیجی ہے وفادار رہنا چاہتا ہوں, اور میں کبھی بھی کسی بات پر سمجھوتا نہیں کرنا چاہتا, اور نہ ہی اس سے دائیں یا بائیں مڑنا چاہتا ہوں. کیونکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب تو نے مجھے کہا تھا, اس سے دائیں یا بائیں نہ مڑنا, تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا. شاید دنیا کی نظر میں میں نہ ہوں, اور میں فکر بھی نہیں کرتا دنیا کیا سوچتی ہے, بلکہ خداوند, میں تو وہی جاننا چاہتا ہوں جو تو چاہتا ہے. تیری خوشنودی ہماری رضا ہے, تیری مرضی ہی ہماری آرزو ہے. او خداوند, تیری چھوٹی سی آرزو ہمارے لیے زندگی سے بڑھ کر حکم ہے. ہم تیری کلیسیا کے طور پر کھڑے ہیں, اور خداوند, اب ہمیں معاف فرما جو کچھ بھی سال بھر میں ہوا اور جو کچھ ہم سے غلط ہوا, اور جہاں پر ہم نے بہت سی جگہوں پر ناکامی کی. اب ہمیں قوت عطا فرما اور ہونے دے کہ ہم اس کرسمس کو منانے کے موقع پر اپنے دلوں کو مسیحا یعنی خدا کے مسیح شدہ کے لیے کھولیں, اور وہ ہماری زندگیوں میں آئے اور ہمیں مسا کرے اور اپنی مرضی کو اور اپنی بادشاہت کو ہماری زندگیوں میں پورا کرے اور ہمیں صحت مند اور تندرست رکھے. میرے اس پرانے بہادر دوست بھائی آرگن برائٹ کو جو یہاں میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے برکت دے. اے خدا, تو اس کے ساتھ کتنا ہی بلا رہا ہے, اور کیسے کتنی ہی بار اس کا دل دکھا اور کچلا گیا, لیکن ہم اب بھی یقین رکھتے ہیں کہ اس کے اندر ابدی زندگی کا بیج موجود ہے. اس کی اہلیہ کو برکت دے. اے خدا, میں بھائی بوڈ اور فریڈ کے متعلق غور کرتا ہوں کہ ہمارے پاس کیسی شاندار رفاقت ہے, اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اب تو ہم سبوں کو ایک ساتھ برکت دے, ان تمام بیش قیمت لوگوں کو, ہماری کلیسیا کو برکت دے. اور خداوند, کسی دن ہم وہاں پیش ہوں گے, اس لیے ہم اپنی آنکھوں کو دنیا کی چیزوں سے اس قدر پاک رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہم صرف خدا اور اس کی بادشاہت کو دیکھ سکیں, اور کسی دن ہم مسیح کے حضور پاک دامن کنواری کی مانند پیش کیے جائیں تاکہ اس عظیم کلیسیا کا ایک حصہ بنے جو اس کے سامنے پیش ہونے کو ہے. اور پھر ہم آگے آنے والے وقت پر نگاہ کریں گے جہاں تو اپنی بادشاہت کو زمین پر نظر آنے والے لوگوں کے ساتھ, نظر آنے والے گھروں کے ساتھ ظاہر کرے گا, اور وہ کچھ نہ کھائیں گے اور نہ کوئی درخت وغیرہ لگائیں گے, بلکہ وہ ابدی طور پر زندہ رہیں گے. अब रास्तबाज जिंदगी होने के वसीले जो मसीह के खून के वसीले पाक की गई है। तब तक हमें उस नूर की मानित बना जो ऊंची जगह पर रखा गया हो, जो एक क्षमा की मानित हमारे तराफ में रखी हर चीज को रोशन करता हो। ऐ बाप, ये बख्श दे। यीशु के नाम में हम ये दुआ करते हैं। और ऐ खुदावंद, इन रुमालों पर हम उन बीमारों के लिए दुआ करते हैं और अपने हाथ इन पर रखते हैं और अपने आप को उनके साथ शामिल करते हैं। मैं अपने हाथों को इन रुमालों पर रखता हूँ और अपनी दुआओं को खुदा से मंसूब करता हूँ इन लोगों के साथ और इन रुमालों के साथ। ऐ खुदा, मैं दुआ करता हूँ कि तू इनमें से हर एक को शिफा देगा जिनकी ये रुमाल नुमाइंदगी कर रहे हैं। ऐ बाप, आने वाले साल में इनको सेहत और कुवत अता कर। सारा जलाल और इज्जत खुदा को मिले। हम यीशु के नाम में ये मांगते हैं। आमीन। मैं उससे प्यार करता हूँ। मैं उससे प्यार करता हूँ। क्योंकि पहले उसने मुझसे प्यार किया।
Just my salvation.
और मेरी नजात कलवरी की सूली पर खरीदी। अब आए हम इसे दोबारा गाते हैं और हम किसी से भी जो हमारे करीब है हाथ मिलाते हैं और कहते हैं, मैं उससे प्यार करता हूँ। मैं उससे प्यार करता हूँ क्योंकि पहले उसने मुझसे प्यार किया। बाय ऑर्गन ब्राइट, यही बात है। अब उसकी तरफ अपने हाथों को ऊपर उठाएं। मैं उससे प्यार करता हूँ। अब ज्यादा ऊंचा कहें, मैं उसे प्यार करता हूँ। अब यही तरीका है। क्योंकि पहले उसने मुझसे प्यार किया। और मेरी निजात को कलवरी की सूली पर खरीदा। अब ये अल्फाज हम सब मिलकर कहते हैं, हम उस बादशाहत को कबूल करते हैं जिसे जुम्बश नहीं हो सकती। आमीन। आए अब हम खड़े हो जाएं। अब हम अपने हाथों और अपने दिलों को खुदा की तरफ शुक्रगुजारी के लिए उठाएं और हकीकत में हम सब अपने दिलों में कहें, मैं उससे प्यार करता हूँ, और इस क्रिसमस के मौके पर उससे सिर्फ ये इजहार करें, मैं उससे प्यार करता हूँ। मैं उससे प्यार करता हूँ। मेरी निजात को कलवरी की सूली पर खरीदा। अब इसके फौरन बाद बपतिस्मा देने की इबादत होगी और आप जिन्हें जाना है, हम आपके लिए शुक्रगुजार हैं कि आप यहाँ तशरीफ लाए। काश आप हमेशा उस बादशाहत में रहें जिससे जुम्बश नहीं हो सकती। जबकि हम एक लम्हे के लिए दुआ के लिए अपने सरों को झुकाते हैं और मैं अपने बेशकीमत भाई ऑर्गन ब्राइट से कहूँगा कि वो यहाँ ऊपर आकर दुआ के साथ हाजरीन को रुखसत करें।